रॉकी ने कभी नहीं सोचा था कि 400,000 स्वर्ण सिक्कों की चौंका देने वाली राशि, जिसे उसने लापरवाही से आवंटित किया था, अचानक खर्चों को पूरा करने के लिए अपर्याप्त हो जाएगी। ये पैसा, क्या इसे खर्च करना सचमुच इतना आसान था? दरअसल, बात यह नहीं थी कि पैसा खर्च करना आसान था, बल्कि रॉकी के पास उसे खर्च करने के लिए बहुत सारी जगहें थीं। अगर किसी आम इंसान के पास 4 लाख सोने के सिक्के होते, तो वह रोजाना ऐशो आराम की जिंदगी जी सकता था और उसे उड़ा भी सकता था, फिर भी उसके पास जिंदगी भर के लिए काफी पैसा बच जाता। हालांकि, रॉकी इस पैसे का इस्तेमाल अपने शहर के विकास और अपनी सेना के विस्तार में कर रहा था। एक शहर के सामने, एक सेना के सामने 400,000 स्वर्ण मुद्राएं क्या थीं? नहीं, यह ज्यादा नहीं थी, ये राशि तो बस एक छोटी सी रकम ही मानी जा सकती थी, जिसे बस उंगलियों के इशारे से खर्च किया जा सकता था। इस समय तक गाड़ी पहले ही सिटी लॉर्ड के भवन में पहुंच चुकी थी और अंततः घर लौट रही थी, और रॉकी पैसे के मामले को एक तरफ रख सकता था, क्योंकि अभी भी कई अन्य मुद्दे उसके ध्यान की प्रतीक्षा कर रहे थे। अब थंडरहॉक सिटी ने पूरे बैकहिल गांव को अपने में समाहित कर लिया था और सिटी लॉर्ड के रूप में उसे कई निर्णय लेने थे, और इसलिए सिटी लॉर्ड के भवन में लौटने पर सिटी लॉर्ड के हॉल में सीधे जाने से पहले उसके पास आराम करने का भी समय नहीं था। सिटी लॉर्ड्स हॉल में उसकी मुलाकात लिलिया और मोटे से हुई, जो उससे ठीक पहले लौट आए थे। उसकी मुलाकात लिनफेंग और बैकहिल गांव के दूर के बुजुर्ग ओल्ड जैक से भी हुई। नगरपाल, आपका पुनः स्वागत है। जैसे ही रॉकी हॉल में सिटी लॉर्ड की निर्धारित सीट पर बैठा, थंडरहॉक सिटी से आए समूह का नेतृत्व कर रही लिलिया ने तुरंत झुककर उसका अभिवादन किया। लिलिया और अन्य लोगों के व्यवहार को देखकर लिनफेंग और ओल्ड जैक ने भी कुछ ही देर बाद रॉकी को प्रणाम किया और उसे सिटी लॉर्ड कहकर संबोधित करना शुरू कर दिया। स्पष्ट रूप से लिनफेंग और ओल्ड जैक अभी भी इसके आदि नहीं थे। हमेशा जमीन पर रहने के कारण वे स्पष्ट रूप से अभी तक स्काई सिटी के रीति रिवाजों के अनुकूल नहीं थे, लेकिन कुछ नियम थे जिनके अनुकूल होने के अलावा उनके पास कोई विकल्प नहीं था, जैसे कि रॉकी की स्थिति में परिवर्तन को पहचानना। बैकहिल गांव में रॉकी की भूमिका शायद एक भाड़े के समूह के नेता की रही होगी, जो कि लिनफेंग के बराबर या ओल्ड जैक से भी कम थी, लेकिन अब बैकहिल गांव नहीं रहा और थंडरहॉक शहर में केवल एक ही अधिकारी था, और वह था सिटी लॉर्ड रॉकी। इसलिए जब ये दोनों व्यक्ति रॉकी से दोबारा मिले, तो चाहे उनके मन में जो भी विचार हो, उन्हें सम्मानपूर्वक उसे सिटी लॉर्ड कहना पड़ा और झुकना पड़ा, अन्यथा इसे विद्रोह माना जाता। लॉर्ड जैक, लिनफेंग, क्या आप दोनों थंडरहॉक सिटी में जीवन को अच्छी तरह से अपना रहे हैं? सभी के झुकने के बाद रॉकी ने मुस्कुराते हुए ओल्ड जैक और लिनफेंग से पूछा, जो उससे कई दिन पहले लौट आए थे और कुछ समय से थंडरहॉक सिटी में रह रहे थे। आपकी चिंता के लिए धन्यवाद नगरपाल, सब कुछ अच्छी तरह से व्यवस्थित किया गया है और मेरे सहित सभी लोग बहुत संतुष्ट हैं, बूढ़े जैक ने अपनी पूरी चतुराई के साथ उत्तर दिया। उसके पास बहुत अनुभव था और वह अपने शब्दों को सावधानी से चुन सकता था, हालांकि वह अभी भी स्काई सिटी के रीति रिवाजों से कुछ हद तक अपरिचित था। सुनने में अच्छा है, इस उत्तर से रॉकी बहुत प्रसन्न हुआ, क्योंकि ओल्ड जैक ने चतुराई से बैकहिल गांव के 1,000 से अधिक ग्रामीणों को सभी शब्द में शामिल कर लिया था, जिससे रॉकी को ये सहज लगा। ये थंडरहॉक शहर था और यहाँ का प्रत्येक व्यक्ति थंडरहॉक शहर का निवासी था। यहाँ अब बैकहिल गांव की कोई अवधारणा नहीं थी, इसलिए अपना सिर हिलाते हुए रॉकी ने फिर सभी से कहा, सभी, आप सभी ने इस मिशन पर कड़ी मेहनत की है। थंडरहॉक सिटी के 2,000 से अधिक निवासियों की ओर से मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। ये कहने के बाद वह फिर ओल्ड जैक की ओर मुड़े, लॉर्ड जैक, क्या आपके पास थंडरहॉक सिटी के विकास के लिए कोई सुझाव है? रॉकी के अचानक पूछे गए प्रश्न से ओल्ड जैक स्पष्ट रूप से अचंभित हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या जवाब दे, और उसे इससे भी अधिक हैरानी इस बात की हुई कि रॉकी उससे ऐसा प्रश्न क्यों पूछ रहा है। जब बैकहिल गांव के सभी लोग थंडरहॉक सिटी में स्थानांतरित हो गए, तो तथाकथित गांव प्रमुख की भूमिका का महत्व समाप्त हो गया। आखिरकार थंडरहॉक सिटी में उनकी कोई आवाज नहीं थी। जब ओल्ड जैक असमंजस में था, रॉकी मुस्कुराया और बोला, लॉर्ड जैक, थंडरहॉक सिटी के पिछले प्रशासनिक अधिकारी को मैंने 6 महीने पहले ही निकाल दिया था, इसलिए यह पद खाली पड़ा है। मुझे आश्चर्य है कि क्या आप ये भूमिका निभाने को तैयार हैं। तो ये पता चला कि रॉकी ओल्ड जैक को थंडरहॉक सिटी का प्रशासनिक अधिकारी बनाना चाहता था। पिछले कुछ दिनों से वह इसी बात पर विचार कर रहा था। उसे लगा कि बैकहिल गांव के मुखिया के रूप में ओल्ड जैक को प्रशासन का अनुभव निश्चित रूप से किसी और से ज्यादा है, और चूंकि थंडरहॉक सिटी ने बैकहिल गांव को पहले ही अपने में मिला लिया था, इसलिए ओल्ड जैक अब गांव का मुखिया नहीं रह सकता। हालांकि वह प्रशासनिक अधिकारी की भूमिका निभा सकते हैं, जिससे रॉकी को भी राहत मिलेगी। जहां तक रॉकी के प्रस्ताव का सवाल है, ओल्ड जैक ने प्रतिक्रिया देने में थोड़ा समय लिया, लेकिन जल्द ही सहमत हो गया। बूढ़े जैक की नज़र में ये स्वाभाविक रूप से एक बेहतरीन मौका था। सच कहूं तो उसे इस बात का डर था कि थंडरहॉक शहर में आने के बाद गांव वालों को धमकाया जा सकता है, क्योंकि वे बाहरी थे और यहां उनकी कोई बात नहीं सुनी जाती। अगर शहर का राजा रॉकी उन्हें निशाना न भी बनाए तो भी अगर दूसरे शहरवासी उन्हें धमकाएं तो यह असहनीय होगा। लेकिन अगर वह थंडरहॉक सिटी में कोई छोटा मोटा सरकारी पद संभाल पाता तो हालात बहुत बेहतर होते। कम से कम वह सिटी लॉर्ड रॉकी से बात तो कर ही सकता था ताकि थंडरहॉक सिटी में बैकहिल विलेज के निवासियों के दिन ज्यादा बुरे न हों। इस बात को ध्यान में रखते हुए ओल्ड जैक ने बिना किसी दूसरे विचार के रॉकी के अनुरोध पर सहमति व्यक्त की और इस प्रकार वह थंडरहॉक सिटी का नया प्रशासनिक अधिकारी बन गया। ओल्ड जैक के लिए चीजों की व्यवस्था करने के बाद रॉकी ने अपना ध्यान लिन फेंग की ओर मोड़ते हुए पूछा, लिन फेंग, क्या आप थंडरहॉक सिटी के गार्ड कोर में सेवा करने में रुचि रखते हैं? रॉकी को स्वाभाविक रूप से लिन फेंग और भी अधिक पसंद आया क्योंकि वह एक पूर्ण प्रतिभा था। लिन फेंग न केवल व्यक्तिगत रूप से शक्तिशाली थे बल्कि एक दुर्लभ स्तर 6 योद्धा थे, लेकिन इससे भी अधिक मूल्यवान था युद्ध और कमान दोनों में उनका समृद्ध अनुभव, ठीक उसी तरह की प्रतिभा जिसकी थंडरहॉक सिटी को आवश्यकता थी। इसलिए ओल्ड जैक के लिए चीजों की व्यवस्था करने के बाद रॉकी ने लिन फेंग की ओर रुख किया। उनके निमंत्रण पर लिन फेंग ने भी बिना किसी हिचकिचाहट के सिर हिला दिया। दरअसल रॉकी के लौटने से पहले ही लिन फेंग ने यह फैसला कर लिया था। उसे अपनी काबिलियत पर थोड़ा भरोसा था क्योंकि उसे पता था कि रॉकी उसे थंडरहॉक सिटी के गार्ड कोर में शामिल करना चाहेगा और उसे इसमें कोई आपत्ति नहीं थी। उनके विचार में चूंकि बैकहिल गांव अब अस्तित्व में नहीं था, इसलिए उन्हें थंडरहॉक सिटी में रहना था और परिवार का भरण पोषण करने के लिए थंडरहॉक सिटी के गार्ड कोर में एक पद हासिल करना स्पष्ट रूप से वह परिणाम था जिसकी लिन फेंग को उम्मीद थी। ठीक है, लिन फेंग की दर्द भरी स्वीकृति से रॉकी बहुत खुश हुआ, इसलिए उसने फिर सभी से कहा, कल से लॉर्ड जैक थंडरहॉक सिटी के प्रशासनिक अधिकारी की भूमिका निभाएंगे और लिन फेंग प्रशिक्षक की भूमिका निभाते हुए गार्ड कोर में शामिल होंगे। पिछले प्रशिक्षक मोटे को गार्ड कोर के उप कमांडर के रूप में पदोन्नत किया जाएगा, दोनों लिलिया की कमान के अधीन होंगे। एलिन, कल लॉर्ड जैक को थंडरहॉक शहर घुमाने ले जाओ ताकि वह वहां के वातावरण से परिचित हो सके और वहां के वातावरण में शीघ्रता से ढल सके। समझा, एलिन ने सहमति में सिर हिलाया और जवाब दिया। लिलिया, व्यवस्था करने के बाद रॉकी लिलिया की ओर मुड़ा और निर्देश दिया, थंडरहॉक सिटी को तुरंत अनंत सिटी की ओर उड़ान भरने का आदेश दें। हाँ, ओल्ड जैक और लिन फेंग को नियुक्त करने के बाद रॉकी ने थंडरहॉक सिटी को एक बार फिर इटर्नल सिटी की ओर जाने का आदेश दिया। इस निर्णय पर किसी ने कोई आपत्ति नहीं जताई क्योंकि इतनी बड़ी लूट के बाद रॉकी के लिए सबसे उपयुक्त कदम यह था कि वह तुरंत इटर्नल सिटी की ओर बढ़े, आकाश में सबसे बड़े व्यापारिक शहर में युद्ध की सारी लूट को सोने के सिक्कों में परिवर्तित करे और फिर उन सोने के सिक्कों का उपयोग अपनी और अपने शहर की ताकत बढ़ाने के लिए करे। इसलिए उनके आदेश पर थंडरहॉक सिटी, जो लगभग एक महीने से ब्रेक स्काई माउंटेन के पास खड़ी थी, धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी और फिर यह इटर्नल सिटी के निर्देशांक की ओर बढ़ गई। ये सारी व्यवस्थाएं करने के बाद रॉकी को अंततः आराम करने का मौका मिला, जिसके परिणामस्वरूप वह अपने कमरे में पूरे 2 दिन सो सका। इसमें कोई मदद नहीं थी, मिशन बेहद थका देने वाला था। लगातार लड़ाइयों ने उसे तन और मान दोनों से थका दिया था, इसलिए अपने शहर वापस आकर रॉकी पूरी तरह से निश्चिंत हो गया और गहरी शांति से और सबसे महत्वपूर्ण बात, लंबे समय तक सुरक्षित नींद ले पाया। एक सप्ताह ऐसे ही बीत गया और एक सप्ताह बीत जाने के बाद पूरी तरह से तरोताजा रॉकी ने एक बार फिर अपने अधिकारियों को सिटी लॉर्ड्स हॉल में बुलाया और सिटी लॉर्ड के रूप में अपने नियमित कर्तव्यों को फिर से शुरू कर दिया। इस दौरान निवासियों के बीच कोई संघर्ष तो नहीं हुआ। थंडरहॉक शहर की आबादी में अचानक 2 गुनी वृद्धि, खासकर नए लोगों के आने से स्वाभाविक रूप से नागरिक मामलों में और भी ज्यादा व्यस्तता आ गई। हालांकि विशिष्ट विवरणों और कार्यों में नगरपाल रॉकी को शामिल होने की आवश्यकता नहीं थी, फिर भी उसे सामान्य दिशा को नियंत्रित करना था। अब उन्हें सबसे अधिक चिंता थंडरहॉक शहर के मूल निवासियों और नए आए ग्रामीणों के बीच संघर्ष उत्पन्न होने के भय की थी। शहर में इतने सारे लोगों के आने का मतलब था कि लेयंग शहर के मूल निवासियों में कुछ नाराजगी हो सकती थी और यही बात बैकहिल गांव के लोगों पर भी लागू हो सकती थी। बाहरी होने के नाते वे स्वाभाविक रूप से अपरिचित वातावरण से घबराएंगे, जिससे दोनों समूहों के बीच टकराव की संभावना बहुत बढ़ जाएगी। नगरपालिका, कृपया निश्चिंत रहें, सभी लोग अच्छी तरह से घुल मिल रहे हैं और कोई संघर्ष नहीं हुआ है, नवनियुक्त प्रशासनिक अधिकारी ओल्ड जैक ने इस समय जल्दी से कहा, जबकि गार्ड की कप्तान लिलिया ने भी रॉकी की ओर सिर हिलाया। महाशय, गार्ड कोर को ऐसे मुद्दों के बारे में कोई रिपोर्ट नहीं मिली है। न तो बूढ़ा जैक और न ही लिलिया झूठ बोल रहे थे। जब से बैकहिल गांव के लोग थंडरहॉक शहर में आकर बसे थे, तब से वहां के निवासियों के बीच कोई झगड़ा नहीं हुआ था, बल्कि उनके बीच ज्यादा जिज्ञासा थी। और चूंकि थंडरहॉक शहर और बैकहिल गांव के निवासी अपेक्षाकृत सीधे सादे और ईमानदार थे, इसलिए वहां हमेशा शांति रही थी। सुनने में अच्छा है, यह जवाब पाकर रॉकी ने राहत की सांस ली, लेकिन फिर उसने चेतावनी दी, लॉर्ड जैक, आपको दोनों समूहों के बीच संबंधों को अच्छी तरह से व्यवस्थित करना होगा ताकि सभी जल्दी से एकीकृत हो सकें। हमारा थंडरहॉक शहर छोटा हो सकता है, लेकिन एकता सबसे महत्वपूर्ण है। जी श्रीमान। और जैक को निर्देश देने के बाद रॉकी लिलिया की ओर मुड़ा। लिलिया, गार्ड कोर को हर समय सतर्क रखना और अगर कोई भी गड़बड़ी हो तो उसे तुरंत दबा देना, लेकिन ये भी सुनिश्चित करना कि कानून प्रवर्तन न्यायसंगत हो और किसी भी व्यक्ति का पक्ष न ले। जरूरत पड़ने पर चेतावनी के तौर पर कड़े कदम उठाने की अनुमति है। समझा, ये तो अच्छी बात थी कि कोई समस्या नहीं आई, लेकिन सिर्फ इसलिए कि फिलहाल कोई समस्या नहीं थी, वे अपनी सतर्कता कम नहीं कर सकते थे। तैयारियां पूरी तरह से जारी रखनी थी। जब मामला सुलझ गया तो रॉकी एलिन की ओर मुड़ा। एलिन, इटर्नल सिटी पहुंचने के बाद मैं थंडरहॉक सिटी में एक चमड़े का कारखाना और एक बड़ा स्टोर बनाने की योजना बना रहा हूँ, इसलिए तुम्हें और लॉर्ड जैक को शहर के भीतर दो उपयुक्त जगहें चुननी होंगी। इटर्नल सिटी पहुंचने के बाद तुम्हें इस बारे में भी कुछ शोध करना चाहिए। इटर्नल सिटी की अपनी यात्रा से अच्छी खासी धनराशि इकट्ठा करने के बाद रॉकी ने थंडरहॉक सिटी के विकास के लिए बहुत पहले ही नई योजनाएं बना ली थीं। नियोजित चमड़े के कारखाने के अलावा उसने एक बड़ी दुकान बनाने का भी फैसला किया था। थंडरहॉक शहर में रहने वालों का जीवन स्तर बहुत खराब था, वहां दुकानें मुश्किल से ही मिलती थीं, जीवन की जरूरी चीजें सिटी लॉर्ड के महल से मिलती थीं। इसलिए अब पर्याप्त धन उपलब्ध होने के कारण रॉकी ने सभी के लिए एक बड़ी दुकान बनाकर निवासियों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने का फैसला किया। और रॉकी की योजनाओं पर एलिन को स्वाभाविक रूप से कोई आपत्ति नहीं थी और बाद में उसने सहमति में सिर हिला दिया। तो फिर बात यहीं खत्म हो गई। और कुछ है क्या? इन मामलों को व्यवस्थित करने के बाद रॉकी ने समूह के चारों ओर देखा और ऐसा भाव व्यक्त किया कि यदि कोई काम हो तो सूचना दें, यदि नहीं हो तो वापस ले लें। महाराज, कृपया इन वस्तुओं पर एक नज़र डालें। वैसे तो किसी को कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन एलिन एक अपवाद थी। उसने तुरंत एक पैकेट निकाला और रॉकी को थमा दिया, और जब रॉकी ने उसे खोला तो पाया कि वह चमड़े के गहने और दूसरी छोटी छोटी चीजों से भरा हुआ था। महाराज, ये प्रशिक्षण कार्यक्रम के छात्रों द्वारा बनाए गए हैं। ओह, ये सुनते ही रॉकी ने चमड़े के गहनों से भरे बैग को ध्यान से देखना शुरू कर दिया और पाया कि कारीगरी काफी संतोषजनक थी। हालांकि उसे इस क्षेत्र में कोई खास जानकारी नहीं थी, फिर भी वह समझ गया कि कारीगरी उत्कृष्ट थी और गुणवत्ता अच्छी थी। साथ ही उन्होंने ये भी पूछा, क्या इसका मतलब यह है कि पहला प्रशिक्षण सत्र समाप्त हो गया है? हाँ, यह आधा महीना पहले खत्म हो गया। बहुत अच्छा, चलिए दूसरा सत्र तुरंत शुरू करते हैं। चमड़े के गहने रखने के बाद रॉकी ने एलिन से कहा, जितनी जल्दी हो सके नोटिस लगा दो, सबको दूसरे प्रशिक्षण कार्यक्रम के बारे में बता दो। इसके अलावा सबको आने वाले चमड़े के कारखाने के बारे में भी बताओ। सभी नगरवासियों को सूचित कर दें कि जब कारखाना चालू हो जाएगा तो केवल वे ही कारखाने में रोजगार के पात्र होंगे जिन्होंने प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लिया है और उसके सभी पाठ्यक्रम पूरे कर लिए हैं। प्रशिक्षण कार्यक्रम के पहले बैच के प्रशिक्षुओं को बिना किसी परीक्षा के रोजगार दिया जाएगा, जबकि बाकी का चयन योग्यता के आधार पर किया जाएगा। वेतन संबंधी विवरण आप संभालेंगे। समझ गई, मैं अभी इसका ध्यान रखूंगी। और भी, एलिन ने सहमति जताई फिर हिचकिचाई, जिससे रॉकी हैरान हो गया। उसने उम्मीद नहीं की थी कि एलिन के पास निपटाने के लिए इतने सारे मामले होंगे। महाराज, कपड़ा निर्यात में थोड़ी जटिलता आ गई है। ओह, क्या हुआ? रॉकी ने चिंतित होकर तुरंत पूछा। थंडरहॉक शहर के ज्यादातर प्रशासनिक मामले मामूली थे और सिर्फ तीन मामलों को ही महत्वपूर्ण माना जा सकता था, अनाज का आयात, सूत का आयात और कपड़े की बिक्री। कपड़े की बिक्री में समस्या की बात सुनकर रॉकी ने स्वाभाविक रूप से इसे बहुत गंभीरता से लिया। हालांकि वह थंडरहॉक सिटी की अर्थव्यवस्था को बदलना चाहते थे, लेकिन ये लक्ष्य रातों रात हासिल नहीं हो सकता था। इसलिए कम से कम जब तक चमड़े का कारखाना चालू नहीं हो जाता, थंडरहॉक सिटी को अपनी आय के लिए कपड़े की बिक्री पर निर्भर रहना ही होगा। रॉकी की चिंता को देखते हुए एलिन ने जल्दी से कहा, महाराज, स्थिति विशेष रूप से गंभीर नहीं है। आधा महीना पहले गोल्डन पर्पल फ्लावर कॉमर्स चैम्बर को व्यापार के लिए थंडरहॉक सिटी आना था, लेकिन वे अपने स्काईशिप की यात्रा में समस्याओं के कारण ब्रेक स्काई माउंटेन के आसपास की योजना के अनुसार जल्दी नहीं पहुंच सके। वे इस व्यापार को स्थगित करना चाहते हैं और यदि संभव हो तो इसे इटर्नल सिटी में ही संचालित करना पसंद करेंगे। अच्छा, ऐसा है। लिलिया का स्पष्टीकरण सुनकर रॉकी ने राहत की सांस ली। ऐसा लग रहा था कि आखिरकार कोई बड़ी समस्या नहीं थी। यह अजीब था कि गोल्डन पर्पल फ्लावर कॉमर्स चैम्बर समय पर व्यापार पूरा नहीं कर सका, लेकिन थंडरहॉक सिटी के लिए उस समय कुछ दिनों बाद कपड़ा बेचना कोई बड़ी चिंता का विषय नहीं था। इसके अलावा इटर्नल सिटी में व्यापार उसकी गंतव्य योजनाओं के अनुरूप था, जिससे कोई असुविधा नहीं हुई। इस प्रकार उन्होंने एलिन को निर्देश दिया कि वह गोल्डन पर्पल फ्लावर कॉमर्स चैम्बर से संपर्क करें और उन्हें इटर्नल सिटी में अपने अनुमानित आगमन समय के बारे में सूचित करें। साथ ही कहा कि वे इटर्नल सिटी स्काईपोर्ट पर सीधे व्यापार पूरा कर सकते हैं। कई सरकारी मामलों को निपटाने के बाद रॉकी कुछ समय के लिए आराम कर सकता था और फिर उसे बस इंतजार करना पड़ता था, और इटर्नल सिटी पहुंचने के बाद ही वह फिर से व्यस्त हो पाता था। लेकिन उन्होंने अपना खाली समय व्यर्थ नहीं बिताया। उन्होंने इस अवसर का उपयोग कई पुस्तकों को ध्यानपूर्वक पढ़ने में किया। पिछली बार जब वह इटर्नल सिटी गया था तो वह मैना के बारे में किताबों का एक बड़ा संग्रह लेकर आया था, और रॉकी का इन किताबों को खरीदने का मकसद स्वाभाविक रूप से मैना रूंस का बेहतर इस्तेमाल करना था। आखिरकार, हालांकि रूंस और जादुई पत्थर दोनों ही मैना प्रदान कर सकते थे, लेकिन उनके इस्तेमाल में काफी अंतर था। उपकरणों में जादुई पत्थरों को रूनों से प्रतिस्थापित करना अपेक्षाकृत सरल था, आंशिक रूप से इसलिए क्योंकि वेंसेल के शोध नोट्स में प्रासंगिक रिकॉर्ड थे, और आंशिक रूप से इसलिए क्योंकि मन हथियारों में शामिल तकनीक बहुत उन्नत नहीं थी, इसलिए रॉकी इसे प्रबंधित कर सकता था। हालांकि, रून अनुप्रयोग का दायरा बढ़ाना उनके लिए अधिक चुनौतीपूर्ण साबित हुआ। न केवल अत्यधिक परिष्कृत शून्य जादू कवच का उल्लेख करना, बल्कि जादू तोप ने भी रॉकी को स्तब्ध कर दिया था। अपनी मूल योजना के अनुसार वह जादुई तोपों पर रूंस लागू करना चाहता था, क्योंकि जादुई पत्थरों को बदलने के लिए या उनके साथ मिलकर मैना उत्पन्न करने के लिए रूंस का उपयोग करने से जादुई तोपों की शक्ति में उल्लेखनीय वृद्धि हो सकती थी। उनका विचार निस्संदेह सही था, लेकिन व्यवहार में उन्हें समस्याओं का सामना करना पड़ा, क्योंकि जादुई तोप का संचालन जादुई पत्थरों को लगाने या रूंस बनाने जितना सरल नहीं था। इसमें कई चालन तकनीकें शामिल थी जो रॉकी की समझ से परे थी, और इन तकनीकों को समझने के बाद ही वह जादुई तोप पर रूंस लागू कर सकता था। इस कारण से उन्होंने विशेष रूप से बड़ी मात्रा में पुस्तकें खरीदी और उनमें से काफी कुछ पढ़ भी ली, लेकिन दुर्भाग्यवश परिणाम आदर्श से कोसों दूर थे। यद्यपि रॉकी ने पुस्तकों के माध्यम से जादुई ऊर्जा चालन के बारे में कुछ समझ हासिल कर ली थी, लेकिन उसका ज्ञान व्यावहारिक अनुप्रयोग के लिए पर्याप्त नहीं था। यही कारण था कि उसने अनंत शहर की इस यात्रा का उपयोग अपने लिए एक शिक्षक खोजने के अवसर के रूप में करने की योजना बनाई, क्योंकि उसे एहसास था कि कुछ चीजों के लिए वास्तव में शिक्षक के निर्देश की आवश्यकता होती है। हालांकि उसने एक शिक्षक रखने का फैसला कर लिया था, फिर भी वह अपने खाली समय का भरपूर उपयोग पढ़ाई में कर रहा था, ताकि कुछ बुनियादी बातों में महारत हासिल कर सके। ऐसा करके शिक्षक के आने के बाद वह सीधे व्यवहारिक प्रयोग पर ध्यान केंद्रित कर सकता था। हालांकि जब रॉकी आराम से अपनी किताब पढ़ रहा था तो वह इस बात से अनजान था कि दूर क्षितिज पर एक ऐसी घटना घट रही थी जो उसे और थंडहॉक सिटी दोनों को प्रभावित कर सकती थी। थंडहॉक सिटी से दूर आसमान में मशीन सिटी नाम का एक शानदार स्काई सिटी था, जो 150,000 की आबादी वाला एक बड़ा स्काई सिटी था। इस समय मशीन सिटी के सिटी लॉर्ड के भवन के अंदर एक वार्तालाप हो रहा था जो संभवतः रॉकी और थंडहॉक सिटी के भाग्य को बदल सकता था। पिताजी, बड़े लोग ऐसी बात पर क्यों सहमत होंगे? एक मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति के पीछे खड़ा रॉकी का चचेरा भाई सिरिल बहुत उत्तेजित था। उसकी बातें सुनकर सिरिल की ओर पीठ किए हुए अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने धीरे से मुड़कर अपनी बेटी की ओर देखा। यह आदमी लगभग 40 साल का, लंबा और चौड़े कंधों वाला, ऊंचा कद और तराशा हुआ चेहरा, जिससे वह बहुत दृढ़ दिखाई देता था। अत्तेड नाम का यह आदमी सिरिल का पिता और रॉकी का चाचा था, और एक बेहद अहम भूमिका भी निभाता था, मैरेंटे परिवार का वर्तमान कुलगुरु। आप किस मामले की बात कर रहे हैं? अपनी बेटी की ओर मुड़कर अत्तेड ने गंभीर स्वर में जवाब दिया। ऐसा नहीं था कि वह जानबूझकर सख्त थे, बल्कि अत्तेड एक स्वाभाविक रूप से गंभीर व्यक्ति थे, जिनमें एक श्रेष्ठ नेता के सभी गुण विद्यमान थे। पिताजी, मैं थंडहॉक सिटी के बारे में बात कर रहा हूँ। बुजुर्ग लोग थंडहॉक सिटी बैरन बोलिन को क्यों देंगे? ये परिवार का निर्णय है। बैरन बोलिन ने परिवार के लिए बहुत बड़ी सेवा की है और उन्हें पुरस्कृत किया जाना चाहिए। लेकिन थंडहॉक सिटी तो रॉकी को 6 महीने पहले ही दे दी गई थी। क्या एल्डर्स भूल गए हैं? सिरिल अपने पिता की बातों से हैरान और गुस्से से भर गई। जब वह बोल रहे थे तो ऐसा लग रहा था मानो थंडहॉक शहर का वर्तमान नगर स्वामी रॉकी अस्तित्व में ही नहीं है, मानो थंडहॉक शहर में कोई नगर स्वामी है ही नहीं। हालांकि सिरिल को यह उम्मीद नहीं थी कि अत्तेड ने ठंडे स्वर में कहा। परिवार द्वारा दी गई चीजें हमेशा वापस ली जा सकती हैं। क्या मुझे आपको ये याद दिलाने की जरूरत है? लेकिन अपने पिता के शब्दों को सुनकर सिरिल के पास अचानक शब्द नहीं बचे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या जवाब दे। जब वह असमंजस में थी तब अत्तेड बैठ चुका था और अचानक उसने पूछा, सिरिल, क्या तुम 6 महीने पहले जो कुछ हुआ था उसके लिए दोषी महसूस कर रहे हो, इसलिए रॉकी की मदद करना चाहते हो? हाँ, गहरी सांस लेते हुए सिरिल ने अपने पिता की आंखों में देखा। पिताजी, अगर रॉकी का मध्यम आकार का स्काई सिटी न होता तो ये कहना मुश्किल होता कि आपको आंटी केली का सहयोग मिलता या नहीं और आप कबीले के नेता बनने में कामयाब होते या नहीं। इसलिए मुझे लगता है कि हम वाकई रॉकी के बहुत ऋणी हैं। इसके अलावा इस बार अपने पिता के बोलने का इंतजार किए बिना सिरिल ने आगे कहा, भले ही हम रॉकी की उपेक्षा करें, फिर भी मुझे लगता है कि थंडहॉक सिटी को बैरन बोलिन को सौंपने का निर्णय बेहद गलत है। मुझे विश्वास है कि आप जानते हैं पिताजी कि बैरन बोलिन लेक्सिंगटन का आदमी है और उसका गुट आपके कबीले का नेता बनने से कभी संतुष्ट नहीं रहा। थंडहॉक शहर को बैरन बोलिन को सौंपने से लेक्सिंगटन का समूह और भी ज्यादा मजबूत हो जाएगा और हमें कोई फायदा नहीं होगा। चूंकि सिरिल लंबे समय से पारिवारिक मामलों में शामिल था, इसलिए उसे माइरेंटे परिवार के विभिन्न गुटों और शाखाओं की गहरी समझ थी, जैसा कि उसने रॉकी से पहली मुलाकात में सोचा था। माइरेंटे जैसे शक्तिशाली और इतनी सारी शाखाओं वाले परिवारों में न केवल आपसी संघर्ष होते थे, बल्कि निरंतर संघर्ष भी होते थे। ऐसी परिस्थितियों में सिरिल अपने पिता के साथ थंडरहॉक सिटी पर केवल इसलिए बहस नहीं कर रही थी क्योंकि वह रॉकी के प्रति ऋणी महसूस कर रही थी, वह अपने गुट की स्थिति पर भी विचार कर रही थी। हालांकि सिरिल के तर्कों की इस श्रृंखला का सामना करते हुए अत्तेज शायद ही कभी मुस्कुराए, लेकिन उन्होंने तुरंत कहा, सिरिल, चूंकि आप जानते हैं कि लेक्सिंगटन के लोग लंबे समय से मेरे प्रति असंतोष रखते हैं, इसलिए आपको मुझे थंडरहॉक सिटी उन्हें देने से रोकने की कोशिश नहीं करनी चाहिए थी। क्यों? क्योंकि इससे उन्हें मौका मिलता है। अत्तेज के चेहरे पर मुस्कान से उदासी छा गई। लेक्सिंगटन के लोग हमेशा से हमारे परिवार के साथ मुसीबतें मोल लेते रहे हैं और अब जबकि बैरन बोलिन ने परिवार के लिए एक खदान हासिल कर ली है, एक बड़ा पुण्य का काम कर दिया है, अगर मैं उसे उसके अनुसार इनाम नहीं दूंगा तो मैं लेक्सिंगटन को बस आलोचना का मौका दूंगा। इसलिए मैंने उन्हें थंडरहॉक सिटी देने का फैसला किया। ये शहर पहले से ही ऐसा था जिसे परिवार छोड़ने की योजना बना रहा था। न केवल ये छोटा है बल्कि इसकी आबादी भी कम है। मुझे याद है जब मैंने इसे रॉकी को सौंपा था तब यहाँ सिर्फ 1,000 से ज्यादा लोग थे और अब शायद इतने भी लोग नहीं बचे होंगे। यह शायद पहले से ही एक वीरान शहर हो। बैरन बोलिन को इनाम के तौर पर ऐसा शहर देने से न केवल उसकी शक्ति बढ़ेगी बल्कि वह उसके लिए बोझ बन जाएगा। सिरिल, क्या तुम इतना सरल तर्क नहीं समझते? लेकिन पापा, मैं कुछ महीने पहले रॉकी से मिला था और वह थंडरहॉक सिटी का प्रबंधन काफी अच्छी तरह से कर रहा था, इसलिए संभवतः यह अभी भी एक निर्जन शहर नहीं है। अपने पिता की बातों का जवाब देने के लिए कोई तर्क न दे पाने के कारण सिरिल केवल बोल ही सकी। उसके शब्द वाकई हताशा में कहे गए थे क्योंकि आखिरी बार उसने रॉकी को लाइब्रेरी में देखा था। उसे कैसे पता चल सकता था कि थंडरहॉक सिटी कैसे विकसित हुई? बेहतर होता कि वह कुछ भी न कहती। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, अत्तेज ने ठंडी आवाज में कहा, चूंकि रॉकी थंडरहॉक सिटी को अच्छी तरह से विकसित कर रहा है, इसलिए तुम्हें इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। इस बार परिवार इस मामले में हस्तक्षेप नहीं करेगा। मेरा मानना है कि रॉकी में बैरन बोलिन को रोकने की ताकत होनी चाहिए क्योंकि बैरन के पास केवल एक ही बेड़ा है। ये कहने के बाद अत्तेज ने अपना हाथ हिलाया जिससे सिरिल को आगे बोलने का कोई मौका नहीं मिला और उसने उसे तुरंत अध्ययन कक्ष से बाहर जाने को कहा। स्पष्ट रूप से क्रोधित होकर सिरिल अपने पिता के अध्ययन कक्ष से बाहर आए, एक क्षण के लिए सोचा और फिर तुरंत अपने सहायक को बुलाया, थंडरहॉक सिटी का सटीक स्थान तुरंत पता करो। रॉकी को इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि दूर क्षितिज पर क्या हो रहा है क्योंकि उसका ध्यान अब पूरी तरह से उन सोने के सिक्कों पर केंद्रित था जो लगभग उसकी मुट्ठी में थे। आधे महीने की लंबी उड़ान के बाद थंडरहॉक सिटी एक बार फिर इटर्नल सिटी के निकट पहुंच रही थी। रॉकी की इस शानदार सुपर स्काई सिटी की पिछली यात्रा को कई महीने बीत चुके थे, फिर भी वह उतना ही विस्मित था जितना कि वह पहली बार यहां आया था। इटर्नल सिटी की भव्यता से अभिभूत, हालांकि अपनी पिछली यात्रा के अनुभव से लैस होकर वह अनंत शहर की ओर जाने की पूरी प्रक्रिया से अच्छी तरह वाकिफ थे, इसलिए उन्होंने अपने लोगों के साथ तुरंत प्रस्थान किया। इस बार चूंकि बड़ी मात्रा में व्यापार किया जाना था, रॉकी ने एक साथ 10 स्काईशिप निकाले जिनमें से 3 कपड़े से लदे हुए थे क्योंकि एलिन ने पहले ही गोल्डन पर्पल फ्लावर कॉमर्स चैम्बर के प्रबंधक के साथ व्यापारिक बंदरगाह पर सीधे व्यापार करने की व्यवस्था कर ली थी। जहां तक अन्य 7 स्काईशिपों की बात है, वे दानव लाशों से भरे हुए थे। आखिरकार इटर्नल सिटी के व्यापारिक बंदरगाह के बगल में गोदामों की एक विशाल श्रृंखला थी जिसमें 100 या उससे अधिक लाशों को रखना एक मामूली बात थी। 10 स्काईशिप एक संक्षिप्त उड़ान के बाद इटर्नल सिटी के व्यापारिक बंदरगाह पर पहुंच गए और थोड़ी देर तक कतार में खड़े रहने के बाद वे आसानी से उतर गए। एक बार जब रॉकी सभी 10 स्काईशिप को जमीन पर ले आया तो उसकी मुलाकात गोल्डन पर्पल फ्लावर कॉमर्स चैम्बर के स्टीवर्ड से हुई जो थंडरहॉक सिटी के साथ व्यापार के लिए जिम्मेदार था क्योंकि वे लेन देन के लिए वहां इंतजार करने के लिए सहमत हुए थे। स्टीवर्ड मैमा, बहुत समय हो गया। गोल्डन पर्पल फ्लावर कॉमर्स चैम्बर के स्टीवर्ड से मिलने पर रॉकी बहुत विनम्र हुआ और फिर उसने एलिन से कपड़े को जहाज से हटाने की व्यवस्था करने को कहा। जैसे ही एलिन इस मामले को संभालने वाली थी, 50 वर्षीय स्टीवर्ड माइमा ने अचानक उसे रोक दिया और रॉकी की ओर मुस्कुराते हुए कहा, नगरपालिका, व्यापार शुरू करने से पहले मैं पहले माल का निरीक्षण करना चाहता हूँ। निरीक्षण? माइमा के अनुरोध से रॉकी और एलिन दोनों अचंभित रह गए। थंडरहॉक सिटी और गोल्डन पर्पल फ्लावर कॉमर्स चैम्बर के बीच कपड़े का व्यापार 1-2 दिन से ज्यादा समय से चल रहा था। रॉकी के सिटी लॉर्ड बनने से बहुत पहले से ही दोनों पक्ष व्यापार कर रहे थे। क्या वाकई जांच की जरूरत थी? क्या थंडरहॉक सिटी में धोखाधड़ी करने की क्षमता थी? हालांकि रॉकी ने भौहें से कुढ़ी, लेकिन माइमा के अनुरोध पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और बस सिर हिला दिया जिससे एलिन को स्काईशिप से कपड़े के कुछ डिब्बे नीचे ले जाने की इजाजत मिल गई। माइमा ने भी तुरंत अपने साथ आए सहायक को निरीक्षण शुरू करने के लिए भेज दिया। एक दर्जन मिनट बीत गए और सहायक ने कपड़े के कई बक्सों का निरीक्षण कर लिया, फिर जल्दी से मैमा के पास फुसफुसाने के लिए गया। रॉकी और एलिन को पूरी कार्रवाई का क्रम उलझन भरा लगा। क्या औपचारिकता की इतनी जरूरत थी? हालांकि जब वे इस पर सोच विचार कर रहे थे, माइमा ने अपना सिर हिलाया और रॉकी से कहा, नगरपालिका चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने कपड़े के लिए नई गुणवत्ता संबंधी आवश्यकताएं तय की हैं, इसलिए आपने जो बैच उपलब्ध कराया है वह मानकों पर खरा नहीं उतरता क्या? उसकी बात सुनकर रॉकी हक्का बक्का रह गया। उसने ऐसी बात की उम्मीद नहीं की थी। स्टीवर्ड मैमा, आपका क्या मतलब है? हम आपके चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साथ वर्षों से सहयोग कर रहे हैं और कपड़े की गुणवत्ता हमेशा एक जैसी रही है, यह अचानक घटिया कैसे हो सकता है? यह मामला स्वाभाविक रूप से एलिन के अधिकार क्षेत्र में आता था, इसलिए रॉकी के बोलने से पहले ही उसने नाराजगी भरी आवाज में माइमा को चुनौती दे दी। अगर गुणवत्ता की बात करें तो थंडरहॉक सिटी का कपड़ा वाकई बहुत साधारण था और एलिन ने भी यही बात मानी। लेकिन यह मत भूलिए कि गोल्डन पर्पल फ्लावर कॉमर्स चैम्बर ने थंडरहॉक सिटी के साथ व्यापार इसी साधारण गुणवत्ता के कारण किया था, क्योंकि साधारण गुणवत्ता का मतलब कम दाम होता था और चैम्बर थंडरहॉक सिटी से कपड़ा सिर्फ इसलिए खरीद रहा था ताकि लागत कम हो। एलिन के विचार में गुणवत्ता की यह तथाकथित कमी हास्यास्पद रूप से बेतुकी थी। एलिन की आपत्ति के जवाब में माइमा ने फिर भी मुस्कुराते हुए उसका अभिवादन किया और कहा, मिस एलिन, ये चैम्बर द्वारा निर्धारित आवश्यकताएं हैं, मुझे इस पर सवाल उठाने का कोई अधिकार नहीं है। लेकिन ओह, क्या ये थंडरहॉक सिटी का वित्त अधिकारी नहीं है? जैसे ही एलिन आगे बढ़ने वाली थी, अचानक एक आवाज सुनाई दी जो उसे कुछ जानी पहचानी लगी। जब उसने उस आवाज की ओर देखा तो उसे सचमुच एक जानी पहचानी शक्ल दिखाई दी। जियाशी, वह व्यक्ति जो अप्रत्याशित रूप से सामने आया था वह कोई और नहीं बल्कि एजोर कॉमर्स गिल्ड का प्रबंधक जियाशी था। एलिन, यहाँ मिलना कितना संयोग है, जियाशी ने उनके पास आते हुए कहा, जो आत्मसंतुष्ट और ताना मारने वाला लग रहा था, हम इस जगह पर फिर मिलेंगे। ये कहने के बाद जियाशी ने एलिन के पीछे देखा और स्वाभाविक रूप से रॉकी पर उसकी नजर पड़ गई। ओह, क्या ये थंडरहॉक शहर का नगर स्वामी नहीं है? आपको देखना सचमुच एक दुर्लभ आनंद है। रॉकी को देखते ही जियाशी ने अपनी आवाज ऊंची कर दी और यह टिप्पणी स्पष्ट रूप से एक गुप्त अर्थ रखती थी, क्योंकि रॉकी ने पहले भी उसे थंडरहॉक सिटी में एक महीने से अधिक समय तक इंतजार करवाया था लेकिन उससे मुलाकात नहीं की थी। सच कहूं तो जियाशी का अचानक आना रॉकी और बाकियों के लिए एक आश्चर्य की बात थी। क्या ये संयोग इतना अच्छा था कि सच नहीं हो सकता था? बेशक यह कोई संयोग नहीं था, क्योंकि उसके तुरंत बाद जियाशी सहजता से मायमा के पास आ खड़ा हुआ और दोनों बातें करने और हंसने लगे। पुराने दोस्त, हमें एक दूसरे को देखे हुए काफी समय हो गया है। हाँ बिल्कुल, कितना समय हो गया। हाल ही में आप कैसे रहे हैं? बुरा नहीं है, बस चैम्बर ऑफ कॉमर्स के लिए काम चला रहा था। रॉकी, एलिन और अन्य लोगों की उपस्थिति में दोनों ऐसे बातें कर रहे थे जैसे वे पुराने दोस्त हों जिन्होंने वर्षों से एक दूसरे को नहीं देखा हो। अब तक एक मूर्ख भी समझ सकता था कि क्या हो रहा है। इससे पहले जो कुछ भी हुआ था, चाहे वह थंडरहॉक सिटी के कपड़े की कथित घटिया क्वालिटी हो, साफ तौर पर जियाशी और माइमा की मिलीभगत से जानबूझकर हालात मुश्किल हो रहे थे। ये जियाशी सच में एक जिद्दी भूत था। पिछली बार रॉकी द्वारा खेले जाने के बावजूद वो न सिर्फ ज्यादा ईमानदार नहीं हुआ बल्कि और भी ज्यादा पाने के लिए वापस भी आया। अब तक जियाशी और माइमा कुछ देर बातें कर चुके थे, तभी जियाशी ने अचानक अपने सिर पर थपथपाया, मानो उसे कुछ एहसास हुआ हो। ओह माइमा, तुम तो सिटी लॉर्ड के साथ बातचीत कर रही थी। देखो, मैंने तुम्हारे जरूरी काम में बाधा डाल दी है, प्लीज जारी रखो, जारी रखो। बोलते हुए वह माइमा के पीछे चला गया, फिर रॉकी और एलिन की ओर देखते हुए उसके चेहरे पर एक ठंडी मुस्कान आ गई। बाद में माइमा के चेहरे पर अभी भी एक चमकदार मुस्कान थी, लेकिन जब वह रॉकी की ओर मुड़ा तो उसके चेहरे पर सचमुच माफी का भाव था। नगरपाल, मुझे सचमुच माफ करना, जियाशी मेरी पुरानी दोस्त है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये शब्द कहने के बाद माइमा ने जमीन पर पड़े कपड़े के कुछ डिब्बों पर नजर डाली, फिर रॉकी की ओर मुड़ी, नगरपाल, आपके सामान की गुणवत्ता वाकई घटिया है, फिर भी अगर आप सचमुच उन्हें बेचना चाहते हैं तो हम उन्हें खरीदने से नहीं हिचकिचाएंगे, लेकिन उनकी कीमत असली वाली नहीं हो सकती। ओह, रॉकी ने माइमा की तरफ देखा और फिर अपने पीछे खड़ी जियाशी की तरफ। उसे जरा भी गुस्सा नहीं आ रहा था क्योंकि उसकी नजर में ये दोनों बस एक मजाक थे। उसके दिमाग में बस यही चल रहा था कि क्या उसे भी उनके साथ खेलना चाहिए और गुस्से का नाटक करना चाहिए, जबकि वे उससे बदला लेने के लिए इतनी दूर तक जा चुके थे। दुर्भाग्यवश रॉकी ऐसा करने में असमर्थ था। वह बिना हंसे अधिक से अधिक इतना ही पूछ सका, स्टीवर्ड मैमा, आप इन वस्तुओं के लिए कितना देने का इरादा रखते हैं? मूल कीमत का 20%। मैमा ने थोड़ी ऊंची करके और रॉकी के सामने दो उंगलियां दिखाते हुए उसकी कीमत तय की, फिर यह जोड़ना नहीं भूला, नगरपाल, अगर आपको लगता है कि कीमत बहुत कम है तो बेझिझक शहर में कहीं और कोशिश करें। इटर्नल सिटी में बहुत सारे चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स हैं। माइमा की बात पूरी होते ही रॉकी खुद को हंसने से नहीं रोक पाया। क्या माइमा सचमुच उसे मूर्ख समझ रही थी? मूल कीमत के 20% पर कपड़ा खरीदने से थंडरहॉक सिटी को वित्तीय नुकसान होगा। और उन्होंने जो कहा था उसके बारे में, जिसमें उन्होंने सुझाव दिया था कि वे शहर के अन्य वाणिज्य मंडलों में भी प्रयास कर सकते हैं। बिना जांच किए ही रॉकी को पता चल गया कि यह निश्चित रूप से एक साजिश है, और पूरी संभावना है कि जियाशी ने पहले ही कई चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स को सूचित कर दिया था ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कपड़ा कहीं भी नहीं बेचा जा सके। एजियोर कॉमर्स गिल्ड के प्रबंधक के रूप में जियाशी का प्रभाव उस स्तर का था। ऐसा नहीं था कि उसके पास बहुत बड़ी शक्ति थी, बल्कि कई चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के लिए थंडरहॉक सिटी इतनी महत्वहीन थी कि किसी बड़े चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रबंधक को दुश्मन बनाना उचित नहीं था। इसके बजाय वे उसे सद्भावना का सुविधाजनक संकेत देकर अपनी कृपा दृष्टि जमाना पसंद करते थे। दुर्भाग्य से, स्टीवर्ड मैमा, अगर ऐसा है तो हम सामान नहीं बेचेंगे। रॉकी ने मैमा की ओर देखा और कहा। मानो मैमा को इस उत्तर का बेसब्री से इंतजार था, उसने तुरंत खेद से अपना सिर हिलाया। नगरपालिका, ये सचमुच खेदजनक है। अगली बार हमें सहयोग करने का अवसर मिल सकता है। अगली बार के लिए इंतजार करने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे ही मैमा जाने के लिए मुड़ा, रॉकी ने अचानक उसे पुकारा। स्टीवर्ड मैमा, मेरे पास सामान का एक और बैच है, क्या आप इसे देखना चाहेंगे? ओह! इन शब्दों से माइमा और जियाशी दोनों ही हतप्रभ रह गईं। फिर दोनों ने एक दूसरे को धूर्त नजरों से देखा। रॉकी क्या सोच रहा था, जो हालात को समझ नहीं पा रहा था, फिर भी उनके साथ व्यापार करने का इरादा रखता था। लेकिन जियाशी, जो रॉकी को और भी नीचा दिखाने का मौका चाहता था, के लिए यह एक ऐसा मौका था जिसे वह गंवाना नहीं चाहता था, इसलिए उसने माइमा की तरफ सिर हिलाया। इशारा समझकर माइमा मुस्कुराती हुई वहीं रुक गई। ये देखकर कि दोनों में से कोई भी नहीं गया, रॉकी को राहत मिली। उसे सच में चिंता थी कि कहीं दोनों जोकर यूं ही न चले जाएं। एलिन, सभी को सामान का दूसरा बैच उतारने को कहो। हाँ, दृढ़ प्रतिक्रिया के साथ एलिन ने जियाशी और माइमा पर एक नज़र डाली, फिर गार्डों को, जो पहले से ही गुस्से से भरे हुए थे, अन्य साथ स्काईशिप से सामान उतारने का आदेश दिया। जो कुछ हुआ था उसे विमान में सवार गार्डों ने देखा था और वे गुस्से से उबल रहे थे। ये साफ था कि माइमा और जियाशी जानबूझकर रॉकी के लिए मुश्किलें खड़ी कर रहे थे, जिसे थंडरहॉक सिटी गार्ड कोर बर्दाश्त नहीं कर सकता था। उनके लिए इससे भी ज्यादा असहनीय था माइमा का कपड़े की घटिया क्वालिटी का दावा। व्यापार के लिए प्रयुक्त कपड़ा गार्डों की पत्नियों और बच्चों द्वारा व्यक्तिगत रूप से बुना जाता था। ये दावा करना कि इसकी गुणवत्ता घटिया थी, गार्डों के परिवारों के श्रम का अपमान करने के समान था। क्या पहरेदार ऐसा बर्दाश्त कर सकते थे? अगर रॉकी न होता तो शायद वे इन दो गुस्सेल बुजुर्गों को पीट पीट कर मार डालने के लिए पहले ही आगे बढ़ चुके होते। इसलिए जब एलिन ने उन्हें सामान उतारने का आदेश दिया तो जहाज के गार्ड तेजी से काम पर लग गए, और उसके तुरंत बाद एक के बाद एक राक्षसों की लाशें जहाज से उतारी जाने लगीं। एक के बाद एक दानव लाशों को गार्डों द्वारा स्काईशिप से जल्दी से नीचे ले जाया गया, और उसी समय एलिन ने गार्डों को स्काईपोर्ट डिस्पैचर से संपर्क करने के लिए भेजा, जिन्होंने तुरंत एक गोदाम किराए पर लिया। जब गोदाम को किराए पर ले लिया गया तो स्काईपोर्ट डिस्पैचर ने कई घोड़ागाड़ियां भेजी, और फिर गार्डों ने एक एक करके राक्षसों के शवों को गाड़ियों में ले जाना शुरू कर दिया। स्काईशिप से 100 से ज्यादा लाशों को हटाना वाकई एक बड़ा काम था। यह न सिर्फ श्रमसाध्य था बल्कि काफी समय लेने वाला भी था। हालांकि रॉकी को कोई जल्दी नहीं थी, क्योंकि उसके पास देखने के लिए मनोरंजन था। जियाशी और माइमा उसके मनोरंजन के सबसे बड़े स्रोत थे। जिस क्षण से पहली दानव लाश को स्काईशिप से हटाया गया, जियाशी और माइमा दोनों ने अपनी भौहें सिकोड़ ली। वास्तव में उन्होंने उम्मीद नहीं की थी कि रॉकी उन्हें ऐसा कुछ दिखाएगा। प्रथम स्तर पर वाणिज्य संघ के प्रबंधक होने के नाते जियाशी और माइमा को निश्चित रूप से दानव लाशों के अपार मूल्य का एहसास था। ऐसी वस्तुएं जिनकी बाजार में हमेशा कमी रहती थी। अगर सिर्फ एक ही वस्तु होती तो भी ज्यादातर वाणिज्य मंडल इस अवसर को हाथ से नहीं जाने देते। हालांकि दानव लाशों का मूल्य जानने के बावजूद उनके चेहरों के भावों में कोई खास बदलाव नहीं आया, क्योंकि वे दोनों विभिन्न वाणिज्य मंडलों के प्रबंधक थे और दर्जनों दानव लाशों से जुड़े बड़े व्यापारों की देखरेख कर चुके थे। कुछ लाशें उन्हें डराने के लिए पर्याप्त नहीं थी। यहां तक कि जब जियाशी ने गार्डों को लाशें ले जाते हुए अपने पास से गुजरते देखा तो उसने उदासीनता से उपहास किया। हालांकि उनकी उदासीनता जल्द ही सदमे में बदल गई, क्योंकि प्रत्येक गुजरते सेकंड के साथ न केवल गार्ड्स ने गुजरना बंद कर दिया बल्कि उन्होंने स्काईशिप से और भी अधिक दानव लाशों को ले जाना शुरू कर दिया। शुरुआत में जियाशी और माइमा को लगा कि रॉकी सिर्फ एक या दो, ज्यादा से ज्यादा 4 या 5 ही दानव लाशें ला पाएगा, लेकिन हकीकत बिल्कुल अलग थी। सिर्फ आधे घंटे में दानव लाशों से भरा एक पूरा जहाज बाहर निकल गया, जिससे 2 पूरी गाड़ियां भर गईं। फिर भी गार्ड्स नहीं रुके और तेजी से एक दूसरे स्काईशिप से सामान उतारना शुरू कर दिया। इस समय तक जियाशी और माइमा के चेहरे पूरी तरह बदल चुके थे, क्योंकि उन्होंने कम से कम 20 राक्षसों की लाशों को गाड़ियों पर लादते हुए देखा था। राक्षसों की 20 लाशें, किसी भी चैम्बर ऑफ कॉमर्स के लिए 20 दानव लाशों से संबंधित लेनदेन को एक बड़ा लेनदेन कहा जाएगा, जिसकी राशि अक्सर दसियों या सैकड़ों हजारों स्वर्ण सिक्कों के बराबर होगी। यही कारण है कि कोई भी चैम्बर ऑफ कॉमर्स ऐसे अवसर को नहीं छोड़ेगा। तो जब जियाशी और माइमा ने देखा कि रॉकी के पास इतनी सारी राक्षसी लाशें हैं, और जैसे जैसे गार्ड उन्हें स्काईशिप से नीचे ले जा रहे थे, उनके हाव भाव भी बदल गए। जियाशी का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वह हैरान थी कि रॉकी इतनी सारी राक्षसी लाशें कैसे पैदा कर सकता है। हालांकि इससे भी अधिक भयावह था माइमा का चेहरा, जो मौत के समान हल्के नीले रंग में बदल गया था, क्योंकि सख्ती से कहा जाए तो रॉकी और जियाशी के बीच संघर्ष का उससे कोई लेना देना नहीं था। उसे अनजाने में ही इसमें घसीटा गया था। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि रॉकी के पास इतनी सारी राक्षसी लाशें होंगी। अगर उसे पता होता कि ऐसा होगा, तो वह रॉकी के खिलाफ जियाशी का साथ नहीं देता, बल्कि उससे फायदा उठाने की कोशिश करता। अफसोस की बात है कि अब पछतावे के लिए बहुत देर हो चुकी थी, और जैसे जैसे उनके चेहरे बदतर होते गए, दूसरा स्काईशिप भी खाली हो गया, और गार्डों ने तुरंत तीसरे स्काईशिप से लाशें उतारना शुरू कर दिया। तब तक ले जाए गए दानव शवों की संख्या 50 को पार कर चुकी थी। इतनी सारी दानव लाशों को उतारते देख और ये देखते हुए कि और भी लाशें आनी बाकी थी, स्काईपोर्ट डिस्पैचर ने तुरंत और घोड़ा गाड़ियां मंगवाई और रॉकी और उसके समूह के साथ और भी ज्यादा शिष्टाचार से पेश आना शुरू कर दिया। जैसे जैसे स्काईशिप से ज्यादा दानव लाशें नीचे उतरती गईं, स्काईपोर्ट पर मौजूद दूसरे लोगों का भी ध्यान इस दृश्य पर गया। ये सर्वविदित है कि इटर्नल सिटी का स्काईपोर्ट बेहद चहल पहल भरा रहता है, जहां हर पल सैकड़ों स्काईशिप उतरते और उतरते रहते हैं, और विभिन्न स्काई सिटीज और चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के लोग अक्सर वहां आते जाते रहते हैं। लेकिन इतने व्यस्त स्काईपोर्ट में भी एक साथ इतने सारे दानव शवों को उतारते देखना बहुत दुर्लभ था। यही कारण है कि कई दर्शकों की निगाहें रॉकी के समूह की ओर मुड़ गईं। एक और घंटा बीत गया और 5 स्काईशिप खाली हो चुके थे। राक्षसों की लाशें 100 से अधिक थीं। रॉकी के सामने लगभग 15-16 घोड़ा गाड़ियां राक्षसों की लाशों से लदी हुई थीं, और गाड़ियों के चारों ओर भीड़ जमा थी, मानो इस तमाशे का आनंद ले रही हो। हालांकि उनके पहनावे और व्यवहार को देखकर लग रहा था कि ये लोग साफ तौर पर अमीर और कुलीन थे, और बिल्कुल भी बेबस दर्शक नहीं थे। जियाशी और माइमा की बात करें तो वे तो अब तक स्तब्ध हो चुकी थीं। चाहे उन्होंने पहले से कुछ भी सोचा या अंदाजा लगाया हो, उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि रॉकी इतनी सारी राक्षसों की लाशें निकाल लाएगा। राक्षसों की लाशों की संख्या 100 से भी ज्यादा थी। अगर सब बिक जाएं, तो कितना बड़ा सौदा होगा। इतना बड़ा सौदा किसी भी चैम्बर ऑफ कॉमर्स को हासिल करने के लिए जी जान से जुट जाएगा। पिछले कर्मों पर पछतावा। अब जियाशी रॉकी से इतना घृणा करने लगा कि उसने अपने दांत पीस लिए। लेकिन भले ही वह उससे नफरत करता था, फिर भी उसके दिल में कुछ पछतावा महसूस हुआ। उनका एजोर कॉमर्स गिल्ड भले ही एक बड़ा चैम्बर ऑफ कॉमर्स हो, लेकिन इससे क्या? क्या बड़े चैम्बर ऑफ कॉमर्स व्यापार नहीं करते? इसके विपरीत, चैम्बर ऑफ कॉमर्स जितना बड़ा होगा, उतना ही वे बड़े व्यापार में संलग्न होना चाहेंगे, जैसे कि यह 100 राक्षसों के शवों के व्यापार से संबंधित व्यापार। इसलिए जब 100 से अधिक राक्षसों की लाशें आकाशयान से हटा दी गईं, तो जियाशी को पछतावा होने लगा कि यदि उसने रॉकी के साथ सभी प्रकार के विवाद न किए होते, तथा एजोर कॉमर्स गिल्ड की ताकत और थंडरहॉक सिटी के साथ उसके दीर्घकालिक सहयोगात्मक संबंधों पर भरोसा किया होता, तो वे संभवतः ये सौदा हासिल कर सकते थे। उसकी तरह माइमा को भी बहुत पछतावा हुआ, और अगर जियाशी को अतीत पर पछतावा था, तो माइमा को अभी पछतावा था, क्योंकि अभी 1 या 2 घंटे पहले उनके गोल्डन पर्पल फ्लावर कॉमर्स चैम्बर का थंडरहॉक सिटी के साथ अभी भी उत्कृष्ट सहयोगात्मक संबंध था, और सिटी लॉर्ड रॉकी के साथ उनका संबंध भी बहुत सामंजस्यपूर्ण था। इसलिए यदि समय को 1 या 2 घंटे पीछे ले जाना संभव होता, तो भले ही गोल्डन पर्पल फ्लावर कॉमर्स चैम्बर इस विशाल लेन देन को पूरा नहीं कर पाता, लेकिन कम से कम उन्हें इस कार्रवाई का एक हिस्सा तो मिल ही जाता। ये देखते हुए कि गोल्डन पर्पल फ्लावर कॉमर्स चैम्बर एजोर कॉमर्स गिल्ड की तुलना में बहुत छोटा था, यहाँ तक कि केवल 20 दानव लाशों, नहीं, यहाँ तक कि 10 लाशों से संबंधित लेन देन भी उनके लिए एक बड़ी बात मानी जाती और चैम्बर के लिए भारी मुनाफा लाती। दुर्भाग्य से ये सब अब असंभव था, क्योंकि माइमा ने पहले ही रॉकी को नाराज कर दिया था। ये सोचते हुए माइमा ने जियाशी को गुस्से से घूरा और ठंडी सांस लेते हुए जानबूझकर उससे दूरी बनाते हुए एक तरफ हट गया। अब उसे सबसे ज्यादा नफरत जियाशी से थी। अगर वो अपनी हरकतों को बढ़ावा न देता, तो वो रॉकी से नाराज कैसे हो सकता था या कपड़े के मुद्दे पर उसके लिए मुश्किलें कैसे खड़ी कर सकता था? अगर ऐसा कुछ न होता, तो रॉकी चाहे जितना भी बकता, वो उसके हाथों से कई राक्षसों की लाशें जरूर खरीद सकता था। वास्तव में मैमा गलत नहीं थी, क्योंकि यदि पिछले मामले न होते, तो रॉकी ने संभवतः उसे कुछ लाशें बेच दी होती, निश्चित रूप से 10 लाशें, क्योंकि थंडरहॉक सिटी के साथ इतने वर्षों के सहयोग के बाद रॉकी एक एहसान करने के लिए भी तैयार हो सकता था। आदरणीय महोदय, जैसे ही जियाशी और माइमा अपने पछतावे में डूबे थे, स्काईपोर्ट डिस्पैचर रॉकी के पास दौड़ा, फिर चेहरे पर मुस्कान लाते हुए पूछा, आदरणीय महोदय, क्या आपको और गाड़ियों की जरूरत है? अगर नहीं तो मैं गाड़ियों को पहले जाने दूंगा, क्योंकि अभी, बोलते हुए डिस्पैचर ने इधर उधर नजर दौड़ाई। इस समय आसपास का इलाका दर्शकों से भरा हुआ था और इतने सारे लोगों के जमावड़े से स्काईपोर्ट में व्यवस्था बुरी तरह बिगड़ रही थी। माफ कीजिए, हमें थोड़ा और इंतजार करना पड़ सकता है। बेहतर होगा कि आप कुछ और गाड़ियां भेज दें। बाद में आने वाली लाशें आकार में बड़ी हैं और इसके अलावा, मुस्कुराने के बाद रॉकी ने डिस्पैचर से कुछ शब्द फुसफुसाए। उसकी आवाज बहुत धीमी थी, इसलिए किसी ने नहीं सुना कि उसने क्या कहा, लेकिन सभी ने देखा कि रॉकी के बोलने के बाद डिस्पैचर की आंखें चमक उठी और फिर उसने रॉकी की ओर बार बार सिर हिलाया और भागने के लिए मुड़ गया। ये देखकर वहां मौजूद सभी लोग उत्सुक हो गए। आखिर रॉकी ने ऐसा क्या कह दिया कि डिस्पैचर इतना उत्साहित हो गया? स्काईपोर्ट पर डिस्पैचर के जाने के बाद ही एक दर्जन से अधिक गाड़ियां वहां भेजी गईं और जब गाड़ियां वहां पहुंच गईं तो गार्ड अंतिम दो स्काईशिप पर चढ़ गए। शुरुआत में इन दोनों आकाशयानों से उतारी गई लाशें अब भी राक्षसों की लाशें ही थीं, लेकिन पहले वाली लाशों से अलग इस बार लाशों का आकार बड़ा था। पहले एक लाश को उठाने के लिए दो पहरेदार ही काफी होते थे, लेकिन अब चार लोगों की जरूरत थी। ये बख्तरबंद बैल राक्षस लाशें हैं। जब चार सुरक्षाकर्मियों को बड़ी मुश्किल से एक शव को आकाशयान से नीचे उतारना पड़ा तो भीड़ में से किसी ने अचानक चिल्लाकर कहा, जिससे अन्य लोग तुरंत शव की ओर मुड़ गए। इन सींगों और शरीर पर मौजूद शल्कों को देखो, ये सचमुच एक कवचधारी बैल राक्षस है। हाँ, यह एक बख्तरबंद बैल दानव है। जैसा कि पहले कहा गया था, इस समय देखने वाले लोग निष्क्रिय दर्शक नहीं थे, उनमें से कई ज्ञानी थे और उनकी आंखें तेज थीं, और किसी ने तुरंत इन शवों को बख्तरबंद बैल राक्षसों के रूप में पहचान लिया। इससे भीड़ में तुरंत हड़कंप मच गया, क्योंकि 100 से ज्यादा राक्षसों की लाशों का पिछला जत्था भले ही संख्या में प्रभावशाली लग रहा हो, लेकिन उनकी गुणवत्ता साधारण थी। सब जानते थे कि वे बस काली आंखों वाले राक्षस थे, जो कोई खास कीमती नहीं थे, लेकिन बख्तरबंद बैल राक्षसों की तो बात ही अलग थी। अनंतनगर के शिकार विनिमय में एक अच्छी तरह से संरक्षित बख्तरबंद बैल दानव शव आसानी से 10,000 से ज्यादा सोने के सिक्कों में बिक सकता था। बख्तरबंद बैल दानवों के सींग और शल्क कवच विशेष रूप से मूल्यवान थे, जिससे ये सुनिश्चित होता था कि इन राक्षस शवों के लिए हमेशा खरीदार मौजूद रहते थे। कुछ दुकानें तो विशेष खरीद अधिकारों के लिए ऊंची कीमतें भी देती थीं। तो जब पहरेदार 13 बख्तरबंद बैल दानवों की लाशें लेकर स्काईपोर्ट पर आए तो वाकई थोड़ी सनसनी फैल गई। 13 बख्तरबंद बैल दानवों की लाशें, जिनकी कीमत कम से कम 10,000 स्वर्ण मुद्रा प्रति लाश के हिसाब से थी, कुल मिलाकर 130,000 स्वर्ण मुद्राएं थीं। इस समय तक भीड़ में मौजूद लोग खुद को रोक नहीं पाए और एक 30 वर्षीय व्यक्ति समूह से बाहर निकला और चेहरे पर मुस्कान लिए रॉकी के पास पहुंचा। सर, मेरा नाम लाइट है, मैक्लेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स से हूं और यह हमारा बिजनेस कार्ड है। बोलते बोलते लाइट नाम के अधेड़ आदमी ने रॉकी को एक बिजनेस कार्ड दिया और फिर आगे कहा, सर, अगर आप इन राक्षसों की लाशों को बेचना चाहें तो क्लेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स इन्हें आपसे लेने को पूरी तरह तैयार है। मुझे नहीं पता कि आपने हमारे बारे में सुना है या नहीं, लेकिन हमारे पास राक्षसों की बिक्री के लिए कई तरह के चैनल हैं और हम आपकी संतुष्टि की गारंटी देते हैं। स्पष्टतः ये लाइट रॉकी के साथ व्यापार करने के लिए अपने चैम्बर ऑफ कॉमर्स का प्रतिनिधित्व कर रहा था और यह विचार रखने वाला वह अकेला व्यक्ति नहीं था, क्योंकि विभिन्न चैम्बर ऑफ कॉमर्स के और अधिक लोग रॉकी के पास आने लगे। प्रत्येक ने अपने बिजनेस कार्ड सौंपे, इस उम्मीद में कि रॉकी के साथ अच्छी बातचीत होगी। इन लोगों में मैमा भी थी। जब गार्डों ने बख्तरबंद बैल दानव शवों को बाहर निकाल लिया तो पहले से पीला पड़ चुका माइमा, जिसने पहले ही जियाशी से खुद को दूर कर लिया था, ऐसे मूल्यवान सामान के बारे में रॉकी के साथ बातचीत करने से खुद को नहीं रोक सका। फिर सबको समझ आया कि किसी के लिए किताब पलटने से भी तेज चेहरा घुमाना क्या मायने रखता है। पहले पीले चेहरे वाले मैमा ने तुरंत अपने चेहरे पर एक चापलूसी भरी मुस्कान बिखेर दी। जब बाकी वाणिज्य मंडल के लोग धीरे धीरे वहां से हट गए तो वह रॉकी के पास दौड़ा। नगरपाल, आप देखिए, देखिए मैं कितना बूढ़ा हो गया हूँ, मैं अभी क्या कह रहा था, मैं कपड़े कब ले जा सकता हूँ? रॉकी के पास पहुंचकर माइमा मुस्कुरा रही थी। उसने राक्षसों की लाशों का जिक्र तक नहीं किया, बल्कि वह बस कपड़ों को वहां से हटाना चाहती थी, जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। रॉकी ने बस उसकी तरफ एक नजर डाली और सीधे कहा, स्टीवर्ड मैमा, आपको अपनी दवा लेनी चाहिए। रॉकी ने सचमुच कभी माइमा जैसा बेशर्म व्यक्ति नहीं देखा था, जो इस तरह का व्यवहार करने के बाद भी उससे बात करने की हिम्मत कर रही थी, पागल। इस बीच उसने जियाशी की ओर भी देखा, जिसका रंग बेहद बदसूरत था। ऐसा लग रहा था कि वह किसी भी क्षण क्रोध से मर सकता है। फिर वह मुस्कुराया, ओवसियर जियाशी, आपको वास्तव में अपनी दवा लेनी चाहिए। ये शब्द वाकई कोई मजाक नहीं थे, क्योंकि जियाशी, जो असहाय होकर हर राक्षस की लाश को जहाज से उतारते हुए देख रहा था, ऐसा लग रहा था जैसे उसे सचमुच कोई दौरा पड़ गया हो, इतना बेचैन कि वह बोल भी नहीं पा रहा था। अगर उसने जल्दी से कोई दवा नहीं ली तो वह सचमुच गुस्से से मर सकता था। रॉकी की बात खत्म होते ही जियाशी इतना गुस्से में आ गया कि वह वहीं बेहोश होने ही वाला था। वह थोड़ा लड़खड़ाया, फिर मुश्किल से खुद को संभाला, फिर दांत भींचे और उदास मायमा के साथ चला गया। दुर्भाग्यवश दोनों के चले जाने की बात किसी को पता नहीं चली, क्योंकि लोग रॉकी के पास आते रहे तथा उनसे संभावित व्यापार पर चर्चा करने की उम्मीद करते रहे। तुम सब यहाँ किस लिए इकट्ठे हुए हो? तितर बितर हो जाओ। तभी अचानक एक तेज आवाज गूंजी, जिसके बाद कवच पहने गार्डों का एक समूह भीड़ के बीच से रास्ता बनाता हुआ आया। भीड़ के अलग होने के बाद एक दल का कप्तान, जो पूरी तरह से जादुई ऊर्जा कवच से सुसज्जित था, एक दल का नेतृत्व करते हुए उसी तरह सुसज्जित दल के साथ सभी के सामने आया। उसके साथ वह डिस्पैचर भी था जो पहले ही चला गया था। गार्ड्स का नेतृत्व करने वाला डिस्पैचर जल्दी से रॉकी के पास पहुंचा, उससे कुछ शब्द कहे और रॉकी के हाथ की एक लहर के साथ गार्ड्स, जो पहले से ही दानव लाशों को ले जा चुके थे, आखिर स्काईशिप पर चढ़ गए और एक के बाद एक कार्गो के बक्से को नीचे ले जाने लगे। इस बीच वहां तैनात सुरक्षाकर्मियों ने भीड़ को तितर बितर करना शुरू कर दिया तथा दर्शकों से पीछे हटने को कहा। अफसोस की बात है कि भीड़ को तितर बितर करने की गार्ड्स की कोशिशें नाकाम रहीं। तितर बितर हुए लोग बस थोड़ा और दूर चले गए, क्योंकि ये व्यापारी थे जो इटर्नल सिटी से नियमित रूप से लेन देन करते थे और अच्छी तरह जानते थे कि ये गार्ड्स किस तरह के लोग हैं। ये गार्ड्स स्काईपोर्ट सुरक्षा दल के थे, जिन्हें आंशिक रूप से स्काईपोर्ट की सुरक्षा का प्रबंधन करने और आंशिक रूप से मूल्यवान माल की सुरक्षा का कार्य सौंपा गया था। अनंत नगर एक व्यापारिक नगर है जहां प्रतिदिन अनगिनत वस्तुओं का परिवहन होता है, जिनमें प्राकृतिक रूप से विलासितापूर्ण वस्तुएं भी शामिल हैं। इन वस्तुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ऐसे शहर में भी जहां कोई भी उपद्रव करने की हिम्मत नहीं करता, ईश्वरीय नगरी अनुरक्षण कार्यों के लिए एक सुरक्षा दल नियुक्त करती है। सुरक्षा दल की जिम्मेदारियों से अच्छी तरह वाकिफ होने के बावजूद भीड़ तितर बितर होने को और भी कम इच्छुक थी। सबको साफ पता था कि यहाँ सुरक्षा का कोई मुद्दा नहीं था, इसलिए गार्डों की एक टुकड़ी के आने का कारण आसानी से समझ में आ गया। वे यहाँ कीमती सामान की सुरक्षा के लिए थे। इस स्थिति में आसपास की भीड़ तितर बितर होने को तैयार नहीं थी। हर कोई ये देखना चाहता था कि रॉकी के पास ऐसा कौन सा कीमती सामान है जिसके लिए सुरक्षा दल की जरूरत पड़ी। इस अजीबोगरीब प्रक्रिया के दौरान गार्ड्स ने स्काईशिप से बक्से उतारकर एक गाड़ी में रख दिए थे। जाहिर है ये वो सामान थे जिन्हें सुरक्षा दल को ले जाना था, लेकिन ये क्या थे ये पता नहीं चल पाया, क्योंकि ये सभी बक्सों में भरे हुए थे। सर, बक्सों में दानव कोर हैं। जिज्ञासु भीड़ में से 40 वर्ष की आयु के एक अधेड़ व्यक्ति ने अपने पास बैठे एक वृद्ध व्यक्ति से फुसफुसाकर रहस्य का खुलासा किया। उस समय गार्डों ने व्यवस्थित तरीके से गाड़ी पर जो बक्से लादे थे उनमें वास्तव में दानव कोर थे। सोचिए, दानव कोर के इतने सारे बक्से हैं। अधेड़ उम्र के आदमी की बातें सुनकर उसके बगल में खड़ा बुजुर्ग रॉकी की ओर देखे बिना नहीं रह सका। आखिर यह नगर स्वामी कौन है? उसने इतने सारे दानव शव और दानव कोर कैसे जुटाए? अपने आप से बुदबुदाते हुए बूढ़े व्यक्ति ने अपने बगल में खड़े अधेड़ उम्र के व्यक्ति को निर्देश दिया, किसी को इस नगर स्वामी की पृष्ठभूमि की जांच करने के लिए भेजो और यह भी पता लगाओ कि वे कहाँ रह रहे हैं, ताकि हम बाद में उनसे मिल सकें। हाँ, ये कहते हुए वह अधेड़ आदमी मुड़ा और चला गया। संयोग से जैसे ही वह भीड़ से निकला, कई और लोग भी रॉकी की पहचान की जांच करने के इरादे से वहां से निकल पड़े। इससे पहले जब बख्तरबंद बैल राक्षसों को उतारा जा रहा था तो कई चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स उत्सुकता से रॉकी से बात करने के लिए आए, लेकिन काफी संख्या में लोग शांत भी रहे। ये लोग भी विभिन्न चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स से आए थे, लेकिन उन्हें कोई जल्दी नहीं थी, क्योंकि वे जानते थे कि 100 से ज्यादा दानव लाशों वाला कोई भी सौदा 4 से 5 लाख स्वर्ण मुद्राओं का हो सकता है और इतना बड़ा लेन देन स्काईपोर्ट जैसी जगह पर संभव नहीं था। इसलिए उन्हें बस रॉकी की पहचान और उसके रहने की जगह का पता लगाना था और फिर वे बाद में धीरे धीरे बातचीत कर सकते थे। इसलिए जब तक रॉकी ने डायमंड कोर को बाहर निकालना शुरू नहीं किया, तब तक इन लोगों ने अपने मातहतों को कार्रवाई के लिए नहीं भेजा। फिर भी भीड़ में कुछ लोग स्थिर रहे, हालांकि यह स्पष्ट नहीं था कि ये कुछ लोग सचमुच सिर्फ दर्शक थे या सचमुच अपना संयम बनाए रखने में सक्षम थे। जब रॉकी वास्तव में स्काईपोर्ट से बाहर निकला तो शाम होने वाली थी, जिसका मतलब था कि उसने लगभग पूरा दिन स्काईपोर्ट पर बिताया था, लेकिन वह कुछ नहीं कर सकता था। इस बार वह अपने साथ बहुत कुछ लाया था, जिसमें राक्षसों की लाशें और राक्षसों के कोर, साथ ही कपड़े भी शामिल थे। इसके अलावा उसके पास बेचने के लिए हजारों पाउंड का यश भी था। इसलिए जब राक्षसों की लाशें और राक्षसों के कोर जहाज से उतार दिए गए तो स्काईशिप को अयस्कों को स्काईपोर्ट तक पहुंचाने के लिए थंडहॉक शहर लौटना पड़ा, जिससे स्वाभाविक रूप से काफी देरी हुई। खुशकिस्मती से पिछली बार के उलट रॉकी को जरा भी जल्दी नहीं थी। हालांकि उसने पूरा दिन स्काईपोर्ट पर बिताया था, फिर भी उसका मूड बहुत अच्छा था। उसे कपड़ों की भी कोई चिंता नहीं थी, क्योंकि कपड़ा वाकई चिंता करने लायक नहीं था। थंडहॉक सिटी से आया कपड़ा बिकना तय था और जिन कई सौदों पर वह बातचीत करने वाला था उसे देखते हुए कोई भी वाणिज्य मंडल उसके साथ व्यापार करते हुए इन कपड़ों को जरूर खरीद लेगा। साथ ही उन्हें सबसे अधिक आश्चर्य इस बात पर हुआ कि जब इस बार वे स्काईपोर्ट से बाहर निकले तो उनके साथ जो व्यवहार किया गया वह काफी अलग था। पिछली बार जब रॉकी स्काईपोर्ट से निकला था तो उसने अपनी गाड़ी किराए पर ली थी और मोटे द्वारा सुझाई गई एक छोटी सी सराय में रुका था, लेकिन इस बार उसने अपने लिए एक गाड़ी आरक्षित करवाई थी। काफी देर से इंतजार कर रही उस बड़ी गाड़ी को देखकर रॉकी पूरी तरह से हैरान रह गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे किसने भेजा है। काफी पूछताछ के बाद आखिरकार उसे माजरा समझ में आया। ये पता चला कि अनंत शहर में आकाश शहर से आने वाले किसी भी नगर स्वामी को कुछ विशेषाधिकार प्राप्त थे, जैसे कि कार स्थानांतरण और शहर के भीतर नगर स्वामियों के लिए विशेष रूप से तैयार आवास। रॉकी को पहली बार इस बारे में पता चला था, लेकिन विस्तृत पूछताछ के बाद उसे इसका कारण समझ में आ गया। ऐसा लग रहा था कि यह टनल सिटी द्वारा शहर के सरदारों को व्यापार के लिए आकर्षित करने की एक चाल थी। ये जानना चाहिए कि इस श्रेणी के नगर स्वामी जब कोई कदम उठाते थे तो उसका परिणाम हमेशा बड़े पैमाने पर लेन देन के रूप में होता था। कुछ लाख स्वर्ण सिक्के एक छोटी राशि होती थी, जबकि लाखों स्वर्ण सिक्कों के मूल्य का लेन देन आम बात थी, और यहाँ तक कि करोड़ों स्वर्ण सिक्कों का लेन देन भी बड़े आकाश शहरों के नगर स्वामियों के लिए कोई नई बात नहीं थी। इस तरह के बड़े लेन देन से स्वाभाविक रूप से इटर्नल सिटी को भी उतना ही बढ़ाकर राजस्व प्राप्त हुआ। इसलिए विभिन्न स्काई सिटीज के नगर स्वामियों को आकर्षित करने के लिए इटर्नल सिटी ने कई तरीके अपनाए। उन्होंने न केवल नगर के सामंतों को नगर के सामंतों के विशेषाधिकार प्राप्त व्यवहार का आनंद लेने की अनुमति दी, बल्कि उन्हें कुछ विशेषाधिकार भी प्रदान किए जो उनके व्यापार की मात्रा के साथ बढ़ते गए। बहुत कुछ विभिन्न वाणिज्य मंडलों की VIP प्रणालियों की तरह है। ये रॉकी के लिए स्वाभाविक रूप से अच्छी खबर थी, जो स्काई सिटी का एक स्वामी भी था। इसलिए ये जानकर उसने तुरंत टनल सिटी के अधिकारियों के पास पंजीकरण करा लिया। तब से वह न केवल यहाँ नगर स्वामियों को मिलने वाले व्यवहार का आनंद ले सकता था, बल्कि जैसे जैसे यहाँ उसका व्यापार बढ़ता गया उसे कुछ विशेषाधिकार भी मिलते गए। ऐसी परिस्थितियों में जब रॉकी और उसके लोग स्काईपोर्ट से बाहर निकले तो वे विशेष रूप से शहर के सरदारों के लिए आरक्षित एक गाड़ी में सवार हो गए और उन्हें सीधे उनके लिए विशेष रूप से तैयार किए गए आवासों में भेज दिया गया। इटर्नल सिटी में नगर के शासकों के लिए तैयार किया गया आवास एक बड़ा होटल था, जिसे स्टार ऑफ द स्काई कहा जाता था, जो 9 मंजिला था। यहाँ तक कि इटर्नल सिटी में भी 9 मंजिला इमारत काफी दुर्लभ थी, और यह स्थान होटल के नाम के साथ निश्चित रूप से हर पहलू से शहर के प्रभुओं की प्रतिष्ठित स्थिति को रेखांकित करता था। जब गाड़ी रॉकी और उसके साथियों को स्टार ऑफ द स्काई के प्रवेश द्वार पर ले गई तो 9 मंजिला ऊंचे होटल को देखकर रॉकी, जो पहली बार इस स्थान पर आया था, कुछ घबराया हुआ सा लग रहा था। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं थी, क्योंकि यह कोई साधारण जगह नहीं थी। यहाँ सिर्फ स्काई सिटीज के नगर स्वामी रहते थे। एक छोटी सी दुर्घटना भी स्काई सिटीज के बीच एक बड़े युद्ध का कारण बन सकती थी। सौभाग्यवश जैसे ही रॉकी और उसका समूह स्टार ऑफ द स्काई की पहली मंजिल पर स्थित लॉबी में दाखिल हुआ, एक वेटर ने तुरंत उन्हें विभिन्न प्रक्रियाओं को संभालने के लिए प्रेरित किया, जिसमें उन्हें कोई प्रयास करने की आवश्यकता नहीं पड़ी। और जब सारी प्रक्रियाएं सुचारू रूप से निपट गईं, तो रॉकी और उसके समूह को दूसरी मंजिल पर 3 कमरे आवंटित कर दिए गए, जहां वे आराम से रह सकते थे। स्टार ऑफ द स्काई होटल में कौन सी मंजिल पर रहना है, ये बहुत मायने रखता था। छोटे स्काई सिटी के स्वामी केवल दूसरी या तीसरी मंजिल पर ही रह सकते थे, मध्यम स्काई सिटी के स्वामी 4थी, 5वीं और 6ठी मंजिल पर रह सकते थे, जबकि केवल बड़े स्काई सिटी के स्वामी ही 7वीं और 8वीं मंजिल पर रह सकते थे। सबसे ऊंची 9वीं मंजिल अनंत शहर के उन नगर स्वामियों के लिए आरक्षित थी जो विशेष विशेषाधिकार चाहते थे। इस नियम का मतलब था कि रॉकी, जिसने अभी अभी इटर्नल सिटी में अपनी स्थिति दर्ज कराई थी, केवल दूसरी मंजिल पर ही रह सकता था और तीसरी मंजिल के लिए पात्र नहीं था। हालांकि तीसरी मंजिल भी स्मॉल स्काई सिटी के स्वामियों के लिए थी, लेकिन यह उन लोगों के लिए आरक्षित थी जिन्होंने एक निश्चित मात्रा में व्यापार हासिल कर लिया था, जो रॉकी ने अभी तक हासिल नहीं किया था। रॉकी को इससे कोई खास परेशानी नहीं हुई, वह इतने अच्छे होटल में मुफ्त में रहने से संतुष्ट था, और चाहे वह दूसरी मंजिल पर हो या तीसरी, उसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। हालांकि जैसे ही उसने अपना कागजी काम निपटाया और मुड़ने ही वाला था, उसने देखा कि उसकी ही उम्र का एक युवक कई गार्डों से घिरा हुआ सीधे उसकी ओर आ रहा है। नमस्ते, क्या आप सिटी लॉर्ड रॉकी हैं? रॉकी के पास सीधे जाकर उसकी ही उम्र का एक युवक मुस्कुराकर बोला। हाँ, यह मैं हूँ। और आप? ओह, मैं बर्ग हूँ, लिंग्यू शहर का नगर स्वामी। एक सरल आत्मा परिचय ने रॉकी को बर्ग पर गंभीरता से ध्यान देने के लिए मजबूर कर दिया था, जो लगभग उसी उम्र का था और एक स्काई सिटी का सिटी लॉर्ड भी था। सच कहूँ तो रॉकी की किसी स्काई सिटी के किसी दूसरे सिटी लॉर्ड से पहली मुलाकात थी, जिसने उसे थोड़ा चौंका दिया। खुशकिस्मती से बर्ग ने जल्द ही बातचीत शुरू कर दी। नगरपालिका अध्यक्ष रॉकी, मेरा लिंग्यू शहर भी एक व्यापारिक शहर है, इसलिए मुझे आशा है कि जब आपके पास समय होगा तो आप यहाँ आ सकेंगे, और व्यापार के लिए लिंग्यू शहर में आने के लिए आपका बहुत स्वागत है, बर्ग ने कहा। बोलते हुए बर्ग रॉकी के करीब गया और अपनी आवाज़ धीमी करते हुए बोला, इटनल सिटी में व्यापार कर वास्तव में बहुत ज्यादा है, और हालांकि मेरा लिंग्यू सिटी छोटा है, फिर भी वहां काफी सारे वाणिज्य कक्ष हैं। सिटी लॉर्ड रॉकी, अगर आप वहां आएंगे तो जरूर संतुष्ट होंगे। ये कहने के बाद बर्ग ने रॉकी की ओर सिर हिलाया, ऐसा प्रतीत हुआ कि आप जानते हैं कि मैं क्या कहना चाहता हूं, और फिर अपने गार्डों को वहां से ले जाने से पहले कुछ सुखद बातचीत की। जब तक बर्ग और उसके गार्ड आंखों से ओझल नहीं हो गए, तब तक रॉकी को ये बात समझ में नहीं आई, यह आदमी उसे अपने शहर में व्यापार करने के लिए लुभाने की कोशिश कर रहा था। इससे रॉकी को कुछ आश्चर्य हुआ, एक सिटी लॉर्ड जो व्यक्तिगत रूप से अपने स्काई सिटी के लिए व्यवसाय की मांग कर रहा था, वह बर्ग के प्रति अविश्वसनीय रूप से सक्रिय था। असल में उसे हैरान नहीं होना चाहिए था, क्योंकि उसने भी थंडहॉक शहर की खातिर राक्षसों के खिलाफ हमले का नेतृत्व किया था, वरना ये सारी राक्षस लाशें कहां से आतीं। ये छोटा सा प्रकरण बर्ग के जाने के साथ समाप्त हो गया, और फिर रॉकी और उसके समूह को नौकरों द्वारा दूसरे स्तर तक ले जाने वाली लिफ्ट तक ले जाया गया। हाँ, यह एक लिफ्ट थी, या यूं कहें कि इसे यहाँ मैजिक लिफ्ट कहा जाना चाहिए, लेकिन इसका कार्य और तंत्र एक सामान्य लिफ्ट की तरह ही था, जो सीधे ऊपर और नीचे जाने में सक्षम थी। रॉकी का इस तरह के उपकरण से यह पहला सामना था, फिर भी उसे कोई आश्चर्य नहीं हुआ। ऐसी दुनिया में जहां शहर आसमान में उड़ सकते हैं, लिफ्ट कोई जटिल बात नहीं लगती। दूसरे तल पर जाते हुए रॉकी को चार पांच लोगों के समूह मिले, जो अलग अलग दिशाओं में जा रहे थे, कुछ अकेले और कुछ अपने सेवकों के साथ। बस एक ही समानता थी कि ये सभी लोग नगर के सरदार थे। स्वयं एक सिटी लॉर्ड होने के नाते रॉकी बता सकता था कि उनमें से कौन उसके साथी हैं। ये पहली बार था जब उसने इतने सारे सिटी लॉर्ड्स को एक साथ देखा था। आज के जमाने में हालांकि हजारों स्काई सिटीज हैं, फिर भी आकाश अपने आप में विशाल है। पूरे आकाश की तुलना में हजारों स्काई सिटीज की संख्या अभी भी बहुत कम है। इसके अलावा चूंकि नगर स्वामी आमतौर पर अपने ही शहरों में रहते थे, इसलिए एक दूसरे से मिलने के अवसर दुर्लभ थे। कुछ नगर स्वामी दूसरे नगर स्वामी से बातचीत भी नहीं करना चाहते थे, बल्कि अपने ही शहरों में आराम से रहना पसंद करते थे। इस प्रकार पांच या छह सिटी लॉर्ड्स का एक साथ दिखना एक ऐसा दृश्य था जिसका सामना रॉकी ने पहले कभी नहीं किया था, जिससे वह घबराया हुआ भी था और थोड़ा उत्साहित भी। कुछ ही देर बाद नौकरों ने उन्हें जादुई लिफ्ट के सामने ले जाकर खड़ा कर दिया, जहां वे कुछ देर तक प्रतीक्षा करते रहे, और फिर धीरे धीरे दरवाजे खुले और लोगों का एक समूह बाहर निकलता हुआ दिखाई दिया। इस समूह में सबसे ज्यादा ध्यान आकर्षित करने वाली एक युवती थी, जो चांद के बीच तारे की तरह घिरी हुई थी। उसने चटक लाल रंग का गाउन पहना हुआ था और उसके खूबसूरत घुंघराले लाल बाल उसे किसी खिले हुए लाल गुलाब की तरह दिखा रहे थे। बेशक वह कोई और नगर स्वामी ही थी, रॉकी को एक नज़र में ही उसकी पहचान पता चल गई। हालांकि जैसे ही वह उस गुलाब जैसी औरत के पास से गुजरा, उसे कुछ याद आ गया और उसने अनायास ही उसकी तरफ देखा। आपका नाम रॉकी है ना? हाँ, यह मैं हूँ। रॉकी को पहली बार एहसास हुआ कि वह कितना प्रसिद्ध हो गया है, ऐसा लग रहा था कि हर कोई उसका नाम जानता है। इस जवाब से गुलाब जैसी दिखने वाली महिला ने उसे बड़ी दिलचस्पी से ऊपर से नीचे तक देखा, जब तक कि रॉकी को कुछ असहजता महसूस नहीं हुई, और फिर उसने अपने लाल होंठ हिलाते हुए मुस्कुराते हुए कहा, मैं करीना हूँ, रोज सिटी की सिटी लॉर्ड। मैंने सुना है कि आज स्काईपोर्ट में क्या हुआ, क्या तुमने उन राक्षसों को मार डाला? पूर्ण रूप से हाँ। रॉकी को इस बात पर आश्चर्य हुआ कि दिन की घटनाएं कितनी तेजी से फैल गईं, यहां तक कि स्टार ऑफ द स्काई के सिटी लॉर्ड्स के बीच भी। उसकी पुष्टि सुनकर करीना ने एक धूर्त मुस्कान बिखेरी, आपके छोटे कद को देखते हुए मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप इतने सक्षम होंगे, लेकिन ये बहुत अच्छी बात है, हमें सहयोग करने का मौका मिल सकता है, क्योंकि मुझे शिकार करना भी पसंद है। करीना वहां से चली गई और सबके सामने से लाल रंग की चमक के साथ गायब हो गई, और उसके जाने के बाद ही रॉकी कुछ उलझन में मैजिक एलिवेटर में प्रवेश कर गया। रोज सिटी की सिटी लॉर्ड ने रॉकी पर अपनी गहरी छाप छोड़ी, अपनी खूबसूरती की वजह से नहीं, बल्कि इसलिए कि करीना का एक अनोखा आभामंडल था और उसकी बातें दिलचस्प थीं। ऐसा लग रहा था मानो वो रॉकी के साथ काम करना चाहती हो। रॉकी सिर हिलाते हुए समझ नहीं पाया कि वो महिला असल में क्या चाहती है, इसलिए उसने बात आगे नहीं बढ़ाई। शायद उसकी बातें बस एक विनम्र इशारा थीं और उन्हें ज्यादा गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं थी। हालांकि करीना के आने से रॉकी के क्षितिज का विस्तार हुआ, क्योंकि रास्ते में करीना समेत रॉकी पांच छह सिटी लॉर्ड से मिल चुका था। करीना और पहले मिले बर्ग के व्यवहार से यह स्पष्ट था कि स्काई सिटीज के हर सिटी लॉर्ड का अपना अलग व्यक्तित्व था। यद्यपि वो कई सिटी लॉर्ड से मिल चुका था और उनमें से दो से परिचित भी था, रॉकी का इन लोगों से दोस्ती करने का कोई इरादा नहीं था, इसलिए नहीं कि वह घमंडी था, बल्कि इसलिए कि समय सही नहीं था। फिलहाल थंडरहॉक सिटी अभी भी कमजोर थी और जब उसकी अपनी ताकत पर्याप्त नहीं थी तो दूसरे स्काई सिटीज से जल्दबाजी में भिड़ना कोई समझदारी भरा कदम नहीं था। आखिरकार बाकी सिटीज भी सिटी लॉर्ड्स ही थे और कौन जाने वे थंडरहॉक सिटी को अपना अगला विस्तार लक्ष्य मानेंगे या नहीं। इसके अलावा रॉकी के पास मन रूम का रहस्य था और जानकार सिटी लॉर्ड्स के साथ बहुत अधिक संपर्क उन्हें इस रहस्य का संकेत दे सकता था जो केवल उसके लिए ही परेशानी लाएगा। इसलिए अपने कमरे में जाने के बाद रॉकी ने सभी को अपने कमरे में बुलाया और अपना नया आदेश सुनाया, कम प्रोफाइल रखें। चाहे आसमान के तारे पर हो या बाहर, वह चाहता था कि हर कोई संयमित रहे और दिखावटी न हो। आखिरकार वे यहां पैसा कमाने और खर्च करने आए थे और दूसरी मुसीबतें उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं थीं। यह अनुरोध स्वाभाविक रूप से अन्य लोगों द्वारा निर्विरोध किया गया क्योंकि वे भी अनंत शहर में कई कार्यों में व्यस्त थे और चाहकर भी उनके पास दिखावा करने का समय नहीं था। हालांकि दुर्भाग्यवश हालांकि रॉकी का इरादा अच्छा रहा होगा, लेकिन उसके बाद की घटनाओं ने यह सुनिश्चित कर दिया कि उसकी लो प्रोफाइल रणनीति शुरू से ही विफल रही, क्योंकि स्काईपोर्ट में उसने जो हंगामा मचाया था उसके कारण अब और अधिक समय तक रडार के नीचे रहना असंभव हो गया था। वास्तव में रातों रात अगले दिन तक उनके दरवाजे पर आगंतुकों की कतारें लगनी शुरू हो गईं। बंदरगाह पर 100 से ज्यादा दानव लाशें, दानव कोर के कई डिब्बे और हजारों पाउंड एस्क भेजे जाने की बात अगले दिन ही उन लोगों की वजह से जगजाहिर हो गई जो इस खबर को फैलाने में रुचि रखते थे और जिसने काफी ध्यान खींचा। वरना बर्ग और करीना जैसे शहर के सरदार जो रॉकी से कभी मिले ही नहीं थे, उसे पहली नजर में कैसे पहचान पाते। इन जानकार नगर स्वामियों के अलावा रॉकी पर अधिक ध्यान देने वाले लोग विभिन्न वाणिज्य मंडलों के व्यापारी थे। आखिरकार उसके पास 100 से ज्यादा दानव लाशें, दानव कोर के कई डिब्बे और हजारों पाउंड अयस्क थे। उसने ये सारी चीजें सिर्फ दिखावे के लिए देवनगरी में नहीं लाई थीं, ये व्यापार के लिए थीं और कोई भी वाणिज्य मंडल ऐसे मौके को ठुकराएगा नहीं, वे तो उसके दरवाजे पर दस्तक देने की पहल भी करेंगे। इसलिए अगले दिन रॉकी के दरवाजे पर दस्तक हुई और एक के बाद एक चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने उनसे संपर्क करने के लिए अपने प्रतिनिधि भेजे ताकि कोई सौदा हो सके। इस घटनाक्रम के लिए तैयार न होने के बावजूद रॉकी, जो हमेशा से ही शांत रहने का इरादा रखता था, ने कभी नहीं सोचा था कि वह इतना ध्यान आकर्षित करेगा। क्या ऐसा इसलिए हो सकता है? क्या ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि वह बहुत ज्यादा असाधारण था? इस बेतुके विचार को तुरंत त्यागते हुए रॉकी ने तुरंत एलीन को बुलाया और गैर जिम्मेदाराना तरीके से ये सारे मामले उसे सौंप दिए, क्योंकि वैसे भी वो इन मामलों की प्रभारी थी। जहां तक खुद का सवाल है तो वह लिलिया, मोटे और लिन फेंग को लेकर चला गया। नतीजतन एलीन पूरी तरह से स्टार ऑफ द स्काई वाले कमरे तक ही सीमित रह गई, क्योंकि कई चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स रॉकी से बातचीत करने की योजना बना रहे थे। सुबह सुबह तीन समूहों के लोग पहुंच गए, उसके बाद दोपहर में तीन और समूह आए, जिससे एलीन दिन भर घर के अंदर ही रही। हालांकि ये मुलाकातें पूरी तरह से बुरी नहीं थीं, क्योंकि एलीन को अपना सारा सामान बेचना था। चूंकि चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स ने उसके पास आने की पहल की, इसलिए उसे बाहर जाने की परेशानी से छुटकारा मिल गया। दूसरी ओर स्टार ऑफ द स्काई को छोड़कर रॉकी सीधे हथियार बाजार की ओर चल पड़ा। गॉड सिटी में उसे कई काम पूरे करने थे, लेकिन उनमें से दो सबसे महत्वपूर्ण थे, शून्य जादुई कवच और एक आकाशयान की खरीद। ये दोनों मामले न केवल थंडरहॉक सिटी की ताकत से सीधे जुड़े थे, बल्कि खर्च का एक बड़ा हिस्सा भी इन्हीं पर खर्च होता था, जिससे रॉकी को अतिरिक्त ध्यान देने की जरूरत पड़ी। एक बार जब वे हथियार बाजार में पहुंच गए तो रॉकी लिलिया और अन्य लोगों को सीधे शून्य जादू कवच में विशेषज्ञता वाली एक दुकान पर ले गया। वह लिलिया के लिए शून्य जादू कवच का एक सेट खरीदने का इरादा रखता था। आखिरी मिशन के बाद, खासकर उस मिशन की आखिरी लड़ाई के बाद, रॉकी ने एक फैसला लिया। उस लड़ाई के दौरान एक ऊंची दीवार के नीचे लिलिया लगभग अपनी जान गंवा चुकी थी। अगर वह समय पर न पहुंचता तो लिलिया शायद अब तक जमीन में दफन हो चुकी होती। रॉकी को यह बिल्कुल स्वीकार नहीं था। इस दुनिया में आने के बाद से लिलिया हमेशा उसके साथ रही, उसकी देखभाल और सुरक्षा करती रही। रॉकी को भले ही स्काई सिटी खोने की परवाह न हो, लेकिन वह लिलिया को खोने का जोखिम नहीं उठा सकता था। इसलिए उसने लिलिया को शून्य जादुई कवच से लैस करने की योजना बनाई। इसके अलावा अब वह धनवान हो गया था और उसे अब हर पैसा गिनने की जरूरत नहीं थी, इसलिए वह ये खर्च उठा सकता था। ये बात ध्यान में रखते हुए वह जल्दी ही सबको एक अच्छे आकार के वॉयड मैजिक आमर स्पेशलिटी स्टोर में ले गया। तीन मंजिला इमारत छोटी नहीं थी और जैसे ही वे अंदर गए, वहां मौजूद कर्मचारी तुरंत गर्मजोशी से स्वागत के लिए आ गए। हालांकि उन्होंने आमक की सिफारिश करने में कोई जल्दबाजी नहीं की, बल्कि सभी को बैठने के लिए आमंत्रित किया और चाय और फल परोसे। सर, यह क्या है? लिन फेंग, जिसने कभी ऐसा दृश्य अनुभव नहीं किया था, रॉकी को हैरान भाव से देखता रहा जब वह बैठ गया। भाई लिन फेंग, घबराओ मत, ये सिर्फ प्रोटोकॉल है। इस तरह के मामले में स्वाभाविक रूप से रॉकी को समझाने की जरूरत नहीं थी, इसलिए मोटे ने अपनी बात रखी। शून्य जादुई कवच बेचने वाली दुकानें सामान्य हथियार दुकानों से काफी अलग होती हैं, आखिरकार शून्य जादुई कवच के एक सेट की कीमत दसियों हजार या यहां तक कि लाखों स्वर्ण सिक्कों में भी हो सकती है। इस प्रकार यहां सेवा असाधारण रूप से व्यापक है और उत्पादों का परिचय देने के लिए एक विशेष परिचय मौजूद रहेगा। मानो मोटे के शब्दों को सिद्ध करने के लिए, जैसे ही उसने अपनी बात समाप्त की, एक युवा और सुंदर महिला शालीनता से उनके पास आए। वह युवती लगभग 20 साल की लग रही थी। वह न सिर्फ बेहद आकर्षक थी, बल्कि उसका व्यवहार भी प्रभावशाली था। वह समूह के पास पहुंची और तुरंत बोलने के बजाय मुस्कुराई और इधर उधर देखने के बाद अपनी नज़र रॉकी पर टिका दी। सर, मेरा नाम जी फेंग है, मैं आपकी किस प्रकार सहायता कर सकता हूँ? रॉकी के सामने थोड़ा झुककर जी फेंग ने धीरे से कहा, समूह में रॉकी की स्थिति को स्पष्ट रूप से पहचानते हुए। वह वही विशेष परिचारिका थी जिसका उल्लेख मोटे ने किया था, जो ग्राहकों को उनके शून्य जादू कवच का चयन करने में मदद करने के लिए जिम्मेदार थी। मुझे महिलाओं के शून्य जादुई कवच का एक सेट चाहिए, जी फेंग की ओर देखते हुए रॉकी ने सीधे कहा। ओह, जी फेंग ने यह सुनकर सिर हिलाया और लिलिया की तरफ देखा। स्वाभाविक रूप से समझ गया कि रॉकी जिस महिला कवच की बात कर रहा था वह उसके लिए ही था। फिर उसने तुरंत सवाल किया, सर, आपको किस पीढ़ी या मॉडल का कवच चाहिए और क्या आपकी कोई खास जरूरतें हैं? नहीं, तीसरी या चौथी पीढ़ी ठीक है, बेहतर होगा कि संरक्षक प्रकार का हो। रॉकी ने पहले ही तय कर लिया था कि लिलिया के लिए कौन सा कवच सबसे उपयुक्त होगा। यह मजबूत सुरक्षा वाला संरक्षक प्रकार का कवच होना चाहिए था और नवीनतम पांचवी पीढ़ी के कवच जैसा बहुत उन्नत कवच होना जरूरी नहीं था, जिसका वे उस समय वैसे भी उपयोग नहीं कर सकते थे। इसके अतिरिक्त रॉकी को लगा कि उसके और लिलिया के बीच दिखावे की कोई आवश्यकता नहीं है, उनके वर्तमान उपयोग के लिए पर्याप्त तीसरी या चौथी पीढ़ी का कवच पर्याप्त होगा। बहुत अच्छा महोदय, कृपया मेरे पीछे दूसरी मंजिल पर आइए। रॉकी की पसंद सुनने के बाद जी फेंग को अब उसकी आवश्यकताओं की स्पष्ट समझ हो गई और वह समूह को स्टो की दूसरी मंजिल पर ले गया। जैसा कि पहले बताया गया था, स्टो 3 मंजिल पर फैला हुआ था और काफी बड़ा था, इसलिए जब रॉकी और उसकी टीम को दूसरी मंजिल पर ले जाया गया तो उन्हें तुरंत एक के बाद एक डिस्प्ले स्टैंड दिखाई दिए, जिनमें से हर एक में वॉयड मैजिक आमा का पूरा सेट था। पूरे दूसरे तल पर दर्जनों प्रदर्शन स्टैंड रखे हुए थे, जिसका अर्थ था कि विभिन्न मॉडलों के शून्य जादू कवच के दर्जनों सेट थे। सर, कृपया इस तरफ आएं। जबकि शून्य जादू कवच की सरनी ने रॉकी और उसके साथियों को चकित कर दिया, जी फेंग उन्हें एक प्रदर्शन स्टैंड में ले गया। सर, ये तीसरी पीढ़ी का शून्य जादू कवच अग्नि तितली गार्ड प्रकार 5 है। रॉकी और अन्य लोगों को मंच पर लाने के बाद जी फेंग ने उसके अंदर के कवच को देखा और धीरे से अपना परिचय देना शुरू किया। फायर बटरफ्लाई श्रृंखला, प्रसिद्ध कवच निर्माता मैग इंडस्ट्री द्वारा महिलाओं के लिए विशेष रूप से तैयार की गई शून्य जादू कवच की एक श्रृंखला है। यह आक्रमण और संरक्षक प्रकारों में उपलब्ध है और फायर गार्ड टाइप 5 उनमें से एक क्लासिक है। जैसे ही जी फेंग ने अपना परिचय जारी रखा, रॉकी और अन्य लोगों की निगाहें फायर बटरफ्लाई कवच पर टिक गईं। आमा को खास तौर पर महिलाओं के लिए डिजाइन किया गया था, जो इसे रॉकी के आमा से कई मायनों में अलग बनाता था। ये डिजाइन में ज्यादा कॉम्पैक्ट और नाजुक था। जैसा कि इसके नाम से जाहिर है, आमा चटक लाल रंग का, चिकना और सुव्यवस्थित था और यह एक फिट बॉडी सूट जैसा दिखता था। यहां तक कि एड़ियों को भी ऊंची एड़ी की तरह बनाया गया था, जिससे पूरे सूट को एक सुंदर नृत्य करती हुई महिला का रूप दिया गया था। कवच में एक छोटी ढाल और एक मानक तलवार भी लगी हुई थी तथा बाईं भुजा के अग्रभाग में एक उभार था जो किसी विशेष उपकरण जैसा प्रतीत होता था। जबकि रॉकी और उसके साथी कवच को गौर से देख रहे थे, जी फेंग ने विस्तार से बताना जारी रखा। हालांकि यह फायर गार्ड टाइप 5 कवच केवल तीसरी पीढ़ी का मॉडल है, लेकिन इसका जादुई ऊर्जा मूल्य 1800 तक पहुंच जाता है। इसके अलावा इसमें जादुई ऊर्जा अर्ध नियंत्रण प्रौद्योगिकी और जादुई ऊर्जा प्रवाह प्रौद्योगिकी शामिल है, जो पहनने वाले को आक्रमण और बचाव दोनों में आसानी के लिए युद्ध के दौरान कवच के आधे मान को स्वतंत्र रूप से वितरित करने की अनुमति देता है। एक संरक्षक प्रकार के कवच के रूप में फायर गार्ड 5 की रक्षात्मक क्षमता स्वाभाविक रूप से असाधारण है। अपने मानक मैजिक एनर्जी शील्ड के अलावा यह एक क्रियाशील रक्षात्मक जाल से भी सुसज्जित है, जो आज भी मुख्यधारा बना हुआ है। एक बार जब यह रक्षात्मक जाल तैनात हो जाता है तो ये सभी कोनों से होने वाले हमलों को रोक सकता है, यहां तक कि 1000 जादुई ऊर्जा बिंदुओं की शक्ति वाले जादुई तोपों के सीधे प्रहार को भी रोक सकता है। यह एक ऐसा तथ्य है जो वास्तविक युद्ध डेटा द्वारा समर्थित है। आक्रामक पक्ष पर इस कवच का प्रदर्शन भी काफी प्रभावशाली है। मानक जारी मन तलवार के अलावा बायां हाथ एक जादुई ऊर्जा बुलेट एमिटर से सुसज्जित है। ये कवच की जादुई ऊर्जा को शक्तिशाली जादुई ऊर्जा गोलियों को फायर करने के लिए निर्देशित कर सकता है, जिनकी शक्ति छठे स्तर के जादूगर की ऊर्जा गोलियों से भी अधिक होती है, जिससे पहनने वाला मंत्रों के प्रभाव से विचलित हुए बिना युद्ध में भाग ले सकता है। जी फैन के बेहद पेशेवर परिचयों ने रॉकी और बाकी लोगों को हक्का बक्का कर दिया, क्योंकि लिन फैन के अलावा उनमें से किसी को भी शून्य जादुई कवच के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी। वे सभी जानते थे कि शून्य जादुई कवच शक्तिशाली तो होते हैं, लेकिन उनकी बारीकियां और तकनीकें जो उन्हें आम उपकरणों से अलग बनाती हैं, उन्हें पता नहीं थी। समूह में शायद केवल लिन फैंग को ही कुछ समझ थी, और सच बताऊं तो जी फैंग द्वारा इस कवच का परिचय देने के बाद लिन फैंग काफी ललचा गया था। जी फैंग के परिचय ने वास्तव में रॉकी की रुचि फायर बटरफ्लाई कवच में जगा दी थी। चूंकि वो एक शिक्षित व्यक्ति था, इसलिए उसने जी फैंग द्वारा प्रस्तुत की गई अधिकांश बातों को समझ लिया था, और यही कारण था कि वह इस कवच से प्रभावित हुआ। सबसे पहले तीसरी पीढ़ी के कवच के रूप में फायर गार्ड टाइप 5 का जादुई ऊर्जा मान 1800 पॉइंट था। ये जादुई ऊर्जा मान नवीनतम पांचवी पीढ़ी के कवचों की तुलना में कम लग सकता है, लेकिन तीसरी पीढ़ी के कवचों में यह अपेक्षाकृत अधिक था। रॉकी के पहली पीढ़ी के कवच से तुलना करने पर यह काफी ज्यादा था। रॉकी का ब्लड पैटर्न जनरेशन 2 कवच पहली पीढ़ी का शून्य जादुई कवच होने के कारण 300 अंकों का एक मामूली जादुई ऊर्जा मूल्य रखता था, जो रून वृद्धि के बाद भी लगभग 500 अंकों तक ही पहुंच पाया। इसके विपरीत फायर गार्ड टाइप 5 की जादुई ऊर्जा कई गुना ज्यादा थी। जी फैंग ने दो तकनीकों का भी जिक्र किया, जादुई ऊर्जा अर्ध नियंत्रण और जादुई ऊर्जा चालन, जो दोनों ही शून्य जादुई कवच की शीर्ष तकनीकों में से थी। जादुई ऊर्जा अर्ध नियंत्रण तकनीक पहनने वाले को कवच की जादुई ऊर्जा के एक हिस्से को स्वायत्त रूप से आवंटित करने की अनुमति देती थी, जबकि चालन तकनीक जादुई ऊर्जा को कवच के हर हिस्से में स्वतंत्र रूप से प्रसारित करने की अनुमति देती थी। ये दोनों प्रौद्योगिकियां एक दूसरे की पूरक हैं, जिससे पहनने वाले को युद्ध के दौरान स्वायत्त रूप से जादुई ऊर्जा आवंटित करने में सक्षम बनाया जा सकता है, आक्रामक होने पर हमले पर ध्यान केंद्रित करना और आवश्यकता पड़ने पर बचाव के लिए इसका पूरा उपयोग करना, जिससे पहनने वाले की परिचालन क्षमता में काफी वृद्धि होती है। 1800 अंकों के जादुई ऊर्जा मूल्य के साथ साथ दो अत्याधुनिक तकनीकें जो आज भी शीर्ष स्तर पर हैं, साथ ही अपने स्वयं के रक्षात्मक जाल और अन्य विन्यासों के साथ, इन सभी कारकों ने वास्तव में शून्य जादुई कवच को रॉकी के लिए काफी प्रभावशाली बना दिया।
इसलिए बाद में उन्होंने इस कवच की कीमत के बारे में पूछताछ की।
महाराज, इस कवच की कीमत 48,000 स्वर्ण मुद्राएं हैं। इतना महंगा? जी फैंग की बात सुनकर रॉकी की भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं। ऐसा इसलिए नहीं था कि वह पैसे खर्च करने को तैयार नहीं था, दरअसल कीमत उसकी उम्मीदों से ज्यादा नहीं थी। हालांकि उसे कुछ महीने पहले लिलिया के साथ हथियारों के बाजार की अपनी यात्रा याद आ गई थी, जिससे उसे लगा था कि यह कीमत थोड़ी ज्यादा है। फायर गार्ड टाइप 5 सिर्फ तीसरी पीढ़ी का कवच था, लेकिन रॉकी को जो पता था उसके अनुसार कुछ बड़े पैमाने पर उत्पादित चौथी पीढ़ी के कवचों की कीमत भी लगभग 40,000 सोने के सिक्कों के बराबर थी। इसका मतलब था कि जी फैंग द्वारा सुझाए गए कवच की कीमत बड़े पैमाने पर उत्पादित चौथी पीढ़ी के कवचों से ज्यादा थी। महाराज, ये कीमत वास्तव में अधिक नहीं है, क्योंकि बड़े पैमाने पर उत्पादन प्रकार की अवधारणा केवल चौथी पीढ़ी के कवच के साथ ही उत्पन्न हुई। चौथी पीढ़ी से ही कवचों को अलग अलग विन्यासों के साथ बड़े पैमाने पर उत्पादन और विशिष्ट प्रकारों में विभेदित किया जाने लगा। इससे पहले सभी कवच उच्चतम विन्यास के होते थे। दूसरे शब्दों में, हालांकि फायर गार्ड टाइप 5 केवल तीसरी पीढ़ी का कवच है, यह विशेष कवच के बराबर है, इसलिए इसकी कीमत स्वाभाविक रूप से चौथी पीढ़ी के बड़े पैमाने पर उत्पादित प्रकार की तुलना में अधिक है। मेरे प्रभु, मैं आपको आश्वस्त कर सकता हूँ, फायर गार्ड टाइप 5 तीसरी पीढ़ी का कवच होने के बावजूद युद्ध क्षमता के संदर्भ में वे आकर्षक लेकिन अव्यावहारिक चौथी पीढ़ी के बड़े पैमाने पर उत्पादित कवच जो जानबूझकर कम कीमतों पर युद्ध शक्ति को कम करते हैं, इसकी तुलना में अतुलनीय हैं। मानो रॉकी के सवालों का इंतजार किए बिना ही उसके संदेहों को समझते हुए जी फैंग ने एकदम सही स्पष्टीकरण दिया। उसके तर्क के सामने रॉकी के पास बहस करने का कोई आधार नहीं था, क्योंकि वह गलत नहीं थी। इतने वर्षों के विकास के बाद शून्य जादुई कवच तकनीक हर पहलू में परिपक्व हो गई थी, जिससे और भी विस्तृत वर्गीकरण संभव हो गया। अनुप्रयोग के आधार पर आक्रमण और संरक्षक जैसे प्रकारों में वर्गीकृत होने के अलावा इन्हें बड़े पैमाने पर उत्पादित और विशेष जैसे विन्यासों में भी विभाजित किया गया था। तथाकथित बड़े पैमाने पर उत्पादित प्रकार निम्न स्तरीय विन्यास वाले कवचों को संदर्भित करता है, जिनमें अपनी पीढ़ी के भीतर मानक या उससे भी कम विन्यास होते हैं। बड़े पैमाने पर उत्पादित प्रकार के मामूली विन्यास के बावजूद ये अपनी बेहद किफायती कीमतों के कारण काफी लोकप्रिय है। बड़े पैमाने पर उत्पादित कवच के विपरीत विशेष कवच का उच्च स्तरीय विन्यास होता है। विशेष कवच अपने वर्ग और पीढ़ी में सर्वोच्च मानकों को प्राप्त करने का लक्ष्य रखते हैं, और इन्हें उपयोगकर्ताओं के लिए विशेष रूप से बनाया भी जा सकता है, जिससे उनकी युद्ध क्षमता अद्भुत रूप से शक्तिशाली हो जाती है। यहाँ तक कि उनकी युद्ध क्षमताएं बड़े पैमाने पर उत्पादित कवचों से कई गुना ज्यादा होती हैं। हालांकि जबरदस्त युद्ध क्षमता के साथ साथ उसकी कीमत भी ज्यादा होती है। विशेष कवच निश्चित रूप से महंगे होते हैं, और उन्हें अत्यधिक महंगा कहना भी अतिशयोक्ति नहीं होगी। सस्ते माने जाने वाले कवच की कीमत हजारों स्वर्ण सिक्कों में होती है, जबकि सामान्य कीमतें लाखों में होती हैं। यहां तक कि कस्टम मेड कवच भी हैं जिनकी कीमत 10 लाख स्वर्ण सिक्कों से भी ज्यादा है। जी फैंग के स्पष्टीकरण के अनुसार, फायर बटरफ्लाई गार्ड टाइप 5 कवच वास्तव में एक तरह से विशेष कवच के समतुल्य था, ये देखते हुए कि बड़े पैमाने पर उत्पादित और विशेष प्रकार के बीच अंतर 4वीं पीढ़ी के कवच के साथ शुरू हुआ, जबकि 3री पीढ़ी के कवच के रूप में फायर बटरफ्लाई गार्ड टाइप 5 में विभिन्न पहलुओं में अंतराल हो सकता है, फिर भी इसे विशेष कवच के रूप में वर्गीकृत करना गलत नहीं था। इसके मद्देनजर रॉकी ने ज्यादा कुछ नहीं कहा और केवल जी फैंग से अन्य कवचों का परिचय जारी रखने के लिए कहा। बैकवर्ड बैकवर्ड बैकवर्ड। हालांकि रॉकी फायर बटरफ्लाई गार्ड टाइप 5 कवच से संतुष्ट था, फिर भी चुनने के लिए इतने सारे कवच थे कि उसे जल्दबाजी में फैसला लेने की जरूरत नहीं थी। इसके अलावा वह वहां सिर्फ देखने के लिए गया था। अगर वह खरीदना भी चाहता तो उसे पैसे मिलने से पहले एलिन से सारी बातचीत पूरी होने तक इंतजार करना पड़ता। इस स्थिति में जी फेंग ने रॉकी को कई अन्य कवच पेश किए, जिनमें न केवल 3री पीढ़ी के कवच शामिल थे बल्कि 4थी पीढ़ी के बड़े पैमाने पर उत्पादित कवच भी शामिल थे। इसके बाद रॉकी दुकान से निकलकर अन्य दुकानों की ओर चला गया। दिन जल्दी ही बीत गया और जब रॉकी और उसकी पार्टी वहां से चली गई तो उन्होंने न केवल पूरा दिन हथियार बाजार में बिताया बल्कि 7 या 8 विशिष्ट शून्य जादू कवच दुकानों का भी दौरा किया और कम से कम दर्जनों विभिन्न प्रकार के कवच देखे। तो क्या तुम्हें कोई पसंद आया? आकाश के तारे की ओर लौटते समय रॉकी और लिलिया एक गाड़ी में अकेले बैठे थे और आराम करते हुए बातें कर रहे थे। एक दिन ब्राउजिंग के बाद रॉकी को वास्तव में कुछ सेट पसंद आ गए थे, लेकिन चूंकि इस बार ये लिलिया के लिए शून्य जादू कवच खरीदने के बारे में था इसलिए उसकी राय सबसे महत्वपूर्ण थी। वे सब ठीक हैं, मुझे लगता है कि आयरन गार्ड टाइप 3 बुरा नहीं है, लिलिया ने सिर झुकाकर सोचने के बाद कहा। आयरन गार्ड टाइप 3? चूंकि उन्होंने उस दिन बहुत सारे कवच देखे थे इसलिए रॉकी को ये याद करने में थोड़ा समय लगा कि लिलिया किस कवच की बात कर रही थी। क्या आप 4थी पीढ़ी के बड़े पैमाने पर उत्पादित कवच के बारे में बात कर रहे हैं?
हाँ, लिलिया ने सिर हिलाया, लेकिन रॉकी अपना सिर हिलाता रहा। नहीं नहीं, उसका मन केवल 1700 पॉइंट्स का है और इसमें कोई खास उच्च स्तरीय तकनीक भी नहीं है। ये 4थी पीढ़ी के कवच के नाम पर खरा नहीं उतरता, लेकिन मुझे लगता है कि यह काफी है। हमें अभी खास खतरनाक लड़ाइयों में शामिल होने की जरूरत नहीं है, हमें इतनी ऊंची विशिष्टताओं की जरूरत नहीं है और 1700 जादुई ऊर्जा बिंदु काफी हैं। इसके अलावा
आयरन गार्ड टाइप 3 उन सभी कवचों में सबसे सस्ता है जो हमने आज देखा है ना? रॉकी ने लिलिया का इंतजार किए बिना ही उसकी बात पूरी कर दी। वो लिलिया के मन की बात कैसे नहीं समझ सकता था? जैसा कि लिलिया ने बताया, आयरन गार्ड टाइप 3 कवच वाकई अब तक देखे गए सभी कवचों में सबसे सस्ता था। हालांकि यह 4थी पीढ़ी का कवच था, इसकी कीमत केवल 38,000 स्वर्ण मुद्राएं थी। अविश्वसनीय रूप से सस्ता, क्योंकि यह 4थी पीढ़ी का कवच था। ठीक इसी कारण से लिलिया को यह विशेष कवच पसंद आया था। बदकिस्मती से रॉकी ने इसे उस नजरिए से नहीं देखा। लिलिया एक अच्छी लड़की थी, उसने काफी पैसे बचाने के लिए आयरन गार्ड टाइप 3 चुना, लेकिन वह ये सिद्धांत भूल गई थी कि सस्ता सामान अच्छा नहीं होता और अच्छा सामान सस्ता नहीं होता। ये कहावत कहीं और लागू होती है या नहीं यह अनिश्चित है, लेकिन यह शून्य जादुई कवच पर जरूर लागू होती है। कवच जितना सस्ता होगा उसकी गुणवत्ता उतनी ही खराब होगी। शून्य जादुई कवच के आविष्कार के बाद से यही स्थिति रही है। 4थी पीढ़ी का कवच आयरन गार्ड टाइप 3 इतना सस्ता क्यों है? इसका कोई कारण अवश्य होगा और रॉकी निश्चित रूप से लिलिया को इसका कारण नहीं बताना चाहता था। जब रॉकी और अन्य लोग स्टार ऑफ द स्काई पर वापस लौटे तब तक काफी देर हो चुकी थी, फिर भी जैसे ही वो अपने कमरे में लौटा एलिन ने उसे ढूंढ लिया। रॉकी के पूरा दिन बाहर बिताने के बावजूद एलिन, जो स्टार ऑफ द स्काई में ही रुकी थी, उससे भी अधिक व्यस्त थी क्योंकि पूरे दिन विभिन्न चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स से उसके पास 7 या 8 आगंतुक आए हुए थे। इसलिए जैसे ही रॉकी वापस आया वो स्थिति की सूचना देने के लिए जल्दी से वहां पहुंची।
महाराज, ये विभिन्न वाणिज्य मंडलों की ओर से दिए गए मूल्य प्रस्ताव हैं। रॉकी से मिलते ही एलिन ने उसे अपनी बनाई हुई एक मूल्य सूची थमा दी। इसमें काली आंखों वाले दानव और बख्तरबंद बैल दानव की लाशों के लिए अलग अलग चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स की तरफ से दिए गए सभी प्रस्तावों की सूची थी। आपने कड़ी मेहनत की है, एलिन को सिर हिलाकर रॉकी ने अपनी नज़र मूल्य निर्धारण शीट पर घुमाई। एलिन ने जो मूल्य सूची बनाई थी वह बहुत विस्तृत थी और उसमें स्पष्ट मूल्य निर्धारण था। कुल मिलाकर विभिन्न वाणिज्य मंडलों की पेशकशें बहुत अलग नहीं थीं। ज्यादातर की कीमत काली आंखों वाले दानव के शरीर के लिए लगभग 2000 स्वर्ण मुद्राएं थीं, सबसे कम 1800 स्वर्ण मुद्राएं थीं और सबसे ज्यादा 2100। कुल मिलाकर आंकड़े काफी करीब थे। सबसे अधिक भिन्नता वाली कीमतें बख्तरबंद बैल राक्षसों के लिए थीं। अपेक्षाकृत सस्ते ब्लैक आइड डायमंड्स के विपरीत बख्तरबंद बैल राक्षसों के लिए चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स द्वारा बताई गई कीमतें 10,000 स्वर्ण सिक्कों से अधिक थी, जिसमें एक शव के लिए सबसे कम बोली 11,000 स्वर्ण सिक्कों की थी और उसी चैम्बर ऑफ कॉमर्स से सबसे अधिक बोली 16,000 स्वर्ण सिक्कों तक गई थी, जिसने ब्लैक आइड डायमंड्स के लिए सबसे कम कीमत की पेशकश की थी। कुल मिलाकर ये कीमतें रॉकी और एलिन की उम्मीदों के मुताबिक ही थी। अगर कोई बात हैरान करने वाली थी तो वो ये कि ये आंकड़े उनकी उम्मीद से बेहतर थे। हालांकि रॉकी को हैरानी इस बात की थी कि मूल्य सूची में सिर्फ दानवों के शवों की कीमतें शामिल थीं और दानवों के कोर की कीमतें शामिल नहीं थीं। एलिन, क्या तुमने इन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स में डायमंड कोर का उल्लेख नहीं किया? इस पर रॉकी ने हैरान होकर पूछा। नहीं, एलिन ने दृढ़ता से अपना सिर हिलाते हुए कहा, आज जो चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स आए हैं वे सभी बहुत अच्छी तरह से जानकार हैं। उन्होंने पहले ही डायमंड कोर के बारे में सुना था, लेकिन मैंने उनके साथ विस्तार से बात नहीं की। क्यों? रॉकी को ये तरीका हैरान कर गया, क्योंकि उनके पास 200 से ज्यादा डायमंड कोर थे। अगर वे सभी काली आंखों वाले डायमंड कोर भी होते तो भी उनकी कीमत 2,00,000 सोने के सिक्के होती, जो एक बड़ी बात थी। एलिन ने इन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स को ये बात क्यों नहीं बताई? महाराज, मुझे लगता है कि हम थोड़ी देर और प्रतीक्षा कर सकते हैं। ओह, आज कई चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स आए, लेकिन वे सभी अपेक्षाकृत अज्ञात छोटे चैम्बर्स थे। प्रसिद्ध बड़े चैम्बर्स ने अभी तक कोई कदम नहीं उठाया है। दिन भर की थकान के बावजूद एलिन का दिमाग अभी भी तेज था। जैसा कि उसने बताया, हालांकि आज कई चैम्बर्स ने अपने प्रतिनिधि भेजे थे, लेकिन उनका कुल मिलाकर स्तर औसत ही था। इटर्नल सिटी और पूरे स्काई में मशहूर बड़े और प्रतिष्ठित चैम्बर्स में से एक भी नहीं आया था। निश्चित रूप से बड़े चैम्बर्स इतने छोटे सौदे के लिए हमसे संपर्क करने के लिए आगे नहीं आएंगे, है ना? रॉकी को एलिन की बात समझ आ गई। बड़े चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स ज्यादा सुरक्षित लेन देन की गारंटी देते हैं और छोटे चैम्बर्स की तुलना में वे ज्यादा दाम भी दे सकते हैं। आखिरकार वे ज्यादा मात्रा में लेन देन करते हैं और जब तक मात्रा ज्यादा हो, कीमत पर हमेशा बातचीत हो सकती है। हालांकि 100 से ज्यादा दानवों की लाशों और 200 दानव कोर के साथ भी यह एक छोटे चैम्बर के लिए एक बड़ा सौदा हो सकता था, लेकिन एक बड़े चैम्बर के लिए ये बस एक सामान्य व्यापार होगा। ऐसा लग रहा था कि वे इस वजह से व्यक्तिगत रूप से उन्हें ढूंढेंगे, यह असंभव था। रॉकी के बोलने के बाद एलिन ने अपना सिर हिलाया और फिर बोली, महाराज, पहले तो मैंने भी यही सोचा था, लेकिन आज मुझे कॉन्टिनेंटल कॉमर्स चैम्बर से खबर मिली। वे कल आपसे मिलने आने वाले हैं। कॉन्टिनेंटल कॉमर्स चैम्बर, वे आना चाहते हैं। कॉन्टिनेंटल कॉमर्स चैम्बर का जिक्र आते ही रॉकी के चेहरे पर आश्चर्य की लकीरें उभर आईं, क्योंकि यह चैम्बर वाकई बहुत मशहूर था। आसमान में फैले सभी चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स में कॉन्टिनेंटल कॉमर्स चैम्बर आराम से टॉप 3 में शुमार था, एक बहुत बड़ा चैम्बर। रॉकी ने कभी नहीं सोचा था कि यह व्यापार इतने बड़े व्यक्ति का ध्यान आकर्षित करेगा और वे सक्रिय रूप से किसी को भेजेंगे। महामहिम, न केवल कॉन्टिनेंटल कॉमर्स चैम्बर बल्कि ब्लू स्काई चैम्बर ऑफ कॉमर्स और डालमोर चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने भी अपने प्रतिनिधि भेजे हैं। वे सभी आपसे मिलने के लिए उपयुक्त समय की व्यवस्था करने की आशा करते हैं। वे भी आना चाहते हैं। एलिन के बोलने के बाद रॉकी पूरी तरह से दंग रह गया, क्योंकि एलिन ने जिन दो चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स का उल्लेख किया था वे भी आकाश में प्रमुख थे। ब्लू स्काई चैम्बर ऑफ कॉमर्स और कॉन्टिनेंटल कॉमर्स चैम्बर ताकत के मामले में समकक्ष थे, जबकि डालमोर चैम्बर ऑफ कॉमर्स सबसे पुराने में से एक था, जिसका इतिहास भूमि युग तक जाता है। सच कहूं तो रॉकी कुछ डरा हुआ था और वह समझ नहीं पा रहा था कि ये प्रसिद्ध चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स उसे क्यों ढूंढने आए हैं। यह उसका अपना मामला था, क्योंकि रॉकी अभी भी एक आम इंसान के नजरिए से सोच रहा था। असल में अगर उसने किसी सिटी लॉर्ड के नजरिए से सोचा होता तो उसे जरा भी हैरानी नहीं होती। क्या किसी चैम्बर ऑफ कॉमर्स के लिए किसी स्काई सिटी के सिटी लॉर्ड से बिजनेस पर बात करना सामान्य बात नहीं थी? आखिरकार यदि सौदा अच्छा रहा तो यह एक दीर्घकालिक सहयोग में विकसित हो सकता है, और कौन सा चैम्बर ऑफ कॉमर्स अपने ग्राहकों की सूची में एक सिटी लॉर्ड को शामिल नहीं करना चाहेगा। इसके अतिरिक्त रूबी चैम्बर ऑफ कॉमर्स से खबर है कि उनके गिल्ड अध्यक्ष कल व्यक्तिगत रूप से आएंगे, एलिन ने आगे कहा, जबकि रॉकी कुछ हद तक चकित था। ये सुनकर कि रूबी चैम्बर ऑफ कॉमर्स भी आएगा तथा गिल्ड अध्यक्ष स्वयं आएंगे, रॉकी ने थोड़ा रुकने के बाद मुस्कुराकर कहा, जिससे यह आभास हुआ कि दूसरा पक्ष भी आगे बढ़ने के लिए अधीर था। एजोर कॉमर्स गिल्ड के साथ सभी लेन देन बंद करने के बाद एलिन को इटर्नल सिटी में रूबी चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साथ एक नई साझेदारी मिली। रूबी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एक हाल ही में स्थापित चैम्बर ऑफ कॉमर्स था, जिसे थंडहॉक सिटी जैसे एक स्थिर ग्राहक की तत्काल आवश्यकता थी, इसलिए दोनों पक्षों के बीच तुरंत बातचीत हो गई और इसके बाद हुए कई लेन देन बहुत आसानी से हो गए, जिससे रॉकी पर इस चैम्बर ऑफ कॉमर्स की अच्छी छाप पड़ी। उसने पहले ही अनुमान लगा लिया था कि रूबी चैम्बर ऑफ कॉमर्स उसे ढूंढने के लिए किसी को भेजेगा, खासकर इसलिए क्योंकि इस बार वह बहुत सारे दानव शव और दानव कोर लेकर आया था और अन्य चैम्बर ऑफ कॉमर्स को इसकी भनक लग गई थी। इटरनल सिटी में स्थित और थंडरहॉक सिटी के साथ पहले से ही सहयोग कर रहे रूबी चैम्बर ऑफ कॉमर्स निश्चित रूप से इस खबर को नजरअंदाज नहीं कर सकते थे, लेकिन उन्होंने यह उम्मीद नहीं की थी कि उनके गिल्ड अध्यक्ष व्यक्तिगत रूप से आएंगे। लेकिन आगे सोचने पर ये बात समझ में आई। आखिरकार रूबी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एक नया संगठन था, ज्यादा मजबूत नहीं, इसलिए अगर वे रॉकी से सौदों में हिस्सा चाहते थे तो उन्हें जरूरी सम्मान दिखाना ही था। स्थिति को देखते हुए रॉकी ने आह भरी, लगता है मैं कल बाहर नहीं जा पाऊंगा। मूलतः उन्होंने कल स्काईशिप की जांच करने की योजना बनाई थी, लेकिन ऐसा लग रहा था कि वह निश्चित रूप से अब नहीं जा पाएंगे, खासकर इसलिए क्योंकि उन्हें कॉन्टिनेंटल कॉमर्स चैम्बर और रूबी चैम्बर ऑफ कॉमर्स दोनों के गिल्ड अध्यक्षों से व्यक्तिगत रूप से मिलना था। महाराज, पैसे खर्च करने से पहले थोड़ा इंतजार कर लेते हैं, अभी तो हमने कुछ कमाया ही नहीं है, एलिन ने थोड़े नाराज होकर गाल फुलाते हुए कहा, ये देखते हुए कि रॉकी हिचकिचा रहा था। वह पूरे दिन बिना किसी शिकायत के काम करती रही थी। एलिन के फूले हुए गालों को देखकर रॉकी ने अजीब सी मुस्कान दी और इससे अधिक कुछ नहीं कह सका। अगले दिन रॉकी कहीं नहीं गया और स्टार ऑफ द स्काई में ही रुक गया। उसने ज्यादा देर इंतजार नहीं किया क्योंकि रूबी चैम्बर ऑफ कॉमर्स का गिल्ड प्रेसिडेंट सुबह ही आ गया था। रॉकी को ये जानकर आश्चर्य हुआ कि रूबी चैम्बर ऑफ कॉमर्स की गिल्ड अध्यक्ष एक युवा महिला थी जो एलिन से कुछ ही वर्ष बड़ी थी, जिसे देखकर रॉकी आश्चर्यचकित था, फिर भी उसने उसे हल्के में लेने की हिम्मत नहीं की। एक नव स्थापित और छोटा चैम्बर ऑफ कॉमर्स होने के बावजूद किसी को यह नहीं भूलना चाहिए कि इटरनल सिटी जैसी जगह में ताकत, पृष्ठभूमि या संपर्क के बिना चैम्बर ऑफ कॉमर्स स्थापित करना असंभव है। इसलिए रॉकी ने उसके साथ अत्यंत सम्मान से व्यवहार किया। युवा गिल्ड अध्यक्ष का नाम अमनरेड था, जो एक अजीब नाम था लेकिन बहुत बातूनी था, जिससे रॉकी के साथ मुलाकात काफी सुखद रही। जैसा कि रॉकी ने सोचा था, अमनरेड के व्यक्तिगत रूप से आने का मुख्य उद्देश्य कुछ दानव लाशें खरीदना था, और यदि संभव हो तो वह कुछ दानव कोर और अयस भी प्राप्त करना चाहती थी, जिसका अर्थ था कि वह रॉकी द्वारा व्यापार के लिए लाई गई हर चीज में रुचि रखती थी। लेकिन इस मामले में उसने अच्छी तरह से बागडोर संभाली। अमनरेड ने सभी दानव लाशों, कोर या अयस्कों को लेने की योजना नहीं बनाई थी, बल्कि उसे उम्मीद थी कि रॉकी उसे कुछ हिस्सा बेच देगा, क्योंकि रूबी चैम्बर ऑफ कॉमर्स की नई स्थापना हुई थी और चैम्बर की क्षमताओं को प्रदर्शित करने के लिए उसे उच्च गुणवत्ता वाले सामानों की तत्काल आवश्यकता थी। रॉकी ने स्वाभाविक रूप से मना नहीं किया। जैसा कि उसने पहले कहा था, यदि मैमा ने खुद को नुकसान नहीं पहुंचाया होता तो उसने दानव शवों का एक हिस्सा गोल्डन पर्पल फ्लावर कॉमर्स चैम्बर को बेच दिया होता, इसलिए जब अमेरी के अनुरोध का सामना करना पड़ा तो उसने न केवल 20 काली आंखों वाले दानवों और 4 बख्तरबंद बैल दानवों के साथ साथ 20 दानव कोर को बेचने पर सहमति व्यक्त की, बल्कि रूबी चैम्बर ऑफ कॉमर्स को सभी पीले स्केल एयर्स को बेचने पर भी सहमति व्यक्त की। बदले में अमनरेड ने माल के लिए उच्चतम बाजार मूल्य की पेशकश की। प्रत्येक काली आंखों वाले दानव की लाश की कीमत 2100 स्वर्ण सिक्के रखी गई। बख्तरबंद बैल दानव की कीमत बाजार में सबसे अधिक 17,000 स्वर्ण सिक्के रखी गई, और यहां तक कि दानव कोर और पीले स्केल एयर्स की कीमत भी बाजार में सबसे अधिक रखी गई। इसके अलावा अमनरेड ने इस तिमाही में थंडरहॉक सिटी द्वारा उत्पादित सभी कपड़े भी खरीद लिए और रॉकी से वादा किया कि रूबी चैम्बर ऑफ कॉमर्स भविष्य में थंडरहॉक सिटी द्वारा उत्पादित सभी कपड़े और चमड़े को खरीद लेगा। इस प्रकार एक बार सौदा तय हो जाने पर रॉकी के हाथों में अचानक 1,00,000 से अधिक स्वर्ण सिक्के आ गए। 3,000 पाउंड से ज्यादा पीला स्केल एयर्स पूरे 40,000 स्वर्ण सिक्कों में बिका और 24 दानव शव 1,10,000 स्वर्ण सिक्कों में बिके। कपड़े के साथ उसने 30,000 से ज्यादा स्वर्ण सिक्के और कमाए, जिससे लेन देन पूरा होने पर उसकी कुल राशि 1,80,000 स्वर्ण सिक्के हो गई। 1,80,000 स्वर्ण सिक्के! इतनी बड़ी धनराशि से वह तुरंत लिलिया के लिए शून्य जादू कवच का एक सेट खरीद सकता था। रॉकी को इस सौदे से 1,80,000 स्वर्ण मुद्राओं का लाभ हुआ, जो उसने पहले कभी अनुभव नहीं किया था। वह स्वाभाविक रूप से बहुत संतुष्ट था। दरअसल सिर्फ वही नहीं, बल्कि व्यापार समझौते से दोनों पक्ष संतुष्ट थे। रॉकी ने जरूरी पैसा कमाया और अमेरी ने अपनी मनचाही चीजें हासिल की, जो अमनरेड और उसके रूबी चैम्बर ऑफ कॉमर्स के लिए सौदा पक्का करने के लिए बेहद जरूरी थी। एक चैम्बर ऑफ कॉमर्स के लिए अपने ग्राहकों को पेश किए जा सकने वाले उत्पादों का स्तर महत्वपूर्ण होता है। अगर कोई चैम्बर दानव लाशें, दानव कोर या यस जैसी वस्तुओं को पेश करने में विफल रहता है, ऐसी वस्तुएं जिनकी किसी भी बाजार में अत्यधिक मांग होती है, तो उसकी ताकत पर निश्चित रूप से सवाल उठेंगे। लेकिन ऐसी कौन सी गर्म वस्तु है जो आसानी से मिल जाती है और जिसे पाने के लिए जान जोखिम में डालने की जरूरत नहीं पड़ती। यही कारण है कि जब अमनरेड को पता चला कि रॉकी बड़ी मात्रा में मूल्यवान सामान लेकर आ रहा है, तो वह स्वयं उससे कुछ सामान प्राप्त करने की आशा में वहां आया। अंतिम परिणाम की बात करें तो अमनरेड बहुत खुश हुई। 18,000 सोने के सिक्के खर्च करने के बावजूद एक बार जब ये सामान चैम्बर के हाथ में आ गया, तो न केवल इन्हें आसानी से दोगुने मुनाफे पर बेचा जा सका, बल्कि चैम्बर की ताकत और क्षमता का भी प्रदर्शन हुआ, जिससे एक ही तीर से दो निशाने साधे जा सके। इस बीच इस लेन देन के पूरा होने से थंडरहॉक सिटी और रूबी चैम्बर ऑफ कॉमर्स के बीच एक व्यापक साझेदारी की शुरुआत भी हुई। अब से थंडरहॉक सिटी के सभी अनाज आयात, सूत, कपड़े और भविष्य में चमड़े के सामान के निर्माण का काम रूबी चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा संभाला जाएगा। ये साझेदारी सभी की इच्छा थी। थंडरहॉक सिटी को अपने विकास को सुनिश्चित करने के लिए एक स्थिर आपूर्ति चैनल की आवश्यकता थी और एक नए चैम्बर ऑफ कॉमर्स के रूप में रूबी चैम्बर को स्थिर ग्राहकों, खासकर बड़े ग्राहकों की आवश्यकता थी। थंडरहॉक सिटी उनका आदर्श लक्ष्य था। इसलिए जब एमनरेड ने अंततः स्टार ऑफ द स्काई को छोड़ा तो उसका चेहरा खुशी से खिल उठा, मानो उसने अभी अभी एक निश्चित संतुष्टि प्राप्त की हो। उसके जाने के बाद रॉकी की मुलाकात जल्द ही अपने दूसरे महत्वपूर्ण आगंतुक से हुई, कॉन्टिनेंटल कॉमर्स चैम्बर के मैनेजर से। अन्य चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के विपरीत, जिन्होंने अपने महाप्रबंधक भेजे थे, कॉन्टिनेंटल कॉमर्स चैम्बर ने रॉकी से मिलने के लिए सिर्फ एक प्रबंधक भेजा। हालांकि इस प्रबंधक को कभी कम मत आंकिए, विभिन्न चैम्बर्स के पैमाने में अंतर के कारण एक ही पद की शक्ति और स्थिति में काफी अंतर हो सकता है। कॉन्टिनेंटल जैसे शीर्ष चैम्बर ऑफ कॉमर्स में उनके प्रबंधक की शक्ति और स्थिति एक औसत चैम्बर के महाप्रबंधक की तुलना में कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो सकती है। इस प्रकार इस संबंध में कॉन्टिनेंटल कॉमर्स चैम्बर ने कोई अशिष्टता नहीं दिखाई और रॉकी की उनके प्रतिनिधि के साथ मुलाकात काफी सुखद रही। स्वाभाविक रूप से उनकी बातचीत का मुख्य विषय व्यापार पर केंद्रित था, लेकिन दुर्भाग्य से कॉन्टिनेंटल कॉमर्स चैम्बर ने कोई बहुत ही आश्चर्यजनक कीमत की पेशकश नहीं की। डायमंड कॉर्प्स और डायमंड कोर की कीमत के लिए कॉन्टिनेंटल कॉमर्स चैम्बर ने मूल रूप से बाजार दर की पेशकश की, न एक पैसा अधिक न ही कम। हालांकि उन्होंने एक बहुत ही आकर्षक शर्त रखी, एक बार व्यापार पूरा हो जाने पर रॉकी को कॉन्टिनेंटल कॉमर्स चैम्बर में वीआईपी सदस्यता का विशेषाधिकार प्राप्त होगा, जिससे उसे चैम्बर के भीतर किए गए अधिकांश लेनदेन पर 10% की छूट प्राप्त होगी। यह एक आकर्षक प्रस्ताव था। कॉन्टिनेंटल कॉमर्स चैम्बर ने व्यापार के लगभग हर क्षेत्र को कवर किया, नवीनतम शून्य जादुई कवच से लेकर बेहतरीन तैरते युद्धपोतों तक सब कुछ बेचा। 10% की छूट काफी ज्यादा है। हालांकि रॉकी और एलिन दोनों ही इस शर्त को लेकर थोड़े असहाय महसूस कर रहे थे, क्योंकि वीआईपी दर्जा पाने के लिए उन्हें कॉन्टिनेंटल कॉमर्स चैम्बर के साथ लेन देन करना जरूरी था। लेकिन याद रखें, चैम्बर द्वारा दिया जाने वाला वीआईपी दर्जा सिर्फ कॉन्टिनेंटल कॉमर्स चैम्बर के भीतर ही मान्य था, यानी रॉकी को ये छूट तभी मिल सकती थी जब वह उनके साथ पैसे खर्च करे। इसका क्या तात्पर्य था? इसका मतलब ये था कि रॉकी को कॉन्टिनेंटल कॉमर्स चैम्बर से जो सोने के सिक्के मिलेंगे वे अंततः उनकी जेब में वापस आ जाएंगे। ऐसा व्यापारिक सौदा आश्चर्यजनक रूप से चतुराईपूर्ण था। इन परिस्थितियों में रॉकी स्वाभाविक रूप से तत्काल कोई निर्णय नहीं लेता, इसलिए प्रबंधक के साथ संक्षिप्त चर्चा करने के बाद उसने अतिथि को विदा किया। अगले 3 दिनों तक उन्होंने स्टार ऑफ द स्काई को नहीं छोड़ा और प्रतिदिन 2 आगंतुकों की औसत गति से उन्होंने प्रमुख चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के कई प्रबंधकों से मुलाकात की तथा व्यापारिक सौदों को अंतिम रूप दिया। रॉकी ने अंततः जिस चैम्बर ऑफ कॉमर्स को चुना वह न तो प्रसिद्ध कॉन्टिनेंटल था और न ही उतना ही प्रतिष्ठित ब्लू स्काई चैम्बर ऑफ कॉमर्स, बल्कि इसके स्थान पर एप्पल ट्री कॉर्पोरेशन नामक चैम्बर था। हालांकि एप्पल ट्री कॉर्पोरेशन कॉन्टिनेंटल और ब्लू स्काई चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स जितना प्रसिद्ध नहीं है, फिर भी यह इटर्नल सिटी में एक सुस्थापित और सम्मानित चैम्बर है। रॉकी ने उनके साथ व्यापार करने का फैसला उनकी प्रसिद्धि के कारण नहीं, बल्कि उनके द्वारा पेश की गई शर्तों के कारण किया था। व्यापार मूल्य के संदर्भ में एप्पल ट्री कॉर्पोरेशन ने एक ऐसी दर की पेशकश की जो लगभग बाजार मूल्य के बराबर थी, कुछ भी बकाया नहीं। हालांकि इसके अलावा उन्होंने एक शर्त भी रखी कि रॉकी द्वारा उनके साथ लेन देन पूरा करने के बाद वे उसे तीसरी पीढ़ी का एक तैरता हुआ एस्कॉर्ट जहाज मुफ्त में देंगे। हाँ, आपने सही पढ़ा, एक तैरता हुआ एस्कॉर्ट जहाज। तैरते हुए युद्धपोतों के वर्गीकरण में सबसे निचला स्तर टोही जहाज का था। युद्ध क्षमता वाले सभी युद्धपोतों में टोही जहाज आकार में सबसे छोटे थे, उनमें सबसे कम मान था और उनकी युद्ध क्षमता सबसे कम थी। उनका एकमात्र लाभ गति थी, जो उनके टोही उद्देश्य को देखते हुए उचित था। टोही जहाज से एक कदम ऊपर एस्कॉर्ट जहाज होता था और एस्कॉर्ट जहाज के स्तर से शुरू होकर युद्धपोतों का वर्गीकरण बदलकर युद्धपोत कर दिया जाता था। जहाज या युद्धपोत, हालांकि इनमें सिर्फ एक शब्द का अंतर है, लेकिन इनकी युद्ध क्षमता कई गुना ज्यादा होती है, अगर ज्यादा नहीं। कुछ लोग पूछ सकते हैं, क्या एप्पल ट्री कॉर्पोरेशन पागल हो गया है? एक एस्कॉर्ट शिप जो तीसरी पीढ़ी का युद्धपोत है और जिसे अभी तक हटाया नहीं गया है, सिर्फ 4-5 लाख सोने के सिक्कों के बदले में देने की पेशकश। ये प्रश्न हमें पुनः एप्पल ट्री कॉर्पोरेशन की ओर ले जाता है। वे मूलतः एक निगम थे जो तैरते हुए युद्धपोतों के व्यापार में विशेषज्ञता रखते थे और उनका अपना शिपयार्ड था, जिससे उन्हें स्वतंत्र रूप से निर्माण और बिक्री करने की सुविधा मिलती थी, जिसके परिणामस्वरूप उन्हें महत्वपूर्ण व्यवसाय प्राप्त होता था। लेकिन 6 महीने पहले निगम को अचानक एक नया गिल्ड अध्यक्ष मिल गया। पदभार ग्रहण करते ही नए अध्यक्ष ने निगम के केवल तैरते हुए युद्धपोतों के व्यापार के दिशानिर्देश में आमूलचूल परिवर्तन कर दिया और अपने व्यावसायिक उपक्रमों में विविधता लाने लगे, जिसमें शून्य जादुई कवच और कई अन्य उत्पादों का व्यापार भी शामिल था। हालांकि कहना आसान है, करना मुश्किल। ग्राहक न केवल उनके दूसरे व्यवसायों से अपरिचित थे, बल्कि दूसरे चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स भी उन पर कड़ा दबाव डाल रहे थे। निगम के नए व्यवसाय को जल्द से जल्द बेहतर बनाने के लिए नए अध्यक्ष ने एक साहसिक निर्णय लिया। एप्पल ट्री कॉर्पोरेशन के साथ 5,00,000 स्वर्ण मुद्राओं से अधिक के किसी भी गैर युद्धपोत व्यापारिक लेन देन पर एक तैरता हुआ युद्धपोत उपहार में दिया जाता था। उपहार में दिए गए युद्धपोत का ग्रेड सीधे लेन देन की राशि से जुड़ा होता था। जितनी ज्यादा राशि, उतना ही बेहतर उपहार में दिया गया युद्धपोत। और उनके द्वारा प्रस्तावित मूल्य के अनुसार रॉकी के पास मौजूद दानव लाशों और दानव कोर की कुल राशि का मतलब था कि लेन देन की राशि 5,00,000 सोने के सिक्कों से अधिक थी। रॉकी के पास अब 102 काली आंखों वाले दानवों की लाशें, 9 बख्तरबंद बैल दानवों की लाशें और 211 दानव कोर बचे थे। एप्पल ट्री कॉर्पोरेशन द्वारा प्रस्तावित मूल्य के अनुसार काली आंखों वाले दानवों की लाशें 2,000 सोने के सिक्कों में, बख्तरबंद बैल दानवों की लाशें 12,000 सोने के सिक्कों में और प्रत्येक दानव कोर 1,000 सोने के सिक्कों में बिकेगा। इसकी गणना करने पर काली आंखों वाले दानव शवों से 2,40,000 स्वर्ण सिक्के, बख्तरबंद बैल दानवों से 1,08,000 स्वर्ण सिक्के और 211 दानव कोर से कुल मिलाकर 2,11,000 स्वर्ण सिक्के प्राप्त होंगे। तीनों को जोड़ने पर कुल राशि 5,59,000 स्वर्ण सिक्के होती है, जो युद्धपोत उपहार में देने के लिए एप्पल ट्री कॉर्पोरेशन के मानक से थोड़ा अधिक है। यही वजह थी कि रॉकी ने आखिरकार उनके साथ व्यापार करने का फैसला किया। इस चैम्बर के साथ व्यापार करके उसे मुफ्त में एक एस्कॉर्ट जहाज मिल सकता था। रॉकी के लिए यह एस्कॉर्ट जहाज बहुत अहम था। आखिरकार गॉड सिटी आने का उसका एक मकसद तैरते हुए युद्धपोत खरीदना भी था। अपनी मूल योजना में उसका इरादा महंगे एस्कॉर्ट जहाज खरीदने का नहीं, बल्कि कुछ नए टोही जहाज खरीदने का था। लेकिन अब एप्पल ट्री कॉर्पोरेशन के साथ इस व्यापारिक सौदे के साथ रॉकी को एक युद्धपोत मुफ्त में मिल सकता था, और वह भी एक एस्कॉर्ट जहाज। वह इतना अच्छा सौदा कैसे छोड़ सकता था? इसलिए उसने तुरंत एलिन से एप्पल ट्री कॉर्पोरेशन के साथ व्यापार की बारीकियों पर बातचीत करवाई और बिना किसी हिचकिचाहट के सौदा पूरा कर लिया। लेन देन पूरा करने के बाद रॉकी यह जानकर बहुत खुश हुआ कि न केवल उसे मुफ्त में एस्कॉर्ट जहाज मिल गया, बल्कि उसे उम्मीद से भी अधिक सोने के सिक्के भी मिले। एप्पल ट्री कॉर्पोरेशन के साथ लेन देन, रूबी चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साथ व्यापार के साथ कुल संयुक्त लेन देन राशि 7,30,800 स्वर्ण सिक्कों तक पहुंच गई। यह आंकड़ा अनुमानित 4,00,000 स्वर्ण सिक्कों से पूरे 3,00,000 अधिक था। अब 7,00,000 से ज्यादा सोने के सिक्के पाकर रॉकी सचमुच अमीर हो गया था। उसके लिए बस दो ही शब्द बचे थे, पैसा खर्च करो, पैसा खर्च करो, पैसा खर्च करो। ये बात 3 बार दोहराने लायक है। सभी लेन देन पूरे करने के बाद रॉकी के हाथ में अचानक 7,00,000 से अधिक स्वर्ण सिक्के आ गए, जो उसकी अपेक्षा से कहीं अधिक बड़ी राशि थी, जिससे वह अंततः उदारतापूर्वक पैसा खर्च करने में सक्षम हो गया। हालांकि इस पैसे को कैसे खर्च किया जाए, इसके बारे में रॉकी को अभी भी सावधानीपूर्वक योजना बनाने की जरूरत थी। आखिरकार ब्लेड की धार पर अच्छे स्टील का उपयोग किया जाना चाहिए। जब सभी व्यापार पूरे हो जाएं, तो कारखानों और दुकानों के निर्माण के लिए 1,00,000 स्वर्ण सिक्के निकाल लो, साथ ही चमड़े की सामग्री खरीदो और दुकानों में सामान भरो। ये सब इन 1,00,000 स्वर्ण सिक्कों से करो। क्या तुम्हें लगता है कि ये पर्याप्त हैं? एक दिन सुबह सुबह रॉकी ने योजना के अगले चरण पर चर्चा करने के लिए सभी को अपने कमरे में इकट्ठा किया। अब जब सारे लेन देन निपट चुके थे और आने जाने वालों का आना जाना बंद हो गया था, रॉकी के पास आखिरकार इस बड़ी रकम को खर्च करने का इंतजाम करने का समय था। यह कोई मामूली बात नहीं थी, क्योंकि पैसा खर्च करना तो आसान है, लेकिन हर सिक्के का मोल समझना आसान नहीं है, और रॉकी को अपने हाथ में मौजूद 7,00,000 सोने के सिक्कों का पूरा फायदा उठाना था। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि वे सभी खर्च हो गए थे, लेकिन खर्च करने के बाद ये सुनिश्चित करना आवश्यक था कि थंडरहॉक सिटी की ताकत एक पायदान ऊपर उठ जाए। और चूंकि प्राप्त स्वर्ण सिक्के अनुमान से कहीं ज्यादा थे, इसलिए रॉकी द्वारा पहले सोची गई योजनाओं में थोड़ा बदलाव करना पड़ा। हालांकि थंडरहॉक सिटी के विकास के लिए मूल रूप से निर्धारित धनराशि अपरिवर्तित रही। एलिन और ओल्ड जैक ने शहर में एक जगह पहले ही चुन ली थी, घर रहने के लिए तैयार था, बस उसे इस्तेमाल लायक बनाने के लिए कुछ बदलाव करने की जरूरत थी। इसलिए मुख्य खर्च फैक्ट्री के उपकरणों और कच्चे माल पर, साथ ही दुकानों के लिए सामान आयात करने पर होगा। रॉकी को लगा कि इन जरूरतों के लिए 1,00,000 सोने के सिक्के काफी हैं। 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं पर्याप्त हैं। रूबी चैम्बर ऑफ कॉमर्स हमें चमड़े की सामग्री और दुकानों के लिए आवश्यक सामान उपलब्ध करा सकता है। जहां तक कारखाने के उपकरणों की बात है, मैं कल लॉर्ड जैक के साथ मिलकर उसका प्रबंध करूंगा। दरअसल एलिन ने कहा कि 1,00,000 स्वर्ण सिक्के पर्याप्त हैं और आश्वासन दिया कि वह और ओल्ड जैक इस मामले को संभाल लेंगे, जिससे रॉकी की चिंता खत्म हो जाएगी। ये तय होने के बाद रॉकी ने आगे कहा, मुझे लगता है कि बाकी बची रकम को मूल योजना के अनुसार शून्य जादुई कवच खरीदने, आकाश जहाजों के बेड़े का विस्तार करने और सैनिकों के उपकरणों को उन्नत करने पर खर्च किया जाना चाहिए। अब हम मात्रा और गुणवत्ता में वृद्धि और सुधार ही कर सकते हैं। रॉकी की बात खत्म होते ही मोटे और लिन फेंग दोनों की आंखें चमक उठी, मानो रॉकी के आदमियों को प्रशासनिक और सैन्य भूमिकाओं में बांट दिया गया हो। मोटे और लिन फेंग साफ तौर पर सैन्य पक्ष से जुड़े थे, इसलिए जब उन्होंने सुना कि रॉकी थंडरहॉक शहर की सैन्य शक्ति बढ़ाने की योजना बना रहा है तो वे स्वाभाविक रूप से उत्साहित हो गए। इस समय रॉकी ने एलिन की ओर मुड़कर पूछा, एलिन, रूबी चैम्बर ऑफ कॉमर्स और एप्पल ट्री कॉरपोरेशन कब तक लेन देन पूरा कर सकते हैं? अगले कुछ दिनों में मैंने रूबी चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साथ सामान सौंपने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो वे कल भुगतान कर देंगे और फिर हम एप्पल ट्री कॉरपोरेशन के साथ सामान सौंपने की प्रक्रिया शुरू करेंगे। ज्यादा से ज्यादा 3 दिनों में सभी लेन देन पूरे हो जाने चाहिए। अच्छा, एक बार लेन देन पूरा हो जाए तो मैं शून्य जादू कवच और स्काईशिप खरीद लूंगा। सब कुछ व्यवस्थित करने के बाद आखिरकार सब निश्चिंत हो गए। अब उनके पास बस इंतजार करने के अलावा कोई चारा नहीं था कि बाद में वे पैसे कैसे खर्च करेंगे। 3 दिन जल्दी ही बीत गए। सच कहूं तो इस दौरान सभी थोड़े घबराए हुए थे, क्योंकि पहली बार किसी बड़े बिजनेस डील को संभालना उनके लिए मुश्किल था और उन्हें किसी भी अप्रत्याशित घटना का डर था जिससे समस्याएं पैदा हो सकती थीं। लेकिन सौभाग्य से ऐसा दुर्भाग्य नहीं हुआ। इन 3 दिनों में सभी लेन देन सुचारू रूप से हुए। न केवल 7 लाख से ज्यादा स्वर्ण मुद्राएं हाथ में आईं, बल्कि एप्पल ट्री कॉरपोरेशन द्वारा उपहार में दिया गया एस्कॉर्टशिप भी मिल गया। ये जानने पर कि उपहार स्वरूप दिया गया एस्कॉर्ट जहाज आ गया है, रॉकी ने स्काईपोर्ट की विशेष यात्रा की ताकि वह देख सके कि वास्तव में वह युद्धपोत कौन था। जब वह स्काईपोर्ट पर पहुंचा और एस्कॉर्ट जहाज को देखा तो वह अपने दिल में ये कहने से खुद को नहीं रोक सका कि यह वास्तव में एक असली युद्धपोत था। यद्यपि सभी तैरते हुए युद्धपोतों में एस्कॉर्ट जहाज का स्तर अपेक्षाकृत कम था, अर्थात तो ही जहाज से केवल एक स्तर ऊपर, फिर भी अंततः ये युद्धपोत के मानक पर खरा उतरा तथा कई पहलुओं में तो ही जहाज से कहीं आगे निकल गया। उदाहरण के लिए एप्पल ट्री कॉरपोरेशन द्वारा दिया गया एस्कॉर्ट जहाज लें, जो 110 मीटर लंबा था तथा आकार में एक दूसरे के बगल में रखे गए 2 टोही जहाजों से भी बड़ा था। संपूर्ण युद्धपोत को 25 मध्यम जादुई पत्थरों द्वारा शक्ति प्रदान की गई थी, जो न केवल प्रणोदन प्रदान करते थे बल्कि एक जादुई ऊर्जा रक्षा जाल भी प्रदान करते थे, जिसमें 500 से कम जादुई ऊर्जा मूल्य वाले जादुई तोपों के हमलों का सामना करने के लिए पर्याप्त रक्षात्मक शक्ति थी। केवल इसी विशेषता के कारण एस्कॉर्ट जहाज को टोही जहाजों के विरुद्ध अजेय स्थिति प्राप्त थी, कम से कम थंडरहॉक सिटी से आने वाले जहाजों का सामना करते समय। ऐसा इसलिए क्योंकि थंडरहॉक सिटी के सभी टोही जहाज पहली पीढ़ी के थे, जिनमें केवल 2 जादुई तोपें थीं और उनकी जादुई ऊर्जा की शक्ति मात्र 300 अंक थी। दूसरे शब्दों में, एक एस्कॉर्ट जहाज के खिलाफ थंडरहॉक सिटी के टोही जहाज बिना किसी लाभ के विस्फोट कर सकते थे और उनकी 300 अंक वाली जादुई तोपें प्रतिद्वंद्वी के रक्षात्मक जाल को भेदने में असमर्थ थीं। युद्धपोत के विशाल आकार के कारण इसमें अधिक चालक दल के सदस्यों की भी आवश्यकता थी और इसका पूरा दल 150 कर्मियों को ले जाने में सक्षम था। इसके अतिरिक्त युद्धपोत कम से कम 15 जादुई तोपों से सुसज्जित था, जिनमें 2 मुख्य तोपें थीं जो केवल मध्यम जादुई पत्थरों से संचालित होती थीं और जिनकी जादुई ऊर्जा शक्ति 1300 तक पहुंचती थी, और 13 सहायक तोपें थीं जिनकी शक्ति 700 थी। न केवल रक्षात्मक शक्ति में बल्कि मारक क्षमता में भी इस एस्कॉर्ट शिप ने थंडरहॉक सिटी के टोही जहाजों को बहुत पीछे छोड़ दिया। थंडरहॉक सिटी के जहाजों की तुलना में इस एस्कॉर्ट शिप की मारक क्षमता को केवल भयानक ही कहा जा सकता है। दरअसल यह एक दुखद घटना थी, क्योंकि इससे अप्रत्यक्ष रूप से पता चलता था कि थंडरहॉक सिटी की सैन्य शक्ति कितनी कमजोर थी। 5वीं पीढ़ी के युद्धपोत पहले से ही आसमान पर कब्जा जमाए हुए थे, फिर भी थंडरहॉक सिटी अपने शहर की सुरक्षा के लिए पहली पीढ़ी के स्काईशिप पर निर्भर था। लेकिन अब हालात अलग थे। रॉकी के पास अब आखिरकार एक असली युद्धपोत था, भले ही वह 3री पीढ़ी का था, लेकिन वह थंडरहॉक सिटी के उन पुराने टोही जहाजों से अनगिनत गुना ज्यादा ताकतवर था। और 3री पीढ़ी के युद्धपोत ऐतिहासिक रूप से पूरी तरह से अप्रचलित नहीं थे। कई औसत शक्ति वाले स्काई सिटीज अभी भी अपनी मुख्य शक्ति के रूप में इसी पीढ़ी के युद्धपोतों पर निर्भर थे। इसलिए रॉकी इस एस्कॉर्ट शिप से 100% संतुष्ट था। युद्धपोत की डिलीवरी और लेन देन का भुगतान तय होने के साथ रॉकी और एप्पल ट्री कॉरपोरेशन के बीच सौदा आधिकारिक रूप से संपन्न हो गया। हालांकि रॉकी को थोड़ी हैरानी हुई जब सौदा पक्का होने के बाद दूसरे पक्ष ने उसे एक नृत्य समारोह का निमंत्रण भी दिया, जिसमें उसे 3 दिन बाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा आयोजित एक नृत्य समारोह में शामिल होने के लिए कहा गया। आकाश में विशालकाय इटर्नल सिटी में स्वाभाविक रूप से साल भर महत्वपूर्ण हस्तियों का जमावड़ा लगा रहता था। रईसों का आना जाना आम बात थी और शहर के सरदारों का आना जाना सर्वत्र था, इसलिए नृत्य कुलीनों और प्रमुख हस्तियों के बीच बातचीत का सबसे अच्छा मंच हुआ करते थे, जिससे इटर्नल सिटी में नृत्य का चलन बढ़ गया, जहां साल भर रोजाना नृत्य होते थे। ज्यादातर लोगों के लिए, खासकर कुलीन वर्ग या छोटे शहर के सरदारों के लिए जो सामाजिक सीढ़ी चढ़ने के लिए उत्सुक थे, इटर्नल सिटी में अक्सर होने वाली बॉलर्स बेहतरीन मौके मुहैया कराती थी। इन बॉलर्स में आमंत्रित होना धन या कुलीनता का प्रतीक था और वहां संबंध बनाना जाहिर तौर पर तरक्की के लिए फायदेमंद था। हालांकि रॉकी, जो खुद भी एक छोटा सा शहर का सरदार था, इस नृत्य गोष्ठी का निमंत्रण पाकर कुछ उदासीन सा महसूस कर रहा था। उसने सोचा कि सबसे जरूरी काम तो अपने पास मौजूद पैसे खर्च करना है। ऐसे नृत्यों के लिए उसे समय कहां से मिलेगा? बेशक आपको जाना चाहिए, ऐसी गेंद आपके लिए फायदेमंद होगी। जब रॉकी ने लिलिया को बॉल का निमंत्रण दिया तो उसने यह अनुमान नहीं लगाया था कि वह उसे इसमें शामिल होने के लिए जोरदार आग्रह करेगी। एप्पल ट्री कॉर्पोरेशन इटर्नल सिटी में एक पुराना स्थापित चैम्बर ऑफ कॉमर्स है जिसके दूर दूर तक संपर्क हैं। उनके द्वारा आयोजित बॉल में निश्चित रूप से कई महत्वपूर्ण हस्तियां शामिल होंगी और इन लोगों को जानना हमारे लिए फायदेमंद हो सकता है, लिलिया ने रॉकी के सामने बैठते हुए धीरे से समझाया। मुझे डर है कि कहीं मैं कोई उपयोगी संबंध न बना पाऊं, बल्कि अवांछित ध्यान आकर्षित कर लूं। रॉकी ने उसके सामने बैठते हुए कुछ असहाय दिखते हुए आह भरी। वह लिलिया की बात समझ गया था। ऐसी बॉल में जाना स्वाभाविक रूप से फायदेमंद था, लेकिन फायदे और जोखिम हमेशा साथ साथ रहते हैं। इसलिए कोई भी गारंटी नहीं दे सकता था कि बॉल के बाद थंडरहॉक सिटी और उसका सिटी लॉर्ड वीआईपी लोगों से घुलने मिलने के बाद किसी की ब्लैकलिस्ट में नहीं आ जाएगा और अधिग्रहण का अगला निशाना नहीं बन जाएगा। तुम बड़ा चढ़ाकर कह रही हो, लिलिया ये सुनकर हंस पड़ी। जाओ बस, भविष्य में तुम्हारे विकास के लिए बॉल पर दूसरे सिटी लॉर्ड्स के साथ ज्यादा संपर्क बनाना तुम्हारे लिए अच्छा ही होगा। ठीक है, लगता है हथियार बाजार की यात्रा फिर स्थगित करनी पड़ेगी। लिलिया के समझाने पर रॉकी ने आखिरकार सिर हिलाया और बॉल में जाने के लिए राजी हो गया। लेकिन जैसा कि उसने बताया, चूंकि उसने जाने का फैसला किया था, इसलिए हथियार बाजार जाकर शून्य जादुई कवच और स्काईशिप खरीदने की उसकी योजना को टालना पड़ेगा। कुछ लोगों को यह अजीब लग सकता है कि अगेन 3 दिन में शुरू नहीं होने वाली थी। हथियारों के बाजार में अभी भी समय होना चाहिए। जो लोग ऐसा कह रहे हैं वे एक बात जरूर भूल गए होंगे, क्या आप ऐसी किसी पार्टी में कैजुअल कपड़े पहन सकते हैं? वहां जाने के लिए आपको अच्छे से तैयार होना होगा, इसलिए रॉकी को अब इस पहलू की तैयारी करनी होगी। और वैसे भी वह अकेला नहीं जा रहा होगा, इसलिए इस तरह की तैयारियां पूरी होने में 1-2 दिन से ज्यादा तो लगेंगे ही। इसे 2 दिन के लिए टालना ठीक है, हमारे पास इन दिनों ज्यादा कुछ काम नहीं है। अगर हम बॉल के बाद हथियारों के बाजार भी जाएं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लिलिया ने दिलासा देते हुए कहा। ठीक है, कल तुम, एलिन और मोटे मेरे साथ कपड़े खरीदने चलो। अगर हम जा रहे हैं तो हमें प्रभावशाली कपड़े पहनने होंगे। रॉकी ने निश्चित रूप से स्वयं को शर्मिंदा नहीं करना चाहा, इसलिए अगले दिन वह लिलिया, एलिन और मोटे को लेकर इटर्नल सिटी के सबसे बड़े शॉपिंग सेंटर में गया ताकि बॉल के लिए औपचारिक पोशाक खरीद सके। अतीत में रॉकी ने कभी ऐसा करने की हिम्मत नहीं की थी, क्योंकि बॉल के लिए आवश्यक औपचारिक पोशाक ऐसी चीज नहीं थी जिसे गरीब लोग खरीद सकते थे। एक कपड़े की कीमत सैकड़ों या हजारों स्वर्ण सिक्कों के बराबर होती थी, जो उसके लिए बहुत तनावपूर्ण था। लेकिन अब जब उसके पास लाखों स्वर्ण सिक्के थे तो उसे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं थी। रॉकी को अपने और दूसरों के लिए बॉल में जाने के लिए उपयुक्त पोशाक चुनने के लिए कुछ हजार या यहां तक कि 10,000 स्वर्ण सिक्के इकट्ठा करना उचित लगा। जैसा कि उसने अनुमान लगाया था, ये बेहद समय लेने वाला काम था। इस बार उसे न सिर्फ अपने और मोटे के लिए बल्कि लिलिया और एलिन के लिए भी कपड़े चुनने थे। एक बार जब महिलाएं ऐसे कामों में शामिल हो गईं, तो यह एक अंतहीन काम बन गया। आखिरकार जब तक रॉकी ने सब कुछ तैयार किया, बॉल का दिन आ गया। शॉपिंग सेंटर में 3 दिन बिताने और 5,000 से ज्यादा गोल्ड कॉइन खर्च करने के बाद, यहां तक कि एलिन ने सलाह के लिए एक डिजाइनर की मदद भी ली, आखिरकार उन्होंने तय कर लिया कि बॉल में क्या पहनना है। इसलिए जब रॉकी, अपनी डेट्स लिलिया और एलिन तथा अपने एस्कॉर्ट मोटे के साथ बॉल पर गया तो वह लगभग टूट ही गया। हालांकि बॉल की क्षमता को देखते हुए उनकी तैयारियां स्पष्ट रूप से उचित थीं। इटर्नल सिटी के एक प्रमुख चैम्बर ऑफ कॉमर्स के रूप में एप्पल ट्री कॉर्पोरेशन ने एक ऐसी बॉल का आयोजन किया जो गुणवत्ता और मानक दोनों ही दृष्टि से बेजोड़ थी और जो सचमुच उपस्थित लोगों की पूरी तैयारी के योग्य थी। आयोजन स्थल गिल्ड अध्यक्ष का निजी आवास था, दूसरे शब्दों में यह एक निजी बॉल थी। और हाँ, बॉल में आमंत्रित अतिथियों का जिक्र करना जरूरी नहीं है। उपस्थित लोगों में सिटी लॉर्ड या उससे भी ऊंचे दर्जे के कई लोग शामिल थे। सिटी लॉर्ड्स के अलावा विभिन्न स्काई सिटीज के प्रभावशाली लोग भी मौजूद थे। इसलिए जब रॉकी, लिलिया और बाकियों के साथ कार्यक्रम स्थल पर पहुंचा तो भीड़ ने उसे तुरंत निगल लिया। इसमें कोई दो राय नहीं थी, 20-30 सिटी लॉर्ड्स बॉल में मौजूद थे और रॉकी उनमें ज्यादा अलग नहीं दिख रहा था। रॉकी इस कम ध्यान से काफी खुश था। उसे शुरू से ही ऐसी गेंदों में कोई दिलचस्पी नहीं थी और उसने अनिच्छा से शॉपिंग सेंटर में कई दिन बिताए थे। गेंद से कोई खास उम्मीद न रखते हुए वह आयोजन स्थल में घुसते ही एक कोने में चला गया और गेंद पर परोसे जा रहे खाने पर ध्यान केंद्रित करने लगा। हालांकि जिस तरह से वह पहले भी चाहता था तब भी वह कम प्रोफाइल में नहीं रह पाता था। रॉकी ने बॉल के दौरान जिन घटनाओं का सामना किया वे निश्चित रूप से उसकी कल्पना से परे थीं। सबसे पहले उसने करीना को फिर से देखा। रोज सिटी के लॉर्ड भी उस बॉल में मौजूद थे। अपनी औपचारिक पोशाक पहने करीना अब भी एक लाल गुलाब जैसी लग रही थी और अनजान रॉकी के विपरीत उनका नेटवर्क बहुत बड़ा लग रहा था। बॉल में मौजूद लगभग हर कोई उन्हें जानता था। नगरपालिका अध्यक्ष रॉकी, आप उम्मीद के मुताबिक आए हैं, करीना ने सक्रियता से उनसे संपर्क किया जब वह दोनों सुंदरियों के साथ बॉल में स्वादिष्ट भोजन का आनंद ले रहे थे। रॉकी ने उसे पहले ही कार्यक्रम स्थल पर देख लिया था। रेड रोज करीना वाकई अलग दिख रही थी, लेकिन युवा सिटी लॉर्ड्स के उसे हर समय घेरे रहने के कारण रॉकी उसके पास नहीं गया। उसे आश्चर्य हुआ कि करीना ने भी उसे देख लिया था और उसने भी उसके पास आने की पहल की थी। सिटी लॉर्ड रॉकी, आप हाल ही में काफी चर्चित व्यक्ति रहे हैं। करीना शराब का गिलास लेकर रॉकी के पास गई और उसकी ओर मुस्कुराते हुए ऐसे बात की जैसे वे दोनों एक दूसरे को काफी समय से जानते हों। ओह, मुझे ये कैसे पता नहीं चला, रॉकी ने हल्की सी मुस्कान के साथ जवाब दिया। उसे वास्तव में पता नहीं था कि उसे ऐसी महिमा कब मिली थी। आपने एप्पल ट्री कॉर्पोरेशन के साथ सीधे तौर पर 5 लाख से अधिक स्वर्ण सिक्कों का सौदा किया है, क्या ये काफी आकर्षक नहीं है? एक छोटे से स्काई सिटी के लिए यह कोई छोटी रकम नहीं है। लॉर्ड करीना, क्या मैं एक प्रश्न पूछ सकता हूँ? करीना की बातें सुनकर रॉकी ने भौहें चढ़ाई और फिर पूछा, निसंदेह तुमसे हो सकता है, तुम्हें मेरे बारे में ये बातें कैसे पता चली? यद्यपि रॉकी को इस बात पर आश्चर्य नहीं हुआ कि वह उसके प्रेम संबंधों के बारे में जानती थी, फिर भी वह ये जानने को उत्सुक था कि उसे ये सब कैसे पता चला। शेडो अलायंस, बस 10,000 स्वर्ण सिक्के प्रति माह का भुगतान करें और वे आपको वह सारी जानकारी प्रदान करेंगे जो आप चाहते हैं। उसकी ओर एक सौम्य मुस्कान के साथ करीना ने सहजता से उत्तर दिया। क्या ऐसा कोई संगठन था? इस जवाब ने रॉकी को एक पल के लिए चौंका दिया और फिर उसने चुपचाप शेडो अलायंस का ध्यान आकर्षित किया। यह एक सूचना संगठन लग रहा था जो उसके लिए भी काम आ सकता था। क्या वह सिटी लॉर्ड रॉकी नहीं है? और लॉर्ड करीना, तो आप दोनों एक दूसरे को जानते हैं? तभी एक और परिचित आवाज रॉकी के कानों में पड़ी और जैसे ही वह और करीना मुड़े उन्होंने देखा कि लिंग्यू शहर का नगर स्वामी बर्ग उनकी ओर आ रहा है। तुम दोनों किस बारे में बात कर रहे हो? अगर यह व्यवसाय से संबंधित है तो तुम्हें मुझे भी इसमें शामिल करना चाहिए। रॉकी और करीना के पास पहुंचकर बर्ग ने ऐसे बात की जैसे वह उनका पुराना दोस्त हो, बिना किसी बाहरी व्यक्ति जैसा एहसास किए। हालांकि बर्ग की परिचितता को देखते हुए करीना ने बस अपनी आंखें घुमाई। देखो यहां कौन है, मनी सिटी लॉर्ड, धन नगरी के स्वामी। करीना के मुंह से बर्ग का उपनाम सुनकर रॉकी की अभिव्यक्ति एक जिज्ञासु बच्चे जैसी थी। एक नगर स्वामी जिसकी आंखें केवल धन देखती हैं, वास्तव में धन नगर स्वामी ऐसा ही होता है। करीना, तुम अक्सर मेरे घर पर भी व्यापार करती हो, सिटी लॉर्ड रॉकी के सामने मेरे बारे में इस तरह बात करने की कोई जरूरत नहीं है, है ना? बर्ग करीना के मजाक से परेशान नहीं हुआ और जल्द ही रॉकी की ओर मोड़ा। सिटी लॉर्ड रॉकी, आपने हाल ही में बहुत बड़ी बात की है। अगली बार आपको आना होगा और मेरे लिंग्यू सिटी का समर्थन करना होगा, जहां हमारा चैम्बर ऑफ कॉमर्स उचित मूल्य पर गुणवत्तापूर्ण सामान के अलावा कुछ नहीं देता है। कुछ निर्दयी व्यापारियों में अभी भी गुणवत्ता और उचित मूल्य के बारे में बात करने का साहस है। जैसे ही बर्ग शेखी बघार रहा था, करीना ने तिरस्कार के साथ बीच में ही टोक दिया, जिससे बर्ग अजीब तरह से हंसने लगा और फिर रॉकी से ऐसे बात करने लगा जैसे कुछ हुआ ही न हो। नगरपालक रॉकी, तुम, मैं और करीना सभी छोटे आकाशीय शहरों के नगरपाल हैं। इस आकाश में हमारा स्थान सबसे निचला है और केवल एक दूसरे की मदद करके ही हम बेहतर ढंग से जीवित रह सकते हैं। क्या तुम सहमत नहीं हो? बर्ग वाकई एक व्यापारी की तरह व्यवहार करता था, बेहद बातूनी, लेकिन उसके मिलनसार स्वभाव के कारण ही रॉकी, करीना और उसे बातचीत में बहुत मजा आता था। बाद में बर्ग ने रॉकी को कई दूसरे सिटी लॉर्ड्स से मिलवाया। हालांकि जैसे ही रॉकी इन नए सिटी लॉर्ड्स के साथ बातचीत करने लगा, बॉल में मौजूद एक अन्य व्यक्ति ने उसे देखा और जल्दी से वहां पहुंच गया। रॉकी, तुम यहां क्या कर रहे हो? रॉकी ने जब अपना नाम सुना तो वह पीछे मुड़ा और फिर उसने एक ऐसे व्यक्ति को देखा जिसे देखने के लिए वह बहुत उत्सुक नहीं था, सिरिल। सिरिल की उपस्थिति ने रॉकी को बहुत आश्चर्यचकित कर दिया। उसने कभी भी इस संयोग की उम्मीद नहीं की थी कि इटर्नल सिटी की अपनी दोनों यात्राओं में उसे इस चचेरे भाई से मुलाकात होगी। सिरिल भी उतना ही हैरान था जितना वह था। दरअसल इटर्नल सिटी आने का उसका मकसद रॉकी को ढूंढना था, लेकिन उसने कभी सोचा भी नहीं था कि दोनों ऐसे माहौल में मिलेंगे। रॉकी और सिरिल दोनों एक दूसरे को दोबारा देखकर क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गए। दोनों में से किसी ने भी ऐसी किसी घटना पर एक दूसरे से मिलने की उम्मीद नहीं की थी। सिरिल ने सबसे पहले प्रतिक्रिया की और रॉकी को सिटी लॉर्ड्स के समूह से दूर खींचकर एक कोने में ले गया। इस कदम से स्वाभाविक रूप से सिटी लॉर्ड्स में असंतोष पैदा हो गया, लेकिन वे सभी सिरिल की स्थिति से अच्छी तरह परिचित थे और इसलिए उसे आसानी से उकसाने में संकोच कर रहे थे। रॉकी को नृत्य के कोने में ले जाने के बाद सिरिल ने उसे कुछ बार ऊपर से नीचे तक देखा और फिर अविश्वास से पूछा, रॉकी तुम यहाँ कैसे आए?
मैं यहाँ क्यों नहीं आ सकता?
रॉकी यह सुनकर बिल्कुल भी खुश नहीं हुआ। इसका क्या मतलब था? क्या उसे हमेशा के लिए थंडरहॉक सिटी में ही रहना था? सिरिल की ओर देखते हुए रॉकी ने भी एक प्रश्न पूछा, और तुम यहाँ क्यों हो?
चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने मुझे आमंत्रित किया।
उन्होंने मुझे भी आमंत्रित किया?
एप्पल ट्री चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने आपको आमंत्रित किया है?
सिरिल ने कई सेकंड तक अपनी आंखें झपकाई। रॉकी की बातों पर उसका चेहरा अविश्वास से भर गया। एप्पल ट्री चैम्बर ऑफ कॉमर्स ऐसे नृत्यों का आयोजन बिना किसी उद्देश्य के नहीं करता था। दरअसल इन नृत्यों का उद्देश्य बहुत स्पष्ट था, सिटी लॉर्ड्स के माध्यम से चैम्बर के व्यावसायिक दायरे का विस्तार करना। और इसी उद्देश्य के चलते चैम्बर द्वारा आमंत्रित किसी भी व्यक्ति को एक अत्यंत महत्वपूर्ण ग्राहक माना जाता था। सिरिल भी कल ही इटर्नल सिटी पहुंची थी और उसे आते ही निमंत्रण मिल गया था। चूंकि मेरेंटे परिवार का एप्पल ट्री चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साथ कुछ व्यापारिक लेन देन था, इसलिए वह आई थी। ऐसे मामलों की आदि सिरिल, जो मेरेंटे कबीले के नेता की बेटी और खुद एक आकाशीय शहर की नगर प्रभु थी, जहां भी जाती हमेशा सम्मान की पात्र होती। इसके अलावा उसकी अपनी हैसियत के कारण कई लोग उसके साथ अच्छे संबंध बनाए रखने के लिए उत्सुक रहते थे। फिर भी सिरिल को यह उम्मीद नहीं थी कि एप्पल ट्री चैम्बर ऑफ कॉमर्स रॉकी को भी निमंत्रण देगा, जो उसके लिए कुछ हद तक आश्चर्य की बात थी। इसके बाद वह रॉकी को ध्यान से देखने से खुद को रोक नहीं सकी। जितनी देर तक वह उसे देखती रही, उसकी निगाहें उतनी ही जटिल होती गईं। एप्पल ट्री चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा आमंत्रित किए जाने का मतलब था कि रॉकी उनकी नज़रों में एक महत्वपूर्ण ग्राहक था। उनकी आखिरी मुलाकात को कुछ ही महीने हुए थे। ऐसा दर्जा पाने के लिए उसने क्या किया था? आपने चैम्बर के साथ किस तरह का कारोबार किया है? ये सोचकर सिरिल खुद को ये पूछने से नहीं रोक सका।
कुछ खास नहीं।
उसकी तरफ देखने के बाद रॉकी ने अपना भाव तटस्थ रखा। सिरिल, तुम्हें क्या चाहिए?
अगर कोई जरूरी बात नहीं है तो मैं जा रहा हूँ।
इतना कहकर वह मुड़ा और बिना किसी हिचकिचाहट के जाने को तैयार हो गया। इंतजार, ये देखकर कि रॉकी सचमुच जाने वाला था, सिरिल असहाय महसूस कर रहा था। उसके पास उसे रोकने के लिए चिल्लाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था।
रॉकी, मुझे तुमसे कुछ महत्वपूर्ण बात करनी है।
क्या ये परिवार के बारे में है?
हाँ, मेरा अब मेरेंटे परिवार से कोई संबंध नहीं है।
सिरिल की ओर पीट करके रॉकी ठंडे स्वर में बोलता हुआ चला गया। जब से उसके पिता का स्काई सिटी मेरेंटे परिवार द्वारा ले लिया गया था, उसने वास्तव में उस परिवार से सभी संबंध तोड़ लिए थे। लेकिन जैसे ही उसने कुछ कदम आगे बढ़ाया, सिरिल की आवाज फिर उसके पीछे से आई। परिवार थंडरहॉक सिटी को वापस लेना चाहता है। उस साधारण वाक्य ने रॉकी को वहीं रुकने पर मजबूर कर दिया। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम उद्धरण चिन्ह। रुककर रॉकी ने एक हल्की आह भरी और फिर सिरिल की ओर देखने लगा, तुमने क्या कहा?
परिवार थंडरहॉक सिटी को वापस लेने की योजना बना रहा है।
उसकी आंखों में देखते हुए सिरिल ने असहाय होकर एक बार फिर वाक्य दोहराया। सिरिल के ये शब्द दोहराने के बाद ही रॉकी ने अपनी भौहें सिकुड़ी और ध्यान से सोचा, फिर अपनी आंखें ऊपर उठाने में उसे कई मिनट लगे।
मेरे लिए आपके पास बस यही खबर है।
क्यों?
क्योंकि मैं नहीं चाहता कि परिवार थंडरहॉक सिटी वापस ले ले। यह न तो तुम्हारे लिए अच्छा है और न ही मेरे लिए। और इसके अलावा
ये परिवार का तुम्हारा ऋण है। रॉकी की ओर देखते हुए सिरिल ने अपने होंठ काटे और रुक रुक कर बोला। तभी रॉकी सिरिल के पास वापस आ गया। उसने सिरिल की तरफ देखा, जो उससे छोटा था और अंदर से टूटा हुआ महसूस कर रहा था, क्योंकि वह देख सकता था कि सिरिल को उसके प्रति कुछ पछतावा हो रहा था। उसके पछतावे की वजह बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन मौजूदा रॉकी सचमुच माइरेंटे परिवार से कोई लेना देना नहीं चाहता था। पिछली घटना ने उसे परिवार की असली पहचान करा दी थी। हालांकि सिरिल के शब्दों का मतलब था कि रॉकी बेफिक्र होकर नहीं जा सकता था, भले ही वह अनिच्छुक हो। उसे जाने से पहले पूछना ही था कि क्या हो रहा है। दूसरी ओर रॉकी को अपनी ओर लौटता देख सिरिल ने बोलना शुरू किया, रॉकी परिवार जानबूझकर तुम्हें निशाना नहीं बना रहा है। चलिए मुख्य विषय पर आते हैं। रॉकी ने हाथ हिलाकर सिरिल की बात बीच में ही रोक दी और सीधे पूछा, आपने अभी कहा कि परिवार थंडरहॉक सिटी को वापस लेना चाहता है, आखिर क्या हो रहा है?
हाँ,
क्योंकि सिरिल ने चंद शब्दों में रॉकी को थंडरहॉक सिटी के बारे में परिवार के फैसले और बैरन बोलिन वाली स्थिति के बारे में समझाया। मामला सीधा सा था, परिवार का सीधा सा फैसला था, इसलिए उसे समझाने में ज्यादा समय नहीं लगा।
तो यह ऐसा है?
और जब सिरिल ने सब कुछ समझा दिया तो रॉकी ने सिर हिलाया, जबकि उसकी भौहें गहरी सोच में डूबी हुई थी। उसके शांत स्वभाव के बावजूद ये खबर उसके लिए अचानक और चौंकाने वाली थी, मानो आसमान से बिजली गिर गई हो। उसने सोचा भी नहीं था कि जैसे ही हालात उसके लिए बेहतर होने लगे थे, उसे ऐसी मुसीबत का सामना करना पड़ेगा। लेकिन अब किसी भी पछतावे के लिए बहुत देर हो चुकी थी, चाहे वह अपनी बदकिस्मती को कोस रहा हो या माइरेंटे परिवार से नफरत कर रहा हो। अब सबसे जरूरी बात यह थी कि इस आसन्न संकट से कैसे निपटा जाए। अगर थंडरहॉक सिटी वापस ले ली जाती तो रॉकी इसके लिए बिल्कुल राजी नहीं होता। मेरेंटे परिवार ने पहले ही एक मध्यम आकार का स्काई सिटी छीन लिया था जो उसे विरासत में मिलना था, और रॉकी ऐसा दोबारा कभी नहीं होने देगा। इसलिए थोड़ी देर की खामोशी के बाद उसने फिर अपना सिर उठाया। आपने अभी बताया कि परिवार बैरन वोलिन को कार्रवाई करने में मदद नहीं करेगा, है ना?
बिल्कुल, सिरिल ने हाँ में सिर हिलाया और कहा, दरअसल मेरे पिता और मैं दोनों ही बैरन वोलिन के गुट को बढ़ते हुए नहीं देखना चाहेंगे, लेकिन व्यक्तिगत इच्छाएं परिवार के फैसलों को प्रभावित नहीं कर सकती। मैं बस इतना कर सकता हूँ कि परिवार इस मामले से दूर रहे, और आप इस बात का भरोसा रख सकते हैं।
अगर ऐसा है तो बैरन वोलिन थंडरहॉक सिटी को मुझसे छीनने की योजना कैसे बना रहा है? रॉकी को इस जवाब से थोड़ी हैरानी हुई। अगर परिवार बीच में नहीं आता तो बैरन वोलिन अपना थंडरहॉक सिटी कैसे ले जा सकता था? जाहिर है उसका इरादा रॉकी को थंडरहॉक सिटी से खुद बाहर निकालने का तो नहीं था। इसे वापस कैसे लिया जाए?
स्वाभाविक रूप से बेड़े को लाकर तुम्हें भगाया जाए। सिरिल ने रॉकी को हैरानी से देखा। क्या इस सवाल का जवाब साफ नहीं था?
चलाओ मुझे भगाओ। रॉकी अपने अनुमान की सत्यता से पूरी तरह से अचंभित रह गया। उसे अपना संयम पुनः प्राप्त करने में काफी समय लगा, इससे पहले कि वह खुद को रोक सके और दूसरा प्रश्न पूछ सके।
बैरन बोलिन का बेड़ा कितना बड़ा है?
वह समझ नहीं पा रहा था कि बैरन बोलिन कितना ताकतवर हो गया है, इतना कि उसने रॉकी को थंडरहॉक सिटी से जबरदस्ती हटाने की भी ठान ली थी।
कितना दुस्साहस।
हालांकि बैरन बोलिन अभी तक सिटी लॉर्ड नहीं बने हैं, फिर भी उन्हें परिवार में एक अनुभवी माना जाता है। जहां तक उनके बेड़े की बात है, इसमें कम से कम 30 तैरते हुए युद्धपोत शामिल हैं।
30?
ये संख्या सुनते ही रॉकी के चेहरे पर एक अजीब सा भाव उभर आया। फिर वह चुप हो गया, मानो कुछ हिसाब लगा रहा हो। रॉकी की प्रतिक्रिया से सिरिल को बहुत आश्चर्य हुआ, जिसने एक क्रोधित विस्फोट की उम्मीद की थी, लेकिन जब उसने बैरन बोलिन के बेड़े के आकार के बारे में जाना तो उसके चेहरे पर डर का कोई निशान नहीं देखा, बल्कि उसकी अभिव्यक्ति अजीब तरह से शांत हो गई। इससे सिरिल कुछ उलझन में पड़ गए। क्या उन्होंने अपनी बात स्पष्ट नहीं की थी? वह बेड़ा 30 तैरते युद्धपोतों से बना था। सिरिल को लगा कि रॉकी अभी तक 30 तैरते युद्धपोतों का पूरा अर्थ नहीं समझ पाया है, इसलिए वह इसे फिर से समझाने के लिए बाध्य हुआ। रॉकी, ये 30 तैरते युद्धपोत हैं।
ओह, मुझे पता है।
सिरिल की आवाज सुनकर रॉकी ने ध्यान से सिर हिलाया और फिर पूछा, सिरिल, बैरन बोलिन के बेड़े में किस तरह के युद्धपोत शामिल हैं?
युद्धपोतों के प्रकार की युद्ध क्षमता में बहुत भिन्नता थी, इसलिए किसी बेड़े की लड़ाकू शक्ति को केवल उसकी संख्या के आधार पर आंकना कठिन था। बेड़े की शक्ति का सही आकलन करने के लिए गुणवत्ता कारक पर भी विचार करना आवश्यक था।
कुआं, इस सवाल ने सिरिल को कुछ देर सोचने पर मजबूर कर दिया। फिर उसने कहा, बैरन बोलिन का बेड़ा उसकी निजी सेना है, इसलिए मुझे इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। हालांकि उसके रुतबे और परिवारों में उसकी प्रतिष्ठा को देखते हुए बेड़े की गुणवत्ता काफी अच्छी होनी चाहिए, कम से कम उसमें तीसरी पीढ़ी के तैरते युद्धपोत तो होंगे ही। हालांकि इसके प्रमुख घटक तीसरी पीढ़ी के टोही जहाज होने चाहिए, क्योंकि बड़े युद्धपोत बहुत महंगे होते हैं और बैरन बोलिन जो सिटी लॉर्ड नहीं है उन्हें वहन नहीं कर सकते। इसके अलावा बैरन बोलिन एक शून्य जादू योद्धा है और उसके पास चौथी पीढ़ी का शून्य जादू कवच है।
ओह, क्या ये बड़े पैमाने पर उत्पादन वाला या विशेष प्रकार का है?
बड़े पैमाने पर उत्पादन वाला, मैंने उसे इसे पहने देखा है। मुझे याद है कि यह ईगल क्लॉ टाइप 3 था।
ईगल क्लॉ टाइप 3?
रॉकी ने सिर हिलाया और ईगल क्लॉ टाइप 3 कवच की विशिष्टताओं को अपने मन में याद किया। कुछ दिन पहले जब वह लिलिया के लिए कवच की खरीदारी कर रहा था तो उसने इटर्नल सिटी के हथियार बाजार में पूरा दिन बिताया, दर्जनों कवचों को देखा, जिससे शून्य जादुई कवच के बारे में उसकी समझ में काफी वृद्धि हुई। और जिस ईगल क्लॉ टाइप 3 का उल्लेख सिरिल ने किया था उसे रॉकी ने संयोगवश देख लिया था। यह एक आक्रमण प्रकार का कवच था जो अपनी गति और बहुमुखी आक्रमण क्षमताओं के लिए जाना जाता था। हालांकि यह एक बड़े पैमाने पर उत्पादित मॉडल था, लेकिन इसका युद्ध प्रदर्शन उत्कृष्ट था, इसलिए इसकी कीमत सामान्य बड़े पैमाने पर उत्पादित चौथी पीढ़ी के कवचों की तुलना में बहुत अधिक थी। रॉकी को याद आया कि इसकी कीमत कम से कम 60,000 स्वर्ण सिक्के थी। इसका मतलब यह था कि बैरन बोलिन के पास न केवल 30 युद्धपोतों का बेड़ा था बल्कि वह एक शून्य जादू योद्धा भी था। ये वास्तव में रॉकी के लिए एक चुनौती थी। हालांकि ये सिर्फ एक चुनौती थी, निराशा का कारण नहीं। यह मत भूलिए कि उसके पास कई लाख सोने के सिक्के भी बचे हुए थे। अगर वह सारा पैसा खर्च कर देता तो रॉकी की ताकत बैरन बोलिन से कम नहीं होती। इसलिए कुछ देर सोचने के बाद रॉकी ने सिरिल की ओर देखा।
सिरिल, आपने जो जानकारी मेरे साथ साझा की है वह बहुत महत्वपूर्ण है, मुझे ये सब बताने के लिए धन्यवाद।
हालांकि रॉकी मेरेंटे परिवार के सदस्यों के प्रति उदासीन था, फिर भी उसे सिरिल द्वारा दी गई जानकारी की अत्यंत महत्ता को स्वीकार करना पड़ा। इस जानकारी के साथ वह बिना तैयारी के किसी युद्ध में नहीं उलझेगा, बल्कि बैरन बोलिन के आने से पहले ही उसका सामना करने के लिए पर्याप्त तैयारी कर सकेगा। उसे सिरिल का शुक्रिया अदा करना ही होगा। लेकिन आभार व्यक्त करने के बाद उन्होंने अपना स्वर बदला। सिरिल, मैं कह सकता हूँ कि तुम एक सभ्य व्यक्ति हो, कम से कम तुम अपने परिवार की कुछ गलत प्रथाओं को तो पहचानते हो। लेकिन जैसा तुमने कहा, कुछ मामले हमारे नियंत्रण से बाहर हैं, इसलिए अब तुम्हें मेरे प्रति कोई अपराध बोध महसूस करने की आवश्यकता नहीं है। चलो, हम दोनों के बीच का मामला सुलझ गया समझो। ये कहने के बाद रॉकी मुड़ा और चला गया, न केवल थोड़ा सा भटक कर बल्कि लिलिया और अन्य लोगों के साथ बॉलरूम छोड़कर स्टार ऑफ द स्काई की ओर वापस चला गया। जैसा कि उसने पहले कहा था, वह सचमुच सिरिल के प्रति कृतज्ञता महसूस करता था, लेकिन जैसा कि उसने ये भी बताया था, कुछ चीजें ऐसी थी जिन्हें वे बदल नहीं सकते थे, जैसे रॉकी के प्रति माइरेंटे परिवार का रवैया और माइरेंटे परिवार के बारे में रॉकी की धारणा। ये ऐसे मामले थे जिन्हें सिरिल या रॉकी खुद नियंत्रित नहीं कर सकते थे, चाहे वे कितनी भी कोशिश कर लें। इसलिए रॉकी का मानना था कि उसके और अपने फायदे के लिए उनके बीच की सीमाओं को स्पष्ट रूप से परिभाषित करना बेहतर होगा, वरना जब रॉकी माइरेंटे परिवार के विरोधी पक्ष में खड़ा होता तो हालात बहुत बिगड़ जाते। हाँ, ये रॉकी का निर्णय था, वह माइरेंटे परिवार के खिलाफ खड़े होने के लिए तैयार था। ये हताशा में लिया गया फैसला था, फिर भी यही उसका एकमात्र विकल्प था। शायद माइरेंटे परिवार की नज़र में वह और थंडरहॉक सिटी परिवार के अंग मात्र थे जिन्हें अपनी मर्जी से चलाया जा सकता था, लेकिन रॉकी इसे इस नज़र से नहीं देखता था। अब वह किसी भी व्यक्ति या परिवार को अपना भाग्य तय करने की अनुमति नहीं देगा, और यदि कोई अब भी उसके साथ ऐसा व्यवहार करना चाहता है तो उसे अपने शरीर का एक टुकड़ा खोने के लिए तैयार रहना होगा। तो अगर माइरेंटे परिवार लड़ाई चाहता है तो लड़ाई हो जाए। ।। इस बीच जब सिरिल ने रॉकी की घटती हुई आकृति को देखा तो वह उदासी से आहें भरने लगा। उसने उम्मीद नहीं की थी कि चीजें इस तरह बदल जाएंगी। दरअसल वह रॉकी से बहुत कुछ कहना चाहता था, जैसे उसे स्काई सिटी की उड़ान क्षमताओं का इस्तेमाल करके जितना हो सके भाग निकलने की सलाह देना, क्योंकि बैरन बोलिन के बेड़े से बचने का यही एकमात्र रास्ता था। जहां तक रॉकी से बैरन बोलिन को अपनी ताकत से हराने की उम्मीद की बात है, सिरिल ने कभी ऐसी कल्पना भी नहीं की थी, क्योंकि उसे यह बिल्कुल असंभव लगता था। बैरन बोलिन भले ही स्काई सिटी के बिना नामात्र के कुलीन हो, लेकिन यह मत भूलिए कि वे अभी भी माइरेंटे परिवार के सदस्य थे। इस हैसियत के कारण उन्हें एक साधारण नगर स्वामी से ज्यादा संसाधनों तक पहुंच प्राप्त थी, वरना वे एक निजी सेना कैसे चला पाते। इस प्रकार हालांकि इस बार परिवार आधिकारिक तौर पर हस्तक्षेप नहीं करेगा, बैरन बोलिन के पास अकेले ही थंडरहॉक शहर पर जबरन कब्जा करने की पर्याप्त शक्ति थी। इसी शक्ति और आत्मविश्वास के कारण ही उनका गुट परिवार के हस्तक्षेप न करने के निर्णय से सहमत था। दुर्भाग्यवश साइरिल इन विचारों को व्यक्त नहीं कर पाया था इससे पहले कि रॉकी वहां से चला जाता। दूसरी ओर रॉकी के बॉल से चले जाने के बाद वह सीधे स्टार ऑफ द स्काई के पास गया और सभी को अपने कमरे में बुलाया। स्थिति वैसी ही है जैसा मैंने बताया है, मैं आपकी राय जानना चाहूंगा। चूंकि सिरिल और रॉकी के बीच बातचीत निजी थी, लिलिया और बॉल में मौजूद बाकी लोगों को भी तब तक पता नहीं चला जब तक रॉकी ने सबको इकट्ठा करके सिरिल की बताई हर बात दोहराई। तभी सबको मामला समझ आया। महाराज, हम अवश्य ही जवाबी हमला करेंगे। पूरी कहानी समझकर मोटे सबसे पहले उछल पड़ा, महाराज, थंडरहॉक सिटी को इस तरह से धमकाया नहीं जाना चाहिए, ये बहुत ज्यादा है। उस खास बैरन को आने दो और हम उसे मार डालेंगे। स्वाभाविक रूप से गर्म स्वभाव वाले बीस्टमैन ने एक हाथ हिलाते हुए दहाड़ लगाए, ऐसा प्रतीत हुआ कि वह किसी भी क्षण युद्ध में शामिल होने के लिए तैयार है। महाराज, थंडरहॉक सिटी अब वह नहीं रही जो पहले हुआ करती थी। मुझे लगता है कि अगर हम पर्याप्त तैयारी करें तो हम सचमुच लड़ाई लड़ सकते हैं। तभी एलीन भी बोल पड़ी। वह मोटे जितनी आवेगपूर्ण तो नहीं थी, लेकिन अपना संयम बनाए रखते हुए उसने फिर भी एक युद्ध का सुझाव दिया। तुम्हारा क्या विचार है, क्या हम युद्ध लड़ सकते हैं? ये सब आप पर निर्भर करता है। रॉकी की ओर देखते हुए, जो उसकी राय जानना चाहता था, लिलिया ने हल्की सी मुस्कुराहट दी तथा पूर्ण उदासीनता दर्शाई। उसे वास्तव में इसकी कोई परवाह नहीं थी तथा वह निश्चित रूप से उसके द्वारा लिए गए किसी भी निर्णय में उसका साथ देगी। लिन फेंग, लॉर्ड जैक, आप क्या सोचते हैं? हम प्रभु के मार्गदर्शन का पालन करेंगे। जब उनसे उनकी राय पूछी गई तो लिन फेंग और ओल्ड जैक ने तुरंत सिर झुका लिया। दोनों अच्छी तरह जानते थे कि ऐसे समय में उन्हें बिना बारी के कुछ भी नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि इससे उन्हें कोई फायदा नहीं होगा, खासकर जब वे रॉकी के विश्वासपात्र तो बिल्कुल नहीं थे। चूंकि ऐसा ही है, रॉकी ने कमरे का जायजा लिया, फिर मुस्कुराया और धीरे से बोला, हमें अभी से तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। अगर हमें लड़ना है तो हमें न सिर्फ खूबसूरती से लड़ना होगा, बल्कि यह भी सुनिश्चित करना होगा कि हम जीतें। थंडरहॉक सिटी को छीन लिए जाने की खबर ने एक बार फिर सभी की चिंता बढ़ा दी। जहां तक माइरेंटे परिवार द्वारा लिए गए निर्णय का प्रश्न है, रॉकी ने सबसे सरल और सबसे सीधे तरीके से जवाब देने की योजना बनाई, जो कि बैरन बोलिन को एक बड़ा झटका देना था तथा उसे वहां से भगा देना था। कहने का तात्पर्य यह है कि उसने एक विशाल आकाशीय युद्ध शुरू करने की योजना बनाई थी। इस कारण अगले दिन सभी ने युद्ध की तैयारी शुरू कर दी और उनका पहला काम था तैरते हुए युद्धपोत खरीदना। आकाशीय युद्ध छेड़ने के लिए आकाशीय जहाजों का होना नितांत आवश्यक था और थंडहॉक सिटी के मौजूदा आकाशीय जहाजों पर पूरी तरह निर्भर रहना भी अपर्याप्त था। थंडहॉक सिटी के पास पहली पीढ़ी के केवल 10 ही जहाज थे और एप्पल ट्री कॉर्पोरेशन द्वारा उपहार में दिए गए एक अनुरक्षक जहाज को शामिल करने पर भी उनकी कुल शक्ति अभी भी बहुत कम थी। सिरिल ने स्पष्ट किया कि बैरन बोलिन की निजी सेना में 30 युद्धपोतों का बेड़ा शामिल था और इस आकार का बेड़ा, भले ही उसके सभी मुख्य बल तीसरी पीढ़ी के टोही जहाज ही क्यों न हो, अपनी संख्या के हिसाब से काफी लड़ाकू क्षमता रखता था। इसलिए ऐसे बेड़े से मेल खाने के लिए थंडहॉक सिटी को भी अपने आकाश जहाजों की संख्या बढ़ानी होगी। इसलिए अगली सुबह रॉकी सभी को हथियार बाजार ले गया, लेकिन वह सीधे युद्धपोत खरीदने नहीं गया। इसके बजाय वह पहले आर्मर स्टोर गया और फायर बटरफ्लाई गार्ड टाइप 5 आर्मर खरीदा, जिसे वह लंबे समय से पसंद करता था लिलिया के लिए। आगामी महान युद्ध स्पष्ट रूप से रॉकी के लिए बहुत महत्वपूर्ण था, लेकिन उसने लड़ाई में सभी संसाधनों को आंख बंद करके नहीं डाला। उसने न केवल मूल योजना के अनुसार लिलिया के लिए शून्य जादू कवच खरीदने की योजना बनाई, बल्कि थंडहॉक सिटी के विकास और निर्माण को भी जारी रखा। युद्ध का उद्देश्य थंडहॉक शहर के विकास में सुधार करना था, न कि उसे नीचे गिराना, और यह बात स्पष्ट की जानी थी। हालांकि लिलिया को उनके निर्णय पर कुछ आपत्ति थी। उसका मानना था कि शून्य जादू कवच पर खर्च किया गया पैसा तीसरी पीढ़ी के टोही जहाज खरीदने के लिए पर्याप्त हो सकता है, और यदि वे प्रयुक्त टोही जहाज खरीदने के लिए हों तो दो भी। दुर्भाग्यवश इस मामले में रॉकी का रवैया समझौतावादी था और लिलिया को निर्णय में कोई भूमिका नहीं दी गई। शून्य जादुई कवच खरीदने के बाद रॉकी ने समूह का नेतृत्व करते हुए तैरते हुए युद्धपोतों का चयन किया। चूंकि वे पहले भी एक बार एप्पल ट्री कॉर्पोरेशन के साथ सहयोग कर चुके थे और एप्पल ट्री कॉर्पोरेशन का मुख्य व्यवसाय वास्तव में तैरते हुए युद्धपोत बनाना था तथा इसका काफी बड़ा पैमाना और प्रतिष्ठा थी, इसलिए रॉकी ने कवच के लिए इधर उधर खोजबीन नहीं की, बल्कि सभी को सीधे एप्पल ट्री कॉर्पोरेशन के गोदी में ले गया। नगरपालिका अध्यक्ष रॉकी, स्वागत है, स्वागत है। जब समूह डॉकयार्ड पर पहुंचा तो एप्पल ट्री कॉर्पोरेशन का एक प्रबंधक, जो वहां काफी समय से इंतजार कर रहा था, तुरंत उनका स्वागत करने के लिए आगे आया। स्टीवर्ट झांग, आपको इंतजार कराने के लिए क्षमा करें। नगरपालिका अध्यक्ष रॉकी, माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है, मैं भी बस यूं ही आ गया, 40 साल के लग रहे स्टीवर्ट झांग ने जोरदार हंसी के साथ कहा। ये व्यक्ति झांग हिंग था, जिसने रॉकी के साथ पिछले लेन देन में एप्पल ट्री कॉर्पोरेशन का प्रतिनिधित्व किया था, इसलिए वह इस बार रॉकी और उसके साथियों का स्वागत करने आया था। नगरपाल रॉकी, इस समय आपको क्या चाहिए? हमारे वाणिज्य मंडल के तैरते युद्धपोत सुप्रसिद्ध हैं और मुझे विश्वास है कि वे आपको संतुष्ट कर देंगे, रॉकी के सामने खड़े होकर झांग हिंग ने खिलखिलाती मुस्कान के साथ कहा। इस बार मैं कुछ इस्तेमाल किए हुए तैरते हुए युद्धपोत खरीदना चाहता हूँ, क्या आपके कक्ष में कोई है? रॉकी ने सीधे पूछा, इस यात्रा का उद्देश्य बताते हुए, क्योंकि उसका इरादा इस्तेमाल किए हुए युद्धपोत खरीदने का था। सेकंड हैंड युद्धपोतों का फायदा यह है कि वे काफी सस्ते होते हैं और कम कीमत का मतलब है ज्यादा संख्या, जिसकी रॉकी को अब जरूरत है। बैरन बोलिन के बेड़े में 30 से ज्यादा स्काईशिप हैं। इतने बड़े बेड़े से मुकाबला करने के लिए पर्याप्त संख्या सुनिश्चित करना जरूरी है। हाँ बिल्कुल, और मैं गारंटी देता हूँ कि आप संतुष्ट होंगे। रॉकी के सीधे सादे रवैये को देखते हुए स्टीवर्ट झांग ने न तो अवमानना दिखाई और न ही लापरवाही। आखिरकार उन्होंने ही उनके पिछले लेन देन में मध्यस्थता की थी और रॉकी के पास कितना पैसा है यह उन्हें अच्छी तरह पता था। जहां तक पैसे की बात थी, नए युद्धपोत और पुराने युद्धपोत खरीदने में कोई फर्क नहीं था, बशर्ते पैसा उनके चैम्बर ऑफ कॉमर्स में खर्च किया जाए। उसके बाद झांग हिंग रॉकी और अन्य लोगों को एक शिपयार्ड के सामने ले गया। शिपयार्ड के गेट पर एक बड़ा 5 अंकित था, जो दर्शाता था कि यह डॉक 5 था और सभी डॉक में सबसे बड़ा भी था, जिसके अंदर दर्जनों तैरते हुए युद्धपोत खड़े थे। सिटी लॉर्ड रॉकी, क्या मैं पूछ सकता हूँ कि आप कितने बड़े बेड़े का गठन करना चाहते हैं? मैं शेख ही नहीं बघारना चाहता, लेकिन मुझे इस क्षेत्र में कुछ अनुभव है। डॉक 5 में सभी को ले जाते हुए झांग हिंग ने चलते हुए पूछा। उनके शब्द वास्तव में सत्य थे, क्योंकि तैरते युद्धपोतों के व्यवसाय में लगे होने के कारण उन्हें स्वाभाविक रूप से पता था कि बेड़े को कैसे एकत्रित किया जाता है, अन्यथा वे ग्राहकों को युद्धपोतों की सिफारिश कैसे कर सकते थे। मैं एक ऐसा बेड़ा चाहता हूं जिसमें मुख्य बल तो ही जहाज हों, अधिमानतः सभी तीसरी पीढ़ी के हों। कर सकते हैं, कर सकते हैं। ये सुनकर झांग हिंग ने सिर हिलाया, एक पल सोचा और फिर रॉकी को पास के एक टोही जहाज पर ले गया। नगरपाल रॉकी, इस टोही जहाज के बारे में आप क्या सोचते हैं? अपने पीछे खड़े टोही जहाज की ओर हाथ से इशारा करते हुए झांग हिंग ने परिचय देते हुए कहा, ये चीता टाइप 2 टोही जहाज तीसरी पीढ़ी के टोही जहाजों में सबसे अधिक बिकने वाला मॉडल है। यह 51 मीटर लंबा है, 2 मध्यम आकार के जादुई पत्थरों से संचालित है, 35 लोगों के पूरे दल को ले जा सकता है, और यह 450 जादुई ऊर्जा शक्ति वाली 5 जादुई तोपों से भी सुसज्जित है, जिससे इसकी मारक क्षमता बहुत भयानक हो जाती है। इस्टोही जहाज की सबसे प्रशंसित विशेषता इसका बहुत मोटा कवच है, जो स्वतंत्र रूप से संचालित रक्षात्मक जाल से सुसज्जित है। रक्षात्मक जाल एक एकल मध्यम जादुई पत्थर द्वारा संचालित होता है और 400 से कम जादुई ऊर्जा शक्ति वाले जादुई तोप के हमलों का सामना कर सकता है, जिससे ये टोही जहाज आक्रमण और रक्षा दोनों में अत्यंत उत्कृष्ट है। कई स्काई सिटीज अभी भी इस मॉडल को अपने मुख्य युद्धपोत के रूप में उपयोग कर रहे हैं। कितना? हमारे पास 20 सिक्के हैं, प्रत्येक सिक्के के 38,000 और सभी 80% नए हैं। मैं अपनी प्रतिष्ठा के आधार पर इसकी गारंटी दे सकता हूँ। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। इस कीमत ने रॉकी को कुछ देर के लिए थोड़ा चुप करा दिया। झांग हिंग द्वारा पेश किया गया चीता टाइप 2 टोही जहाज वाकई अच्छा लग रहा था, लेकिन उसकी कीमत थोड़ी ज्यादा थी। थंडहॉक शहर के विकास के लिए खर्च की गई धनराशि और लिलिया के लिए 0 जादुई कवच खरीदने पर खर्च की गई राशि को घटाने के बाद रॉकी के पास 6 लाख से भी कम सोने के सिक्के बचे, यानी केवल 5,80,000। ऐसे में अगर वह 10 चीता टाइप 2 टोही जहाज खरीदता तो उसकी कीमत 3,80,000 सोने के सिक्के होती। शायद कुछ मोलभाव के बाद ये सस्ता हो सकता था, लेकिन यह अभी भी बहुत ज्यादा था क्योंकि वह 10 से अधिक जहाज चाहता था। नगरपाल रॉकी, जल्दी मत करो, हमारे पास अभी भी कई अन्य युद्धपोत हैं जिनमें से आप चुन सकते हैं। रॉकी के मन में झिझक देखकर झांग हिंग ने तुरंत बात की और फिर उसे पास के एक अन्य स्काईशिप के पास ले गए। सिटी लॉर्ड रॉकी, यदि आप चीता टाइप 2 से संतुष्ट नहीं हैं, तो आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? झांग हिंग की सिफारिश के तहत सिटी लॉर्ड रॉकी ने अंतिम निर्णय लेने से कम 6 या 7 तो ही जहाज मॉडलों को देखा। एयरशिप मॉडल 6, चलो इस पर चलते हैं। नगरपाल रॉकी, आपकी नज़र सचमुच बहुत अच्छी है। रॉकी को आखिरकार फैसला लेते देख झांग हिंग ने तुरंत उसकी तारीफ की। बेशक उसकी तारीफें ज्यादातर चापलूसी भरी थी, लेकिन उनमें से एक छोटा सा हिस्सा ईमानदारी का भी था। ऐसा इसलिए क्योंकि रॉकी ने अंततः जिस एयरशिप मॉडल 6 टोही जहाज को चुना, उसकी विशेषताएं तीसरी पीढ़ी के टोही जहाजों में बहुत विशिष्ट थीं। सबसे कमजोर लड़ाकू क्षमता वाले सबसे छोटे वर्ग के टोही जहाजों के पास ज्यादा फायदे नहीं थे। उनका एकमात्र उल्लेखनीय फायदा उनकी अच्छी गति थी, और रॉकी द्वारा चुना गया एयरशिप मॉडल 6 टोही जहाज अधिकतम गति लाभ का प्रतीक था। एयरशिप श्रृंखला की टोही जहाजों की बड़ी श्रेणी में शानदार प्रतिष्ठा थी, इसकी सबसे बड़ी विशेषता इसकी गति थी। पूरी गति पर सेट होने पर इस श्रृंखला के टोही जहाज नियमित टोही जहाजों की तुलना में 1.5 गुना तेज गति प्राप्त कर सकते थे। कई पीढ़ियों के विकास और सुधारों के बाद 5वें मॉडल तक ये श्रृंखला पहले ही काफी उन्नत हो चुकी थी। रॉकी द्वारा चुने गए मॉडल 6 की बात करें तो ये तीसरी पीढ़ी के युद्धपोतों में इस श्रृंखला का सर्वश्रेष्ठ मॉडल था। मॉडल 7 चौथी पीढ़ी का होगा। रॉकी ने इस मॉडल को इसलिए चुना क्योंकि इसकी गति बहुत तेज थी। उनका मानना था कि टोही जहाजों में मारक क्षमता और रक्षात्मक शक्ति पर जरूरत से ज्यादा जोर देना मूर्खता है, क्योंकि यह प्रकार ही इन क्षमताओं को सीमित करता है। हालांकि हर शिपयार्ड ने इन क्षेत्रों को बेहतर बनाने की कोशिश की, फिर भी 5वीं पीढ़ी के नवीनतम टोही जहाज भी कोई खास सफलता हासिल नहीं कर पाए। गति पर ध्यान केंद्रित करना ज्यादा उचित था क्योंकि हवाई युद्ध में गति भी एक मुख्य तत्व थी। गति जितनी तेज होगी, जहाज उतना ही फुर्तीला होगा, और जादुई तोपों से उस पर प्रहार करना उतना ही कठिन होगा, यह एक आसान अवधारणा थी। हालांकि एयरशिप मॉडल 6 बहुत तेज था, लेकिन इसकी मारक क्षमता और रक्षात्मक शक्ति वास्तव में काफी कमजोर थी। टोही जहाज के इस मॉडल में केवल 4 जादुई तोपें थीं जिनकी जादुई ऊर्जा 400 थी, और इसमें लगा रक्षात्मक जाल सबसे साधारण किस्म का था। यह न केवल मन के लिए स्वतंत्र जादुई पत्थरों का उपयोग नहीं करता था, बल्कि इसकी रक्षात्मक शक्ति भी केवल 300 अंक की थी, जो काफी दयनीय थी। लेकिन इसी तरह एयरशिप मॉडल 6 की कीमत भी बहुत सस्ती थी। झांग हिंग ने प्रति जहाज 28,000 सोने के सिक्के बताए और वे 90% नए थे। आकर्षक कीमत भी रॉकी को आकर्षित करने का एक प्रमुख कारण थी। रॉकी ने प्रति टोही जहाज 28,000 स्वर्ण मुद्राओं के हिसाब से 15 जहाज सीधे खरीदने की योजना बनाई। इससे उसके पास लगभग 1.5 लाख स्वर्ण मुद्राएं बच जाती, जो एक और युद्धपोत खरीदने के लिए पर्याप्त थी। जी हाँ, रॉकी न केवल कुछ टोही जहाज खरीदने की योजना बना रहा था, बल्कि वह एक अच्छा युद्धपोत, एक बहुत बड़ा युद्धपोत भी खरीदना चाहता था। इस प्रकार झांग हिंग के साथ टोही जहाज के सौदे को अंतिम रूप देने के बाद रॉकी ने अपनी योजनाओं का खुलासा किया, और स्वाभाविक रूप से झांग हिंग इसके लिए तैयार हो गया। नगरपाल रॉकी, देखिए, मैं अभी कुछ देर पहले ही आपके सामने शेखी बघार रहा था, मुझे यह एहसास नहीं था कि आपने पहले ही हर बात पर गहराई से विचार कर लिया है। टोही जहाजों को एक बड़े युद्धपोत के साथ जोड़ना आजकल बेड़े का सबसे फैशनेबल स्वरूप है। क्या आप एक प्रमुख युद्धपोत प्राप्त करने की योजना बना रहे हैं? वह क्या कोई अंतर है? रॉकी का युद्ध पोतों के बारे में ज्ञान उतना व्यापक नहीं था जितना वर्ल्ड मैजिक आर्मर के बारे में था। आखिरकार उसने अपने आखिरी मिशन के खत्म होने के बाद ही तैरते युद्ध पोतों पर ध्यान देना शुरू किया था, इसलिए झांग हेन की बात ने उसे थोड़ा उलझन में डाल दिया। रॉकी बेशक जानता था कि फ्लैगशिप का क्या मतलब होता है, लेकिन झांग हेन के व्यवहार को देखते हुए उसने जिस फ्लैगशिप का उल्लेख किया था वह रॉकी की कल्पना से अलग प्रतीत हो रहा था, और वास्तव में यह अलग था। झांग हेन ने फिर समझाया, सिटी लॉर्ड रॉकी, आपको शायद पता न हो, लेकिन एक कमांडिंग पोत के रूप में किसी भी बेड़े में एक प्रमुख जहाज की मुख्य भूमिका होती है। यह जहाज को दुश्मन के हमलों का आसान निशाना बना देता है। इस समस्या के समाधान के लिए प्रत्येक शिपयार्ड बड़े युद्धपोतों को डिजाइन करते समय मानक मॉडल के अलावा एक प्रमुख संस्करण भी डिजाइन करता है। जैसे ही उन्होंने यह बात कही, झांग हेन ने रॉकी को एक विशाल युद्धपोत के पास ले जाकर कहा, नगरपाल रॉकी, क्या आपको चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा उपहार स्वरूप दिया गया एस्कॉर्ट जहाज याद है? स्केवेंजर टाइप एक एस्कॉर्ट शिप, इसके बारे में क्या? रॉकी को एप्पल ट्री कॉर्पोरेशन द्वारा उपहार स्वरूप दिया गया एस्कॉर्ट जहाज अवश्य याद था, उसे उसका मॉडल नंबर भी याद था। उनकी सटीक प्रतिक्रिया से प्रभावित होकर झांग हेन ने केवल मुस्कुराकर उनके बगल में खड़े युद्धपोत की ओर इशारा किया, महाराज, ये युद्धपोत डिफेंडर टाइप एक का प्रमुख संस्करण है। ये युद्धपोत? बिल्कुल नहीं। अवचेतन रूप से उसने अपने बगल में खड़े युद्धपोत की ओर देखा, और रॉकी का मुंह धीरे धीरे विस्मय से चौड़ा हो गया। एप्पल ट्री कॉर्पोरेशन द्वारा उपहार में दिया गया स्कवेंजर टाइप एक एस्कॉर्ट शिप रॉकी को बहुत पसंद आया, इसलिए डिलीवरी के बाद न केवल वह उसे देखने गया बल्कि थंडरहॉक सिटी वापस ले जाने से पहले खुद भी उस युद्धपोत पर चढ़ा। उसकी योजना के अनुसार ये स्कवेंजर टाइप एक एस्कॉर्ट शिप उसका भावी प्रमुख जहाज होना था, और उसने इसका नाम भी सोच लिया था, थंडरहॉक। इस लगाव का मतलब था कि रॉकी स्कवेंजर टाइप एक एस्कॉर्ट शिप से अच्छी तरह वाकिफ था। हालांकि जिस एस्कॉर्ट शिप से झांग हेंग उसे परिचित करा रहा था वह स्कवेंजर टाइप एक से बिल्कुल अलग था। दरअसल वह युद्धपोत आकार में बड़ा था, जिसकी लंबाई 130 मीटर तक थी, स्कवेंजर टाइप एक से 20 मीटर से भी ज्यादा लंबा। इसके अतिरिक्त यह अनुरक्षण जहाज और भी अधिक संख्या में जादुई तोपों से सुसज्जित था, जो कम से कम 20 थी। इस भारी अंतर के कारण रॉकी के लिए यह विश्वास करना कठिन हो गया कि उसके सामने वाला एस्कॉर्ट जहाज स्कवेंजर टाइप एक था। लेकिन जैसा कि झांग हेंग ने बताया था, ये वास्तव में एक स्कवेंजर टाइप एक एस्कॉर्ट शिप था, अंतर ये था कि यह प्रमुख संस्करण था। सिटी लॉर्ड रॉकी, एक प्रमुख जहाज होने के नाते ये युद्धपोत स्वाभाविक रूप से मानक स्कवेंजर टाइप एक से भिन्न है। जैसा कि आप देख सकते हैं, इस युद्धपोत का ढांचा बड़ा है और इसमें ज्यादा जादुई तोपें लगी हैं। इसमें दो अतिरिक्त मुख्य तोपें और 7 सहायक तोपें हैं, जिससे जादुई तोपों की कुल संख्या 24 हो जाती है, जिससे इसकी मारक क्षमता बेहद शक्तिशाली हो जाती है। साथ ही इस युद्धपोत का कवच भी बहुत मोटा है। रक्षात्मक जाल तैनात किए बिना भी पतवार 500 तक की जादुई ऊर्जा शक्ति वाले जादुई तोपों के हमलों का सामना कर सकता है, और यदि रक्षात्मक जाल तैनात है तो 1000 से कम जादुई ऊर्जा शक्ति वाले जादुई तोप इस विशालकाय जहाज को खरोंच भी नहीं सकते। इस युद्धपोत की कीमत कितनी है? मैं इसे ले लूंगा। झांग हेन के परिचय के साथ ही रॉकी को स्कवेंजर टाइप एक का प्रमुख संस्करण तुरंत पसंद आ गया और उसने तुरंत ही इसे खरीदने का निर्णय ले लिया। उनके विचार में ये प्रमुख जहाज बेहद शानदार था, जिसमें शक्तिशाली मारक क्षमता और प्रभावशाली रक्षात्मक क्षमताएं दोनों थीं। एक शहर का स्वामी होने के नाते उसे इतने विशाल जहाज से युद्ध की कमान संभालनी चाहिए थी। बेशक इस युद्धपोत को खरीदने की इच्छा पूरी तरह से एक आवेग नहीं थी, उन्होंने बैरन बोलिन के साथ आगामी लड़ाई को भी ध्यान में रखा था। बैरन बोलिन के बेड़े में मुख्य बल भी टोही जहाजों का ही था, और झांग हेन के विभिन्न परिचयों ने रॉकी को उनके बारे में पहले ही अच्छी समझ दे दी थी। वह अच्छी तरह जानता था कि 5वीं पीढ़ी के नवीनतम टोही जहाजों की भी मारक क्षमता सीमित होती है और उनमें 1000 से ज्यादा जादुई ऊर्जा क्षमता वाली जादुई तोपें लगाना संभव नहीं होता। इसका मतलब ये था कि यदि वह अपने से पहले इस बड़े आदमी को खरीद लेता तो क्या ये बैरन बोलिन के खिलाफ लड़ाई में एक अजेय स्थिति बनाए रखने के समान नहीं होता। यही उनके विचारों का सार था। नगरपाल रॉकी, आपकी नज़र बहुत अच्छी है। ये देखकर कि रॉकी कितनी उत्सुकता से इस युद्धपोत की इच्छा रखता है, झांग हेन का चेहरा तुरंत एक शानदार मुस्कान से चमक उठा। महाराज, इस युद्धपोत की कीमत 150,000 स्वर्ण सिक्के हैं। 150,000? एक नए जहाज की कीमत? नहीं, यह एक सेकंड हैंड जहाज की कीमत है, जो 80% नया है। शुरू में उत्साहित रॉकी को जब कीमत सुनी तो ऐसा लगा जैसे उस पर ठंडे पानी की एक बाल्टी डाल दी गई हो, क्योंकि कीमत बहुत अधिक थी। उसने पहले ही 15 टोही जहाज मंगवा लिए थे और अपने आधे से ज्यादा स्वर्ण सिक्के खर्च कर चुका था। अब उसके पास केवल लगभग 150,000 स्वर्ण सिक्के बचे थे, इसलिए अगर वह ये प्रमुख जहाज खरीदता तो उसके पास एक भी स्वर्ण सिक्का नहीं बचता। एलिन, तुम इस बारे में स्टीवर्ट झांग से बात करो। दांत पीसते हुए रॉकी ने आखिरकार फ्लैगशिप खरीदने का फैसला किया। हालांकि युद्धपोत की कीमत बहुत ज्यादा थी और उतनी ही रकम में 5 टोही जहाज खरीदे जा सकते थे, लेकिन ऐसे फ्लैगशिप की युद्धक क्षमताएं 5 टोही जहाजों से कहीं ज्यादा थीं। इसलिए रॉकी ने इसे खरीदने का निश्चय कर लिया। हालांकि उन्हें ऐसे मामलों को खुद निपटाने की जरूरत नहीं थी। उनके पास एलिन थी, जो ज्यादा पेशेवर थी और उनका प्रतिनिधित्व करती थी। और जैसे ही रॉकी ने एलिन को अपने पास बुलाया, झांग हिंग का चेहरा सख्त हो गया, क्योंकि वह पहले ही उससे बातचीत कर चुका था। झांग हिंग अच्छी तरह जानता था कि ये दिखने में जवान औरत कितनी ताकतवर है। इसके विपरीत एलिन, जिसे आगे बुलाया गया था, झांग हिंग की ओर देखकर मुस्कुराए, मानो उसने किसी शिकार पर नजरें गड़ा दी हों, जिससे झांग हिंग के पसीने छूट गए। जब रॉकी आखिरकार अपने साथियों के साथ गोदी से बाहर निकला, तो उसके चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान थी और उसके बगल में खड़ी एलिन भी उतनी ही खुशी से झूम रही थी। सिर्फ उनके साथ आए झांग हिंग के चेहरे पर थोड़ी सी भी खुशी नहीं थी। स्वाभाविक रूप से सौदा पक्का हो गया था और यह एक बड़ा सौदा था। रॉकी ने कुल 15 एयरशिप मॉडल 6 टोही जहाज और एक स्कवेंजर टाइप एक फ्लैगशिप एडिशन एस्कॉर्ट जहाज खरीदा था। हालांकि दोनों ही सेकंड हैंड थे, फिर भी ऐसा सौदा एप्पल ट्री कॉर्पोरेशन के लिए भी एक बड़ा सौदा माना जाता था। लेन देन का आकार स्वाभाविक रूप से बहुत बड़ा था। रॉकी ने 5 लाख स्वर्ण सिक्के खर्च किए थे। ये सुनने में भले ही बहुत ज्यादा लगे, लेकिन अगर झांग हिंग की शुरुआती मांगी गई कीमत पर गौर करें तो असल रकम 5,70,000 स्वर्ण सिक्के होनी चाहिए थी। इसका मतलब था कि एलिन की बातचीत के बाद रॉकी ने कुल 70,000 स्वर्ण सिक्के बचा लिए। झांग हिंग की नाराजगी का यही कारण था। हालांकि निगम को इस सौदे से भारी मुनाफा हुआ था, फिर भी उन्होंने उम्मीद से 70,000 स्वर्ण सिक्के कम कमाए थे। एक व्यापारी के लिए जो जमीन पर पड़े पैसे न उठाना नुकसान समझता हो, ये लगभग नुकसान उठाने जैसा था। इसलिए जब झांग हिंग ने आखिरकार रॉकी के साथ व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए, तो वह एलिन की तारीफ करते नहीं थक रहा था। उसके बिना वह इतनी बड़ी रकम साथ नहीं दे पाता। इस लेन देन के पूरा होने के साथ रॉकी के इटर्नल सिटी आने का सबसे अहम कारण साफ हो गया था। इसका मतलब सिर्फ यह नहीं था कि उसने अपने ज्यादातर गोल्ड कॉइन खर्च कर दिए थे, बल्कि थंडरहॉक सिटी की सैन्य ताकत भी कई गुना बढ़ गई थी। एक बार बेड़े की डिलीवरी हो जाने के बाद थंडरहॉक सिटी का हवाई लड़ाकू बल 10 प्रथम पीढ़ी के टोही जहाजों के मूल बेड़े से बदलकर एक प्रभावशाली बेड़े में बदल जाएगा, जिसमें 10 मूल जहाज, 15 तीसरी पीढ़ी के टोही जहाज, एक तीसरी पीढ़ी का अनुरक्षण जहाज और एक तीसरी पीढ़ी का प्रमुख जहाज शामिल होगा। 27 स्काईशिप से बने इस बेड़े में अब संख्या की दृष्टि से एक पैमाना था और अन्य छोटे स्काई सिटीज की तुलना में भी ये कम नहीं था। इसके अलावा इस नए बेड़े की गुणवत्ता भी काफी संतोषजनक थी। हालांकि मुख्य बल अभी भी टोही जहाज ही थे, लेकिन तीसरी पीढ़ी के 2 अनुरक्षक जहाजों ने बेड़े की, खासकर प्रमुख जहाज की, समग्र शक्ति में उल्लेखनीय वृद्धि की। अपनी मारक क्षमता और रक्षात्मक शक्ति के कारण ये प्रमुख जहाज न केवल थंडरहॉक सिटी में बल्कि कुछ बड़े स्काई सिटीज के बेड़े में भी एक उत्कृष्ट युद्धपोत माना जाएगा। इस तरह के एक दुर्जय बेड़े ने थंडरहॉक सिटी की सैन्य क्षमता में काफी वृद्धि की, जिससे आगामी लड़ाइयों के लिए रॉकी का आत्मविश्वास बढ़ा। युद्धपोत की स्थिति संभालने के बाद इटर्नल सिटी में रॉकी के पास अब बहुत कम काम बचे थे। ध्यान से विचार करने के बाद लगभग 3 ही बचे थे। पहला काम था एलिन और ओल्ड जैक को चमड़े की फैक्ट्री के उपकरणों को अंतिम रूप देने के लिए तैयार करना। हालांकि युद्ध आसन था, फिर भी शहर का विकास और निर्माण रुक नहीं सकता था। दूसरा कार्य लिलिया और लिन फैंग द्वारा सैनिकों के लिए उपकरणों का एक बैच खरीदना था, जिनकी आवश्यकताएं पहले जैसी ही थी और जिनसे लिलिया पहले से ही परिचित थी। अंतिम कार्य शिक्षकों की नियुक्ति और चालक दल के सदस्यों की भर्ती करना था। बड़ी संख्या में युद्धपोतों की खरीद के कारण थंडरहॉक सिटी को चालक दल के सदस्यों की भारी कमी का सामना करना पड़ रहा था, खासकर इसलिए क्योंकि दोनों अनुरक्षक जहाजों को चालू रखने के लिए 100 से ज्यादा चालक दल के सदस्यों की आवश्यकता थी। इस कमी को पूरा करने के लिए रॉकी के लिए चालक दल के सदस्यों की एक और टुकड़ी की भर्ती करना जरूरी हो गया, वरना नए खरीदे गए युद्धपोत सिर्फ सजावट का काम ही करते। सौभाग्य से इटर्नल सिटी में एक समर्पित तकनीशियन गिल्ड था, जहां बड़ी संख्या में चालक दल के सदस्यों को काम पर रखा जा सकता था। जहां तक शिक्षकों की नियुक्ति की बात है, रॉकी ने इसकी योजना काफी समय से बनाई थी। कई व्यक्तिगत प्रयासों के बाद उसे यह स्वीकार करना पड़ा कि शिक्षक के बिना यह संभव नहीं था। हालांकि उसके पास वेंसेल द्वारा छोड़े गए शोध नोट्स थे, लेकिन अपनी अपर्याप्त नींव के कारण नोट्स की अधिकांश सामग्री उसके लिए समझ से बाहर थी, जिससे निस्संदेह रून सीखना और भी चुनौतीपूर्ण हो गया। इस स्थिति में सभी ने अलग अलग काम करना शुरू कर दिया। एलिन और ओल्ड जैक ने एक काम संभाला, लिलिया और लिन फैंग ने दूसरा, और रॉकी ने खुद मोटे के साथ मिलकर क्रू मेंबर्स की भर्ती और शिक्षकों की भर्ती का जिम्मा संभाला। पिछली बार जब वह इटर्नल सिटी आया था, तो उसने पहले से ही चमड़ा निर्माण में विशेषज्ञता वाले तकनीशियनों को काम पर रखा था, इसलिए जब सभी लोग अपने अपने कार्यों को निपटाने के लिए अलग हो गए, तो रॉकी मोटे के साथ सीधे तकनीशियन गिल्ड में चला गया। भाड़े के सैनिकों के संघ की तरह ही तकनीशियन संघ भी लोगों से भरा हुआ था, लेकिन यहां मौजूद लोगों में हत्या का वही भारी भाव नहीं था और वे अधिक परिष्कृत दिख रहे थे।
हेलो, हम आपकी कैसी सहायता कर सकते हैं? टेक्नीशियन गिल्ड के सर्विस डेस्क पर पहुंचकर अटेंडेंट ने पेशेवर मुस्कान के साथ रॉकी का स्वागत किया।
मैं चालक दल के सदस्यों का एक समूह, लगभग 300 लोगों को काम पर रखना चाहता हूं।
जरूर, क्या आपकी कोई विशेष आवश्यकताएं हैं?
आवश्यकता यह है कि उन्हें टोही जहाजों और अनुरक्षण जहाजों के संचालन में कुशल होना चाहिए।
ठीक है, रॉकी के अनुरोध को जानने के बाद वेटर ने उसे एक कागज की पर्ची दी और बताया कि 3 दिनों में बंदरगाह पर कोई व्यक्ति उन चालक दल के सदस्यों को लेकर आएगा जिनकी उसे जरूरत है और वह उसका इंतजार करेगा। ये सब इतना आसान था।
और क्रू को काम पर रखने के बाद रॉकी ने वेटर से एक और अनुरोध किया कि वह एक शिक्षक को काम पर रखे।
आप किस तरह के शिक्षक को नियुक्त करना चाहेंगे?
मन, अधिमानतः मन में एक मास्टर।
अच्छा, ऐसा है। रॉकी की मांग सुनकर जब वेटर ने खोजना शुरू किया तो अचानक बगल से किसी ने चिल्लाकर कहा,
मैं, बच्चे, मैं तुम्हारा शिक्षक बनूंगा। उस चीख ने सभी को चौंका दिया और रॉकी और मोटे दोनों ने जल्दी से अपना सिर घुमाया तो देखा कि सफेद बालों वाला एक बूढ़ा आदमी उनकी ओर बढ़ रहा है।
बूढ़ा आदमी बिल्कुल जवान नहीं था, सफेद बाल और दाढ़ी वाला, तीखी तिकोनी आंखें और झुर्रियों से भरा चेहरा, शायद 70 या 80 के आसपास का। अपनी उम्र के बावजूद उसमें जोश और ऊर्जा कूट कूट कर भरी थी, लगभग एक जवान लड़के जैसा।
बूढ़ा आदमी कुछ ही कदमों में दूरी तय करके रॉकी के सामने पहुंचा, फिर उसे आंकना शुरू कर दिया। न केवल रॉकी को देखा बल्कि मोटे को भी नहीं बख्शा, काफी देर तक उसे देखता रहा, यहां तक कि उसकी कमर में बंधी कुल्हाड़ी को भी देखा।
कुछ देर तक उन्हें ऊपर से नीचे तक देखने के बाद अंततः बुजुर्ग बोला, बच्चे, क्या तुम एक शिक्षक को नौकरी पर नहीं रखना चाहते थे?
मैं यहां हूं। ये कहकर बूढ़े आदमी ने रॉकी की सहमति का इंतजार किए बिना सर्विस काउंटर की तरफ बढ़ गया। फिर उसने अंदर बैठे वेटर से कहा, जल्दी 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 करो और मुझे कॉन्ट्रैक्ट दे दो।
बूढ़े आदमी की चिंतित सूरत ने न केवल रॉकी और मोटे को बल्कि वेटर की आंखों को भी पूरी तरह उलझन में डाल दिया।
तुम क्यों घबरा रहे हो? जल्दी करो। काफी देर बाद भी वेटर को निष्क्रिय देखकर अधीर वृद्ध व्यक्ति ने सर्विस काउंटर पर अपना हाथ पटक दिया, जिससे वेटर जाग गया।
ओह, मास्टर ऑर्टन, ये सज्जन सिर्फ एक शिक्षक को काम पर रखना चाहते हैं, आप?
क्या मैं, ऑर्टन, शिक्षक नहीं बन सकता?
वेटर के शब्दों से तथाकथित बूढ़े व्यक्ति ऑर्टन की आंखें तुरंत चौड़ी हो गईं, फिर वह घबराए हुए रॉकी की ओर मुड़ा और उसे अपने पास खींच लिया।
बच्चे, क्या तुम मैना में एक शिक्षक की तलाश कर रहे हो?
हाँ हाँ, अधिमानतः मन में एक मास्टर है ना?
सही, बस अब बात पक्की हो गई, मैं मास्टर हूँ।
ये कहने के बाद ऑर्टन ने उसे पीछे धकेल दिया और फिर वेटर की ओर देखा, देखा, ये छोटा लड़का मुझे अपना शिक्षक बनाने के लिए सहमत हो गया है, तुम किसका इंतजार कर रहे हो?
जल्दी करो और मुझे अनुबंध दिलाओ।
रॉकी उलझन में था, मानो किसी जबरदस्ती के सौदे में उलझा हुआ था, और ऑर्टन को अपना शिक्षक बना लिया और टेक्नीशियन गिल्ड छोड़ने के बाद ही उसे असल में एहसास हुआ कि क्या हुआ था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वह सपना देख रहा था, अनजाने में ऑर्टन का छात्र बन गया था। हालांकि यह घटना काफी नाटकीय लग रही थी, ऑर्टन वाकई एक असली मैजिक एनर्जी मास्टर थे। कॉन्ट्रैक्ट पर हस्ताक्षर करते समय रॉकी अभी भी उलझन में थे, लेकिन उन्होंने वेटर से ऑर्टन के बारे में अच्छी तरह से पूछताछ की थी और वेटर को यकीन था कि वह एक असली मैजिक एनर्जी मास्टर थे। चूंकि यह बात पक्की हो चुकी थी, रॉकी को बाकी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ा। हो सकता है ऑर्टन का व्यक्तित्व थोड़ा विलक्षण हो, लेकिन अगर वह वाकई कुशल था तो यही काफी था। इस तरह ऑर्टन रॉकी के पीछे पीछे स्टार ऑफ द स्काई वापस आ गया और लगभग एक हफ्ते बाद बाकी ज्यादातर मामले सुलझ गए थे। एलीन और ओल्ड जैक ने चमड़े की फैक्ट्री के लिए सभी जरूरी उपकरण खरीद लिए थे और रूबी चैम्बर ऑफ कॉमर्स से सामान का एक बैच आयात कर लिया था। इस तरह चमड़े की फैक्ट्री और स्टोर से जुड़े ज्यादातर मामले सुलझ गए थे। उसी समय लिलिया और लिन फैंग ने उपकरण बेच दिए और वापस लौट आए। रॉकी ने क्रू और अपने शिक्षक को व्यवस्थित कर लिया था और सभी ने इटर्नल सिटी में अपना काम निपटा लिया था और सुरक्षित रूप से थंडहॉक सिटी लौट सकते थे। हालांकि जाने से एक दिन पहले रॉकी ने करीना और बर्ग से एक बार फिर मिलने का फैसला किया। पिछली बॉल के दौरान रॉकी इन दोनों सिटी लॉर्ड से काफी परिचित हो चुका था और उसे लगा कि वे काफी मिलनसार हैं, इसलिए उसने जाने से पहले उन्हें अलविदा कहने का फैसला किया। अगले दिन समूह ने इटर्नल सिटी के स्काईपोर्ट को पर्याप्त लाभ के साथ छोड़ दिया और सफलतापूर्वक थंडहॉक सिटी में वापस आ गया। रॉकी की इटर्नल सिटी की यात्रा अत्यंत फलदायी रही, लेकिन थंडहॉक सिटी में वापस आने पर वह बिल्कुल भी आराम नहीं कर सका, क्योंकि उसके और थंडहॉक सिटी के बीच एक बड़ी लड़ाई मंडरा रही थी। इन परिस्थितियों में जैसे ही वह थंडहॉक सिटी लौटे, उन्होंने तुरंत तैयारियां शुरू कर दी। सबसे पहले उसने थंडहॉक सिटी को दूर, बेहतर होगा कि ऐसी जगह उड़ा दिया जाए जहां कोई उन्हें ढूंढ न सके। इससे न सिर्फ बैरन बोलिन को उन्हें ढूंढने में काफी समय लगेगा, बल्कि उसे तैयारी के लिए भी ज्यादा समय मिल जाएगा।
यह महत्वपूर्ण था क्योंकि सिरिल ने केवल इतना बताया था कि बैरन बोलिन अपने बेड़े के साथ आएंगे, लेकिन यह नहीं बताया था कि वे कब आएंगे। समय कल या अगले साल हो सकता है, और यह भी हो सकता है कि जब वे इटर्नल सिटी छोड़ रहे हों तब बैरन बोलिन पहले ही रवाना हो चुके हों। इसलिए रॉकी को तैयारी के लिए अधिक समय खरीदने का कोई रास्ता खोजना होगा, अन्यथा सिरिल की जानकारी निरर्थक हो जाएगी। एक और मोर्चे पर नवगठित बेड़े को तत्काल प्रशिक्षण और समन्वय की भी आवश्यकता थी। रॉकी ने इस नए बेड़े का नाम थंडहॉक शहर का पहला बेड़ा रखा, जिसमें थंडहॉक प्रमुख था, और फेली को पहले बेड़े का कमांडर नियुक्त किया गया, जो अब गार्ड कोर से स्वतंत्र था और सीधे रॉकी की कमान के अधीन था। इस नियुक्ति से फेली बहुत प्रसन्न हुए, जिन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि एक दिन वे इतने बड़े बेड़े की कमान संभालेंगे, और वे इतने रोमांचित हुए कि कई दिनों तक वे सचमुच थंडहॉक पर ही सोए। रॉकी का फेली को पहला आदेश था कि वह बेड़े को जल्दी और पूरी तरह से प्रशिक्षित करे, क्योंकि कोई नहीं जानता था कि बैरन बोलिन कब आ जाए। फेली को यह सुनिश्चित करना था कि प्रतिद्वंद्वी के आने से पहले बेड़े में पर्याप्त युद्ध शक्ति हो। साथ ही उन्होंने ओल्ड जैक को शहर भर में 100 नए क्रू सदस्यों की भर्ती के लिए एक नोटिस जारी करने को कहा। बेड़े के संचालन के लिए केवल किराए के क्रू पर निर्भर रहना एक अस्थायी समाधान था, और अंततः थंडहॉक शहर को बेड़े को चलाने के लिए अपने क्रू पर ही निर्भर रहना पड़ा। हालांकि थंडहॉक सिटी की जनसंख्या अभी भी बहुत कम थी, केवल 2000 की जनसंख्या और गार्ड कोर में 300 से अधिक सैनिक थे, जिससे सैन्य नागरिक अनुपात 10वें हिस्से से भी अधिक हो गया, जो सामान्य मानक से काफी ऊपर था। इस प्रकार रॉकी केवल 100 लोगों की ही भर्ती कर सकता था। इससे अधिक लोगों की भर्ती करने से शहर का सैन्य नागरिक अनुपात पूरी तरह से बिगड़ जाता, जो कि वह नहीं चाहता था। बेड़े के प्रशिक्षण के आयोजन के अलावा रॉकी ने शहर के निर्माण कार्य को भी नजरअंदाज नहीं किया। थंडहॉक सिटी के पहले चमड़ा निर्माण संयंत्र और पहले स्टोर का नवीनीकरण शुरू हो चुका था, और दूसरा प्रशिक्षण वर्ग आधिकारिक तौर पर शुरू हो चुका था, और सब कुछ व्यवस्थित ढंग से चल रहा था। रॉकी को ये देखकर राहत मिली कि जब दूसरे प्रशिक्षण वर्ग की सूचना जारी हुई तो आवेदकों की संख्या कई गुना बढ़ गई। पहले प्रशिक्षण वर्ग में केवल एक दर्जन पंजीकरणकर्ता थे, लेकिन दूसरे प्रशिक्षण वर्ग के शुरू होने तक प्रतिभागियों की संख्या कई 100 तक पहुंच गई थी। पंजीकरण में उत्साह दो मुख्य कारणों से था। कई लोग नई स्थापित चमड़े की फैक्ट्री में काम करना चाहते थे, क्योंकि एलिन ने फैक्ट्री की मजदूरी की घोषणा की थी 30 स्वर्ण सिक्के प्रति माह और हर हफ्ते 2 दिन आराम थंडहॉक सिटी के निवासियों के लिए एक बहुत ही आकर्षक प्रस्ताव। खासकर वे महिलाएं जो आमतौर पर घर पर ही बुनाई करती थी, उनके मासिक कपड़े के उत्पादन से कभी भी 30 स्वर्ण सिक्के नहीं मिल पाते थे। इतनी अच्छी कमाई ने थंडहॉक शहर की कई महिलाओं को प्रशिक्षण कक्षा में शामिल होने के लिए उत्सुकता से प्रेरित किया। प्रशिक्षण वर्ग में सक्रिय भागीदारी का एक और कारण बैकहिल गांव के निवासियों का जुड़ना था। बैकहिल गांव के ग्रामीण थंडहॉक शहर के जीवन में बिना किसी बड़ी समस्या के घुल मिल गए थे, लेकिन एक बात उन्हें परेशान करती रही। उन्हें थंडहॉक सिटी में करने के लिए कोई काम नहीं मिला। थंडहॉक शहर के मूल निवासी बुनाई और खेती करके गुजारा कर सकते थे, लेकिन इन नए शामिल हुए ग्रामीणों में ऐसे कौशल का अभाव था। थंडहॉक शहर की कृषि योग्य जमीन पहले ही ले ली गई थी, और ग्रामीणों को बुनाई का कुशल काम करना नहीं आता था, जिससे बैकहिल गांव के सभी निवासी चिंतित थे। वे चिंतित थे कि यद्यपि रॉकी अभी उनका समर्थन कर सकता है, लेकिन भविष्य में क्या होगा। प्रशिक्षण वर्ग की घोषणा होते ही बैकहिल विलेज के निवासी पंजीकरण के लिए उमड़ पड़े। अगर एक साथ बहुत से लोगों को प्रशिक्षित करना संभव न होता तो इस प्रशिक्षण सत्र में 1000 से ज्यादा लोग शामिल हो सकते थे। प्रशिक्षण में सभी की उत्साहपूर्ण भागीदारी से रॉकी स्वाभाविक रूप से प्रसन्न हुआ, क्योंकि इससे ये संकेत मिला कि थंडहॉक सिटी के आर्थिक सुधार का पहला कदम सफलतापूर्वक उठाया गया था। इस प्रकार हालांकि एक बड़ा युद्ध आसन था, थंडहॉक शहर की समग्र स्थिति में कोई बड़ा बदलाव नहीं आया था। विकास जारी था, सैन्य शक्ति में सुधार हो रहा था, और सब कुछ धीरे धीरे सही रास्ते पर आ रहा था, व्यवस्थित रूप से आगे बढ़ रहा था। जबकि थंडहॉक सिटी विकास और सैन्य पर समान रूप से ध्यान केंद्रित कर रहा था, दूर क्षितिज पर आसन महायुद्ध का एक अन्य नायक बैरन बोलिन भी व्यस्त था। रॉकी के उलट बैरन बोलिन सिर्फ नाम के रईस थे, इसीलिए तो वो स्काई सिटी के मालिक बनने के लिए बेताब थे। और आज की दुनिया में कौन सिटी लॉर्ड नहीं बनना चाहेगा। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कई लोगों ने अपना पूरा जीवन प्रयास किया था, और बैरन बोलिन उनमें से सर्वश्रेष्ठ थे। आज बैरन बोलिन 50 से ऊपर के हो गए। वे 20 की उम्र में मैरेंटे परिवार में शामिल हुए थे, और लगभग 30 साल की समर्पित सेवा के बाद उन्होंने आखिरकार अपने नियत वर्ष में अपने लंबे समय से प्रतीक्षित सपने को साकार किया। परिवार द्वारा उन्हें सिटी लॉर्ड का पद प्रदान किया गया। हालांकि सभी जानते थे कि थंडहॉक शहर एक छोटा सा आकाशीय शहर है, फिर भी वह एक आकाशीय शहर ही था। और सभी समझते थे कि नगर स्वामी चाहे कितना भी छोटा क्यों न हो, वह नगर स्वामी ही होता है। उसकी हैसियत और महत्व की तुलना आम लोगों से नहीं की जा सकती थी। इसलिए परिवार से नियुक्ति मिलने के बाद से बैरन बोलिन विभिन्न सहयोगियों द्वारा आयोजित पार्टियों के बीच चक्कर लगा रहे थे। इसमें कोई मदद नहीं थी। एक नगरपाल के रूप में उनकी हैसियत और पद में भारी बदलाव आ गया था। जो लोग कभी उनके सहकर्मी थे वे अब उनकी चापलूसी करने लगे थे, जिसके कारण उन्हें लगातार निमंत्रण मिल रहे थे और बैरन बोलिन को यह एहसास बहुत अच्छा लगता था। बैरन बोलिन, बधाई हो। नहीं, अब मुझे आपको बैरन नहीं कहना चाहिए, अब आपको सिटी लॉर्ड बोलिन कहना चाहिए। बॉल पर बैरन बोलिन जहां भी जाते सबका ध्यान उन पर ही जाता और लोग बिना थके उनकी तारीफ करने के लिए आगे आते। दशकों से इन मंडलियों में पैंतरेबाजी कर चुके बैरन बोलिन अब हैरान नहीं होते थे और सहजता से उनका सामना करते थे। काउंट केक्सिंस, आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए, ये सब परिवार की मान्यता के कारण है, इसका मुझसे व्यक्तिगत रूप से कोई लेना देना नहीं है। नगरपाल बोलिन, आप बहुत ज्यादा विनम्र हैं, सभी जानते हैं कि आपको ये सम्मान आपके महान गुणों के लिए परिवार द्वारा दिया गया है, इसलिए इतने विनम्र मत बनिए।
बिल्कुल बिल्कुल, अब जब तुम नगर प्रभु बन जाओगे तो तुम्हारा दर्जा अलग होगा, हमें अपने साथियों को मत भूलना।
सर चार्लगोल्ड, आप क्या कह रहे हैं, क्या मैं उस तरह का व्यक्ति हूं जो कृतघ्न हो जाता है और उपकार भूल जाता है? कुलीनों के एक समूह से घिरे बैरन बोलिन बहुत खुश दिखे और उन्होंने खूब आनंद उठाया।
सिटी लॉर्ड बोलिन, आप कब पदभार ग्रहण करने की योजना बना रहे हैं?
तभी अचानक किसी ने पूछा और सबका ध्यान बैरन बोलिन की ओर गया। आखिरकार उन्हें अभी अभी परिवार की ओर से नियुक्ति मिली थी, अभी तक उन्होंने पदभार ग्रहण नहीं किया था।
ठीक है सिटी लॉर्ड बोलिन, मैंने सुना है कि इस बार परिवार सीधे हस्तक्षेप नहीं करेगा और आपको थंडहॉक सिटी जाकर खुद कार्यभार संभालना होगा। क्या कोई परेशानी होगी? अगर आपको किसी चीज की जरूरत हो तो बस कह दीजिए, हम जरूर मदद करेंगे।
चूंकि वे सभी मैरेंटे परिवार की सेवा करते थे, यह कोई रहस्य नहीं था, इसलिए हर कोई जानता था कि बैरन बोलिन को व्यक्तिगत रूप से पदभार ग्रहण करने की आवश्यकता है।
मैं आपकी दयालुता की सराहना करता हूं, मैंने थंडहॉक सिटी के स्थान का पता लगाने के लिए पहले ही लोगों को भेज दिया है।
जहां तक पदभार ग्रहण करने की बात है उसकी चिंता मत करो, फिलहाल थंडहॉक शहर का सिटी लॉर्ड अभी एक छोटा लड़का है। अगर परिवार हस्तक्षेप ना भी करे तो भी बेड़े के साथ एक मुलाकात ही उसे स्वेच्छा से पद सौंपने पर मजबूर कर देगी, है ना?
वह और क्या कर सकता है?
भीड़ की ओर देखते हुए बैरन बोलिन ने पूरे आत्मविश्वास के साथ कहा और जैसे ही उन्होंने यह बात समाप्त की तुरंत ही सहमति भरी आवाजें आने लगी।
हाहाहा, नगरपाल बोलिन हमेशा की तरह आश्वस्त हैं, वास्तव में हमें चिंता करने की कोई बात नहीं है।
बिल्कुल, बस एक जवान लड़का। जब सिटी लॉर्ड बोलिन बेड़े के साथ आएगा और तुम्हें युद्ध के लिए चुनौती देगा तो वह क्या कर सकता है?
हे, अगर वह बच्चा सचमुच ऐसा करने की हिम्मत करता है तो यह इस साल का सबसे मनोरंजक मजाक बन जाएगा।
पुनश्च उपन्यास स्काई सिटी लॉर्ड अगले हफ्ते लॉन्च हो सकता है, इसलिए अपडेट की गति थोड़ी धीमी हो जाएगी, लेकिन चिंता न करें, लॉन्च होते ही यह धमाकेदार तरीके से सामने आएगा और हम इस धीमी गति की भरपाई दोगुनी सामग्री के साथ करेंगे।
थोड़ा गति बढ़ाओ। शून्य जादू कवच की उड़ान क्षमता का उपयोग करते हुए रॉकी तुरंत लिलिया की पीठ पर चढ़ गया और एक भयंकर कंधे पर वार किया, जिससे लिलिया उड़कर बाहर चली गई। भेजी गई लिलिया जमीन पर कुछ कदम लड़खड़ाई, हवा में कुछ दूर तक उड़ी और फिर बड़ी मुश्किल से जमीन पर उतरकर खुद को स्थिर कर पाई।
आप जमीन पर बड़ी मुश्किल से स्थिर होते हुए, लिलिया ने रॉकी की ओर देखा, उसकी आंखों में क्रोध का भाव था, उसकी अभिव्यक्ति ऐसी थी जैसे कि उसके साथ कोई दुर्व्यवहार किया गया हो, जिससे रॉकी तुरंत नशे में आ गया।
इस समय रॉकी और लिलिया एक दूसरे के खिलाफ अभ्यास कर रहे थे, लेकिन इस बार दोनों ने अपने अपने शून्य जादू कवच पहन रखे थे। रॉकी ने ब्लड पैटर्न मार्क 2 पहन रखा था, जबकि लिलिया ने बिल्कुल नया फायर बटरफ्लाई गार्ड टाइप 5 पहन रखा था। सबसे शक्तिशाली व्यक्तिगत हथियार होने के नाते शून्य जादुई कवच किसी भी युद्ध क्षेत्र में, खासकर हवाई युद्ध में, मुख्य शक्ति बन सकता है। इसलिए बैरन बोलिन के खिलाफ आसन युद्ध में रॉकी और लिलिया निश्चित रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण शक्तियां बन जाएंगे। इससे वे, खासकर लिलिया, बिल्कुल भी ढिलाई नहीं बरतेंगे। अब उसके चौथे स्तर की योद्धा होने के धोखे में मत रहिए।
हाँ, पिछले मिशन के बाद लिलिया ने अपना स्तर एक अंक बढ़ा लिया था और चौथे स्तर की योद्धा बन गई थी। हालांकि फिर भी शून्य जादू योद्धाओं के बीच वह अभी भी एक नौसिखिया थी और वह इस बात से अच्छी तरह वाकिफ थी। इसलिए जैसे ही रॉकी ने अपने सारे काम निपटा लिए, लिलिया ने अभ्यास करने का अनुरोध किया, जिसके कारण अभी अभी ये दृश्य सामने आया।
याद करो, आधे साल पहले जब भी रॉकी और लिलिया एक दूसरे के खिलाफ अभ्यास करते थे तो हमेशा रॉकी ही हारता था, भले ही उसने अपना शून्य जादुई कवच पहना हुआ था। लेकिन आज आधे साल बाद जब दोनों ने अपना शून्य जादुई कवच पहना तो नतीजे बिल्कुल अलग थे।
शून्य जादुई कवच पहने होने और लिलिया के हर पहलू में नई पीढ़ी की एक बेहतर मॉडल होने के बावजूद वह अभ्यास में पूरी तरह से नुकसान में थी। ये कहना कि रॉकी द्वारा बिना किसी प्रतिरोध के उसे हराया जा रहा था अतिशयोक्ति लग सकता है, लेकिन लगभग यही सच था। अगर ऐसा ना होता तो लिलिया के चेहरे पर इतना मुंह फुलाने वाला भाव कैसे आता? उसके चेहरे पर ऐसा प्यारा भाव कम ही देखने को मिलता है। चलो एक ब्रेक लेते हैं। लिलिया की मुंह बनाती हुई सूरत देखकर लगभग मोहित हो चुका रॉकी हंसा और हाथ से इशारा किया, फिर रुकने का संकेत देने के लिए अपना हेलमेट उतार दिया।
क्यों, जब मैं शून्य जादुई कवच पहनता हूं तो मैं तुम्हें क्यों नहीं हरा सकता?
लिलिया ने भी अपना हेलमेट उतारते हुए गंभीर भाव से पूछा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि शून्य जादुई कवच पहनने के बाद वह रॉकी का मुकाबला कैसे नहीं कर सकती। पूर्ण शक्ति के मामले में वह रॉकी से दो स्तर ऊपर थी, कवच की युद्ध शक्ति के मामले में उसका फायर गार्ड 5 रॉकी के ब्लड पैटर्न मार्क 2 से 2 पीढ़ी आगे था। कुल मिलाकर उसे बढ़त मिलनी चाहिए थी। तुम बहुत चिंतित हो, लिलिया की गंभीर आंखों को देखते हुए रॉकी ने बेबसी से सिर हिलाया और उसे अपने पास बैठने का इशारा किया। उसके बैठने के बाद ही उसने आगे कहा, शून्य जादुई कवच की युद्ध शैली पारंपरिक युद्ध विधियों से बिल्कुल अलग है और तुमने अभी तक उसे अपनाया नहीं है, लेकिन आप इसमें इतनी जल्दी कैसे निपुण हो गए? मुझे याद है कि जब आपने पहली बार कवच पहना था तो आप तुरंत ही मेरे साथ मुकाबला करने में सक्षम हो गए थे और मुझसे कहीं बेहतर प्रदर्शन कर रहे थे। लिलिया ने कहा, बिल्कुल मानने को तैयार नहीं। उसे अब भी वो दृश्य याद है जब रॉकी ने पहली बार शून्य जादुई कवच पहनकर उसके खिलाफ अभ्यास किया था। हालांकि उस समय वह हार गया था, लेकिन अब उसका प्रदर्शन उससे कहीं बेहतर था, क्योंकि मैं एक प्रतिभाशाली व्यक्ति हूँ। लिलिया को देखकर रॉकी गर्व से हंसने से खुद को नहीं रोक सका। केवल जब वह लिलिया के साथ होता था तभी वह पूरी तरह से निश्चिंत रहता था, बिना रोक टोक के चुटकुले सुना सकता था और नगर के स्वामी के रूप में अपनी स्थिति की चिंता नहीं करता था। हालांकि मजाक के बाद रॉकी ने गंभीरता से समझाया, मैं तुमसे अलग हूँ, मुझे साधारण युद्ध के बारे में बिल्कुल भी जानकारी नहीं है और मेरी सोच स्थिर नहीं है, इसलिए मैं शून्य जादुई कवच की युद्ध शैली को जल्दी से अपना सकता था, लेकिन तुम इतने लंबे समय से साधारण युद्ध के आदी हो गए हो कि शून्य जादुई कवच पहनने के बाद भी तुम्हारा दिमाग समायोजित नहीं हुआ है। जब आप उस निश्चित सोच को बदलने में कामयाब हो जाते हैं तभी आप शून्य जादू कवच के अनुकूल हो जाएंगे। एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जिसने राक्षसों से अंतिम समय तक लड़ने के लिए शून्य जादू कवच पर भरोसा किया था, रॉकी के शब्दों ने बहुत अधिक प्रेरणा दी और लिलिया को कुछ देर चुप रहने के बाद खुद खड़े होने पर मजबूर कर दिया, मैं अपने आप पर थोड़ा अभ्यास करूंगा। ऐसा कहने के बाद वह धीरे धीरे हवा में उड़ गई और फिर आकाश में लाल तितली की तरह नाचने लगी, जो स्पष्ट रूप से शून्य जादू कवच के अनुकूल थी। उसे इतना गंभीर देखकर रॉकी ने अपना सिर हिलाया और घास पर लेट गया और आराम के इस दुर्लभ क्षण का आनंद लेते हुए लिलिया को आकाश में उड़ते हुए देखने लगा। हालांकि रॉकी और लिलिया दोनों ने एक बात पर ध्यान नहीं दिया, जब वे दोनों सिटी लॉर्ड के भवन के पिछवाड़े में लड़ रहे थे तो भवन की एक खिड़की से एक जोड़ी आंखें उन्हें देख रही थीं। ये आंखें उनके युद्ध के पहले क्षण से ही दिन के उजाले से लेकर शाम तक उनकी हर गतिविधि पर नजर रख रही थीं और सूर्यास्त के समय जब तक वे नगर प्रभु के भवन में वापस नहीं आ गए तब तक उन पर नजर रखती रहीं। दिलचस्प, ऑटन मैजिक एनर्जी शिक्षक, जिसे रॉकी ने कुछ उलझन भरे अंदाज में काम पर रखा था, ने अपनी नजर खिड़की से हटा ली और बड़े कदमों से कमरे से बाहर निकलने से पहले अपने चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान प्रकट की। इस समय रॉकी और लिलिया एक साथ भोजन कर रहे थे, लगभग पूरे दिन अभ्यास करने के कारण वे वास्तव में थक गए थे, इसलिए जैसे ही वे सिटी लॉर्ड के भवन में वापस आए उन्होंने तुरंत खाना शुरू कर दिया और भोजन को निगल गए। लेकिन ठीक उसी समय जब वह अपना खाना खा रहा था, रॉकी ने अचानक दरवाजे के बाहर शोर सुना जो किसी नौकरानी की आवाज जैसा लग रहा था, और इससे पहले कि वह कुछ प्रतिक्रिया कर पाता कमरे का दरवाजा लात मारकर खोल दिया गया। दरवाजा लात मारकर खुलने से रॉकी थोड़ा चौंका, ये तो उसके अपने नगर स्वामी का भवन था, इतनी हिम्मत किसने की? लिलिया ने उससे भी अधिक तेजी से प्रतिक्रिया की। जैसे ही दरवाजा खोला गया वह जो रॉकी के सामने बैठी थी तुरंत उठ खड़ी हुई, अपने पास रखे रून लॉन्गस्वॉर्ड को पकड़ लिया और रॉकी के बगल में सुरक्षात्मक रूप से खड़ी हो गई। हालांकि जब वे दोनों दरवाजे की ओर देखने लगे तो उनकी भौहें तन गईं, क्योंकि जो अंदर घुसा था वह कोई और नहीं बल्कि ऑटन था, जो मैजिक एनर्जी मास्टर था जिसे उन्होंने आमंत्रित किया था। ये देखकर कि घुसपैठिया बूढ़ा ऑटन था, रॉकी दंग रह गया। वह कई दिनों से थंडरहॉक सिटी में था और सरकारी कामों में व्यस्त होने के कारण उसे अभी तक ऑटन के साथ जादुई ऊर्जा का औपचारिक अध्ययन करने का मौका नहीं मिला था। हालांकि उन्होंने मैजिक एनर्जी मास्टर के साथ बहुत सम्मान से व्यवहार किया था, उनके लिए सीधे अपने ही भवन में रहने की व्यवस्था की थी और उनके साथ बातचीत में काफी विनम्र थे। लेकिन अब रॉकी की भौहें तन गईं, क्योंकि ऑटन जो कर रहा था वह पूरी तरह से अस्वीकार्य था। फिर भी ऑटन जो अंदर घुस आया था उसने बिल्कुल भी आत्म जागरूकता नहीं दिखाई, कमरे में भागकर रॉकी की ओर और फिर लिलिया की ओर, जिसने सीधे उस पर तलवार तान दी थी। देखने के बाद वह बिल्कुल भी नहीं डरा और इसके बजाय उसने अपने पीछे दरवाजा जोर से बंद कर लिया। नगरपालिका अध्यक्ष रॉकी, मुझे आपसे कुछ प्रश्न पूछने हैं, रॉकी के स्पष्टीकरण मांगने से पहले ही ऑटन ने पहले बोलने की पहल की। उसने लिलिया के हाथ में तलवार पर नजर डाली, फिर रॉकी की ओर देखा। नगरपालक रॉकी, उस लड़की की तलवार, बीस्टमैन की कुल्हाड़ी और तुम्हारा ब्लड पैटर्न जनरेशन दो कवच, ये कहाँ से आए? इन सवालों की श्रृंखला ने रॉकी को कुछ हद तक भ्रमित कर दिया, लेकिन उसका चेहरा एक पल में बहुत बदसूरत हो गया, क्योंकि ऑटन ने जिन वस्तुओं का उल्लेख किया था, चाहे वह लिलिया की तलवार हो, मोटे की कुल्हाड़ी हो या उसका अपना शून्य जादू कवच हो, सभी में एक सामान्य विशेषता थी, वे सभी रून उपकरण थे। ये ऑटन, क्या ये हो सकता है कि उसने मन रून्स का रहस्य खोज लिया हो?